धन्यवाद भाई नेविल, प्रभु आपको आशीष दे। शुभ प्रातः मित्रों, निश्चय ही मैं समझता हूँ कि ये मेरे जीवन का विशिष्ट भाग है कि इस प्रातः मैं फिर से इस आराधनालय में हूँ कि उसकी सुंदर बनावट को देखूं और परमेश्वर के बालकों को आज उसके भवन में अनुक्रम में बैठे हुए देखूं। कल जब मैं यहां आया तो मैं बहुत ही चकित था और भवन की बनावट को देखा। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये इस प्रकार का होगा। जब मैंने इसकी रूपरेखा देखी थी कि जब इन्होंने इसका नीला नक्शा बनाया था, मैंने एक और छोटा कमरा बैठने के लिए एक और देखा, परंतु अब मैं पाता हूं कि ये एक सुंदर स्थान है। इस सुंदर स्थान के लिए हम सर्व सामर्थ्य के बहुत आभारी हैं। और हम इस प्रातः में अपनी पत्नी और बच्चों की ओर से शुभकामनाएं लाया हूं, जो कि इस वे यहां होना चाहते थे कि इस समर्पण सभा में हों और मसीह के लिए ये पवित्र सप्ताह। परंतु बालक स्कूल में हैं और वहां से निकलना कठिन है और वे घर की याद की भावनाओं से लगभग थक से गए हैं, परंतु हम लोग आप लोगों को याद करते हुए कभी नहीं थकेंगे। आपको ऐसा नहीं होता? ये मित्रों के जैसा होना है और मैं मित्रों की सराहना करता हूँ हर कहीं, परंतु पुराने मित्रों की कुछ और बात है। कोई मतलब नहीं आप नए मित्र बनाते हैं, ये फिर भी पुराने जैसा नहीं। कोई मतलब नहीं मैं कहीं भी घूमूं, ये स्थान सदा पवित्र रहेगा। लगभग 30 वर्ष पहले कीचड़ भरा तालाब, मैंने जमीन के इस टुकड़े को यीशु मसीह को समर्पित किया था। तब ये कीचड़ के स्थान को छोड़ और कुछ नहीं था, ये सारा का सारा तालाब था। यही कारण था कि ये सड़क उधर से थी, ये सड़क वहाँ से घूम कर गयी कि इस तालाब से बचकर जो यहाँ है जाए। और यहाँ कमुदनियाँ हुआ करती थी, तालाब वाली कमुदनियाँ उगाई। और कमुदनी बहुत ही विचित्र फूल है, यद्यपि ये कीचड़ में पैदा होता है, इसे कीचड़ में से होकर अपना मार्ग बनाना होता है और फिर पानी और गंदगी में होकर अपने को ऊपर सतह पर लाती है कि अपनी सुंदरता को दिखाए। और मैं सोचता हूँ कि इस प्रातः ये कुल मिलाकर यहाँ यही घटित हुआ है। उस समय से एक छोटे तालाब की कुमुदनी ने स्वयं में जोर लगाया और जब ये जल की सतह पर ऊपर आ गई, इसने अपने पंख फैला दिए, इसकी छोटी पंखड़ियाँ निकल आईं और इसने घाटी की कुमुदनी को परावर्तित किया। होने पाए ये सदा स्थिर रहे, होने पाए ये घर पूरी रीति से परमेश्वर को समर्पित रहे। ये आराधनालय अपने में 1933 में समर्पित हो चुका है, परंतु इस सप्ताह ये सोचते हुए ये बहुत ही अच्छी बात होगी कि फिर से समर्पण की एक छोटी सभा की जाए, विशेष उन लोगों के लिए जिनका प्रेम और भक्ति मसीह के लिए है, जिससे ये सब संभव हुआ। और मैं चाहता हूँ कि आप में से प्रत्येक को आपकी भेंटों और आदि आदि के लिए धन्यवाद दूं कि आपने इस आराधनालय के लिए दिया है कि इसे मसीह को समर्पित करें। और मैं बहुत ही आभारी और धन्यवाद करता हूँ इस सभा का कि जो शब्द उन्होंने हमारे भाइयों के पक्ष में बोले जिन्होंने अपनी सेवाएं इसके लिए समर्पित करी।
ब्रदर बैंक्स वुड आवर नोबल ब्रदर, ब्रदर रॉय रोबर्सन
भाई बैंकवुड हमारे कुलीन भाई, भाई रॉबर्टसन हमारे कुलीन भाई, और बहुत से जिन्होंने निस्वार्थ और हृदय की सिधाई से इसके निर्माण में महीनों लगाए इस स्थान के लिए कि ऐसा हो, टिके रहें, कि देखें कि इसका सही निर्माण हो। और जब मैं इस पुलपिट को देखने अंदर आया तो फिर जिस प्रकार का मैं सदा से चाहता रहा अपने सारे जीवन भर, मैं भाई वुड को मालूम था कि मुझे क्या पसंद है। उसने कभी नहीं कहा कि वो इसे बनाएंगे, परंतु उन्होंने ये बना दिया। और मैंने ध्यान दिया ये भवन और कैसे इसे बनाया है, ये सर्वोत्तम है। और इसे कहने के लिए कि मैं अपनी भावनाएं प्रकट करूं, शब्द नहीं है। देखिए, इसे करने का कोई तरीका नहीं है, और परंतु परमेश्वर समझता है। और होने पाए आपके योगदान, आप में से हर एक को पुरस्कृत किया जाए, और वो सब जो आपने इस स्थान को बनाने के लिए किया है, जो ये है, जिस प्रकार से ये भवन है प्रभु का एक घर। और अब मैं इन शब्दों को कहना चाहूंगा। अब ये भवन जैसे कि ये सुंदर है अंदर और बाहर, मेरा साला जूनियर वेबर जिसने चिनाई की है, मैं नहीं जानता कि इससे अच्छा कुछ और हो सकता है, जो ये है, एक सिद्ध कार्य। दूसरा भाई जो यहाँ पर है, मैं उससे कभी नहीं मिला हूँ, जिसने माइक का सारा सिस्टम लगाया है, परंतु देखते हुए कि इस प्रकार की सपाट इमारत में आवाज की कोई गूंज नहीं है, ये यहाँ छत में अलग अलग तरीके से लगे हैं, कोई मतलब नहीं, मैं कहीं भी खड़ा हूँ, ये एक सी आवाज है। और ये कमरा जो बनाया गया है, इनमें स्पीकर लगे हैं, और आप सुनने के लिए चाहे जैसा कर लें, मैं विश्वास करता हूं ये सामर्थ्य परमेश्वर का ही हाथ है जिसने इन चीजों को किया है। अब यदि हमारे प्रभु ने हमें ये भवन दिया ताकि हम इसमें अपनी आराधना कर सकें, उससे अच्छा जो हमने 30 वर्षों में किया, हमने कच्चे फर्श और लकड़ी का बरूदा और यहाँ पुराना स्टोव जलाकर आरंभ किया था, और वो ठेकेदार भाई वुड्स उनमें से एक और भाई रॉबर्टसन मुझे बता रहे थे, जहाँ वे दीवार से निकला खंबा और वे पुराने स्टोव जो वहाँ रखे जाते थे, जिन पर आर पार कड़ियाँ टिकी थी, उनमें आग लग गई थी और वे जल गए थे, संभवतः 2 या 3 फीट। ये क्यों नहीं सारा का सारा जल गया, केवल परमेश्वर ने इसे बचाए रखा। और फिर जल जाने के बाद और भवन का सारा वजन उस पर था, ये क्यों नहीं गिर गया, केवल परमेश्वर का ही हाथ था। अब ये सरियों के साथ है और जमीन पर टिका है, मजबूत बना है। अब मैं सोचता हूँ कि ये हमारा कर्तव्य है कि हम इसे अंदर से सुंदर बनाएं, परमेश्वर के अनुग्रह से, कि हम अपने परमेश्वर के आभारी हैं कि हमारा ये केवल एक सुंदर ना हो कि जिसमें हम आएंगे, परंतु होने पाए हर एक जो यहाँ आता है यीशु मसीह के सुंदर चरित्र को देखे जो अंदर आता है। ये हमारे प्रभु का पवित्र स्थान हो, एक पवित्र लोगों का, क्योंकि कोई मतलब नहीं ये कितनी सुंदर बनावट है जिसकी हम निश्चय ही सराहना करते हैं। कलीसिया की सुंदरता उसके लोगों का चरित्र है। मैं विश्वास करता हूँ ये सदा परमेश्वर के घर की सुंदरता बना रहेगा। अब इसके मूल कोने के पत्थर को रखते समय की समर्पित सभा के समय एक महान दर्शन आया। उस सुबह जब मैंने इसे समर्पित किया तो कोने के पत्थर पर ये लिखा। आपको आश्चर्य हो सकता है कि कुछ ही मिनटों पहले जब मैं यहाँ बाहर आने की प्रतीक्षा में था, मेरा पहला कर्तव्य, जैसा कि मैं नए आराधनालय में आता हूँ, मैंने एक युवा पुरुष और स्त्री का जो मेरे कार्यालय में खड़े थे विवाह संपन्न किया।
I'll be a loyal minister to Christ.
संभवतः ये एक प्रतीक हो कि मैं मसीह का ईमानदार सेवक होऊंगा कि उस दुल्हन को उस समारोह के दिन के लिए तैयार करूं। और अब हम वैसा ही करें जैसा हमने आरंभ में किया, जब हमने आराधनालय का पहला समर्पण आरंभ किया। मैं एक युवा लड़का था और मैं हो सकता है 21 या 22 वर्ष का था जब हमने कोने का पत्थर रखा। ये मेरे विवाह से भी पहले की बात थी। और मैं सदा ये चाहता था कि स्थान ठीक और व्यवस्थित हो परमेश्वर की आराधना के लिए उसके लोगों के साथ। और हम ये केवल सुंदर भवन से ही नहीं कर सकते, परंतु पवित्र जीवन ही केवल एक मार्ग है जिससे हम ये कर सकते हैं। अब इसके पहले कि हम समर्पण की सभा करें, कुछ वचनों को पढ़ते हैं और आराधनालय को वापस परमेश्वर को समर्पित करते हैं। और फिर मुझे कुछ सुसमाचार फैलाने पर मेरे पास एक संदेश है इस सुबह की, मेरे आने वाले संदेश को बनाए। और आज रात्रि मैं प्रकाशित वाक्य का 5वां अध्याय लेना चाहता हूं, जो कि 7 कलीसियाई कालों से समृषित होकर 7 मोहरों में है। कि मैं तब हम लेंगे सोमवार रात्रि सफेद घोड़े का सवार, मंगलवार रात्रि काले घोड़े का सवार, और फिर आगे 4 घुड़ सवार, और फिर 6वीं मोहर खोली जा रही है। और फिर रविवार प्रातः, अगली बार रविवार प्रातः, यदि प्रभु ने चाहा, हम इसे बाद में देखेंगे और बाद में घोषणा करेंगे। संभव है अगली बार, अगले रविवार प्रातः बीमारियों के लिए प्रार्थना सभा भवन में। और फिर रविवार रात्रि समाप्ति के साथ प्रभु हमारी 7वीं मोहर खोलने में सहायता करे, जहां पर बस एक छोटा सा पद है और ये कहता है वहां स्वर्ग में आधे घंटे का सन्नाटा था उस सन्नाटे के द्वारा। अब मैं नहीं जानता कि इन मोहरों का क्या अर्थ है। मैं जितना संभव है अपनी समझ के अंत पर हूँ उनके लिए, जैसा कि हो सकता है आप में से कुछ इस सुबह हैं। हमारे पास पुरोहितों वाले विचार हैं जो मनुष्य के द्वारा लाए हुए हैं, परंतु ये उसे कभी नहीं छू पाएंगे। यदि आप देखेंगे, इसे प्रेरणा से आना है, इसे तो स्वयं परमेश्वर से ही होना चाहिए। केवल वही है जो ये कर सकता है, वो मेमना, और आज रात्रि वो छुटकारे की पुस्तक। अब इसी कारण से मैं बीमारों आदि के लिए प्रार्थना सभाएं घोषित नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने कुछ मित्रों के साथ रुका हुआ हूँ और मैं अपना एक एक मिनट अपने समय का अध्ययन और प्रार्थना में दे रहा हूँ। और आप जानते हैं, इसके पहले कि मैं छोड़कर पश्चिम की ओर जाता, वो दर्शन जो मुझे उन 7 स्वर्गदूतों का मिला था जो उड़ते हुए आए, इसलिए आप थोड़ा बाद में समझेंगे। इसलिए अब इस भवन में हमारे पास ये होना चाहिए, यदि ये समर्पित किया गया है या कुछ मिनटों में समर्पित होने वाला है, परमेश्वर की आराधना करें। हमें इसे इसी प्रकार रखना चाहिए। हमें भवन में कभी भी खरीदना बेचना नहीं चाहिए। हमें इस सभागार में कभी भी व्यापार नहीं करना चाहिए। इसे यहाँ कभी नहीं किया जाना चाहिए, जैसे कि किन्हीं सेवकों ने आकर पुस्तक आदि बेचने की अनुमति दें, कोई मतलब नहीं। ये क्या है, इसे करने के लिए दूसरी जगहें हैं। इसलिए हमें प्रभु के भवन में खरीदना और बेचना नहीं चाहिए। ये आराधना का स्थान होना चाहिए, पवित्र अर्पित किया हुआ इस उद्देश्य के लिए, समझे। अब उसने हमें अच्छा स्थान दिया है, हमें इसे उसे समर्पित करें और स्वयं को इसके साथ उसको समर्पित करें। अब ये थोड़ा सा कठोर लग सकता है, परंतु ये मिलने की जगह नहीं है, ये आराधना का स्थान है। आराधना को छोड़ हमें यहाँ अंदर धीरे बात भी नहीं करनी जब तक कि ये बहुत ही आवश्यक ना हो, समझे। हमें कभी भी आसपास जमघट नहीं लगाना चाहिए, भवन में होकर कभी ना दौड़ें या अपने बच्चों को भवन में दौड़ने दें। और ये करते हुए अधिक समय नहीं हुआ, ये अनुभव करते हुए कि ये कर रहे हैं, हमने इसे इस प्रकार बनाया है कि हम इस सारे की चिंता करें। अब हमने यहाँ ये तय कर लिया है, निसंदेह बहुत से लोग अपरिचित हैं। आराधनालय के लोग ये जानते हैं कि भवन सर्व सामर्थी की सेवा के लिए समर्पित किया जाने वाला है। इसलिए अपने आप को समर्पित करते हुए हम ये याद रखें कि जब हम इस पवित्र स्थान में प्रवेश करते हैं, शांत रहें एक दूसरे के लिए और परमेश्वर की आराधना करें। यदि हम एक दूसरे से मिलना चाहते हैं तो जगहें हैं कि हम इस प्रकार से लोगों से मिलें, परंतु कभी भी आसपास में ना घूमें कि आप अपने को सोचते हुए ना सुन सकें और व्यक्ति अंदर आए और ना जान पाए कि क्या करना है। कि यहाँ इतना शोर और चीजें हैं, ये तो मानवता है। मैंने ये कलीसियाओं में देखा है जब तक कि मुझे बुरा अनुभव नहीं हुआ, क्योंकि हम यहाँ प्रभु के इस पवित्र स्थान में लोगों से मिलने नहीं आते। हम यहाँ परमेश्वर की आराधना करने आते हैं और फिर अपने घरों को चले जाते हैं। ये पवित्र स्थान आराधना के लिए समर्पित किया गया है। जब बाहर खड़े होकर जो चाहें बात करें, जब तक कि ये ठीक और पवित्र है, एक दूसरे के घर जाएं, एक दूसरे के स्थानों पर जाकर मिलें, परंतु जब इस दरवाजे में आए तो शांत रहें। आप यहाँ उससे बात करने आते हैं, देखिए, और उसे वापस आपसे बात करने दें। परेशानी ये है कि हम बहुत सारी बातें करते हैं और पर्याप्त सुनते नहीं। तब जब हम यहाँ आते हैं उसकी प्रतीक्षा करें। अब उस पुराने आराधनालय से कोई भी व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित नहीं होगा इस सुबह, जो उस दिन समर्पण पर था जब मेजर एलरिच ने संगीत दिया और मैं तीन क्रूसों के पीछे खड़ा था यहाँ पर कि स्थान को समर्पित करूँ। मैं किसी को भी अनुमति नहीं दूंगा। भेंट करने वाले द्वार पर खड़े हैं कि देखें कोई बात ना करे। जब आप अपनी बातें बाहर कर लें तब अंदर आए। यदि आपकी इच्छा हो जाए, शांति से आप वेदी पर आकर शांति से प्रार्थना करें। आप वापस जाकर अपने स्थान पर बैठ जाएं, बाइबल खोलें। आपका पड़ोसी क्या कर रहा है ये उस पर छोड़ दें। आपको कुछ नहीं कहना है। यदि आपको उससे बातें करनी है, कहें मैं उससे बाहर मिलूंगा, मैं यहाँ प्रभु की आराधना के लिए हूँ। आप उसके वचन को पढ़ें या शांत बैठें। और तब संगीत, बहन ग्रेटी, मुझे नहीं मालूम कि वो आज सुबह आप यहाँ हैं या नहीं। बहन गिब्स, वो पुराना पियानो मैं विश्वास करता हूँ वहाँ इस कोने में है, जहाँ तक मुझे अच्छी तरह याद है। और वो इसे धीमे धीमे बजाएगी क्रूस पर जहाँ मेरा बचाने वाला मरा। कुछ वास्तव में मीठा कोमल संगीत, और फिर जब तक आराधना का समय ना हो जाए और गवाने वाला उठकर मंडली के गानों में अगुवाई करे, और यदि कोई विशेष व्यक्तिगत गाना है उन्होंने से गाया, परंतु बहुत सारा ऐसे ही ना चलाएं, और फिर संगीत निरंतर बजता रहे। और तब जब मैं ये सुनता हूँ मुझे मालूम पड़ जाए कि ये मेरा समय बाहर आने का है। जब एक सेवक लोगों की मंडली में आए, लोग प्रार्थना करते हुए और आत्मा के अभिषेक में, आप स्वर्ग से सुनने के लिए बाध्य हैं। यही सब है, इससे बचने का कोई मार्ग नहीं। यदि आप घबराहट में आते हैं तब आप इतने घबराए हुए हैं और आत्मा शोकित है और ये नहीं चाहते। नहीं, हम यहाँ आराधना के लिए आना चाहते हैं। हमारे पास अच्छे घर हैं, जिस विषय में मैं बोलने जा रहा हूँ एक आधे मिनट में, और इस प्रकार से घर पर हम अपने मित्रों से मिलते हैं और उन्हें लेते हैं। ये प्रभु का भवन है। अब यहाँ छोटे बच्चे हैं, अब छोटे गोद के बच्चे, अब वे कोई अंतर नहीं समझते। उनके पास एक ही तरीका है जिससे जो वे चाहते हैं पा सकते हैं, कि उस चीज के लिए रोएं, और कभी कभी ये पानी पीना, और कभी कभी उन्हें जरूरत होती है कि उन पर ध्यान दिया जाए। और इसलिए हमारे पास परमेश्वर के अनुग्रह से एक समर्पित कमरा है। सूची में इसे रोने का कमरा कहा गया है, परंतु ये ठीक मेरे सामने की ओर है। ये दूसरे शब्दों में जहां माएं अपने बालकों को ले जा सकती हैं। अब हो सकता है ये आपको कभी परेशान नहीं करेगा। मुझे यहां प्रचार मंच पर हो सकता है मैं ध्यान भी ना दूं अभिषेक में होते हुए, परंतु वहां कुछ लोग आसपास बैठे हैं और ये उन्हें परेशान करे। देखिए, वे सभा में सुनने के लिए आए हैं। इसलिए माताएं, आपके छोटे बच्चे पिनपिनाना शुरू करते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि निश्चय ही ये एक आपको चाहिए, आपको उसे लाना ही है। एक सच्ची माँ अपने बच्चों को आराधनालय ले जाना चाहती है, और यही चीज आपको करना चाहिए। हमारे पास एक कमरा है जहाँ से आप भवन का हर कोना देख सकते हैं, पूरा सभागार, और वहाँ स्पीकर है जहाँ आप उसकी आवाज को जैसा चाहें नियंत्रित कर सकते हैं। आखिर में एक शौचालय है और पानी की चिलमची है। हर चीज माताओं की सुविधा अनुसार है। कुर्सी आदि के साथ आप बैठ सकती हैं, बच्चों के बदलने के लिए जगह यदि अवश्य है और हर चीज वहाँ पर है, ये सब लगा है। और तब बहुत सी बार नवयुवक बालक और कभी कभी बड़े इस पर होंगे। आप जानते हैं युवक लोग कागज की पर्चियाँ एक दूसरे को पहुँचाते या काटेंगे, या कभी कभी कलीसिया में अब आप इतने बड़े हैं कि ये इससे अच्छा जानते हैं, समझे? आपको इससे अच्छा जानना चाहिए, समझे? आपको यहाँ नहीं आना चाहिए। यदि आप एक किसी दिन एक वास्तविक मनुष्य बनने की आशा करते हैं और परमेश्वर के राज्य के लिए एक परिवार को बड़ा करना चाहते हैं, बजाय कि आरंभ में ही समाप्त कर दें, आप देखिए और सही व्यवहार करें, सही करें। और अब अशर्स यानी भेंट करने वाले भवन के कोने पर खड़े हैं और आदि आदि, और यदि कोई बढ़ता जा रहा है तो वो ठहराए हुए हैं अपने कर्तव्य के लिए, और ट्रस्टी यहाँ सामने बैठे हैं कि यदि किसी मामले में कोई दुर्व्यवहार कर रहा है, उन्हें अधिकार है कि उस व्यक्ति से शांत रहने के लिए कहें। अब यदि वे ऐसा आदर नहीं रखते हैं तो ये अच्छा होगा कि कोई और उस स्थान पर बैठे, क्योंकि कोई है जो सुनना चाहता है। यहाँ कोई इसी उद्देश्य से आया है कि सुने, और इसी के लिए हम यहाँ पर हैं कि प्रभु का वचन सुने, और इसलिए हर कोई इसे सुनना चाहता है और चाहता है कि जितना शांत रह सकता है रहे, जितना शांत वे रह सकते हैं। ये बात करने वालों का झुंड नहीं है और चल रहा है, निसंदेह कोई प्रभु की आराधना कर रहा है जिसकी आशा है, यही जो ऐसा ही होना चाहिए। इसीलिए आप यहाँ आए हैं कि प्रभु की आराधना करें। यदि आपको लगता है कि परमेश्वर की महिमा करूं या चिल्लाऊं तो करें, देखिए, क्योंकि आप इसी के लिए यहाँ पर हैं, परंतु अपने ही तरीके से प्रभु की आराधना करें। परंतु यदि आप बात कर रहे हैं, पर्चियां पास कर रहे हैं, ऐसे में कोई प्रभु की आराधना नहीं करता है, आप किसी को प्रभु की आराधना से दूर कर रहे हैं। देखिए, इसलिए हम ये अनुभव करते हैं कि ये गलत है, और इससे हम अपनी कलीसिया में नियम बनाते हैं कि हमारी सभा में इस भवन, इस कलीसिया को परमेश्वर के राज्य के लिए समर्पित करेंगे और उसके शब्द को प्रचार करने के लिए प्रार्थना, आराधना। इसी कारण से आपको यहाँ आना चाहिए कि आराधना करें। और फिर दूसरी बात, जब सभा समाप्त हो जाती है, अक्सर लोग कलीसिया में, मैं नहीं सोचता कि ये यहाँ पर, परंतु मैं सदा चला जाता हूँ क्योंकि मैं निकल जाता हूँ। अक्सर यहाँ तक कि दूसरी सेवाओं में अभिषेक आता है और दर्शन मिलते हैं, और मैं थक जाता हूँ और कमरे में चला जाता हूँ, और हो सकता है बिली या कोई व्यक्ति वहाँ मुझे घर ले जाता है कि मैं थोड़ी देर विश्राम करूँ जब तक कि इसमें से बाहर ना आ जाऊँ, क्योंकि इससे बहुत ही जोर पड़ता है। और फिर मैंने कलीसियाओं में देखा है, बालकों को सारे आराधनालय में भागने दिया जाता है और बड़े खड़े हुए शोर करते हैं एक दूसरे के साथ, और ये उस रात्रि की सभा खराब करने का अच्छा तरीका है, या जो भी समय है, समझे? जैसे ही सभा समाप्त होती है, सभागार को छोड़ दें। जब आपने आराधना कर ली है तब बाहर निकलकर एक दूसरे से बात करते हैं, और जो भी आप करना चाहते हैं, यदि आपके पास किसी से बात करने के लिए कुछ है कि उनसे मिलें, तो आप उनके साथ जाएं या उनके घर या ये जो भी है, परंतु सभागार में ये ना करें। आइए इसे हम परमेश्वर को समर्पित करें, समझे? ये उसके मिलने का स्थान है जहाँ हम उससे मिलते हैं, समझे? निसंदेह नियम पवित्र स्थान से ही आते हैं, और मैं विश्वास करता हूँ कि ये हमारे स्वर्गीय पिता को प्रसन्न करेगा। और जब आप आते हैं, आप पाते हैं वरदान आप लोगों के मध्य में उतरने आरंभ हो रहे हैं। अब अक्सर ये, मैं भरोसा करूँगा ये कभी यहाँ नहीं होगा, परंतु जब लोगों के पास नया आराधनालय होता है, पहली बात आप जानते हैं, भक्त मंडली घमंडी सी हो जाती है। आप ऐसा कभी नहीं चाहें। कुल मिलाकर ये आराधना स्थल है, ये प्रभु का घर है। और यदि आत्मिक वरदान उतरना आरंभ होते हैं आपके बीच में, जब से मैं गया हूँ मैं ये समझता हूँ लोग देश के विभिन्न भागों से यहाँ आए हैं कि इसे अपना घर बनाएं। मैं परमेश्वर का धन्यवादित आभारी हूँ कि मैं ये विश्वास करता हूँ कि जिस सुबह मैंने इसे समर्पित किया और कोने का पत्थर रखा एक युवक के समान, मैंने प्रार्थना की ये यीशु मसीह के आगमन को देखने को खड़ा रहे। और जब मैंने किया तो हजारों डॉलर का कर्ज, और वे, आप इतनी बड़ी भक्त मंडली से भेंट ले सकते थे और 30 या 40 सेंट मिलते, और हमारी बाध्यता कुछ 150 या 200 डॉलर एक महीने की थी। मैं इसको कभी कैसे कर सकता था? मुझे मालूम था कि मैं काम कर रहा था और मैं इसका भुगतान कर दूंगा। मैं पास्टर पद के 17 वर्ष बिना एक सेंट लिए, परंतु जो भी मेरे पास था सब दे रहा था, अपने खर्च निकालकर, और पीछे जो कुछ भी उस छोटे बॉक्स में परमेश्वर के राज्य के लिए आता था। लोग भविष्यवाणी और अनुमान लगा रहे थे कि एक वर्ष में ये कार खड़ी करने का स्थान में बदल जाएगा। एक गलती में शैतान ने इसे हमसे छीनने की पूरी कोशिश की। एक झूठे केस में किसी व्यक्ति ने दावा कर दिया कि उसके पैर में चोट लग गई जब वो काम कर रहा था, और फिर इसे चलने दिया और फिर मुकदमा कर दिया और इस आराधनालय को लेना चाहता था। और हफ्तों में यहाँ पर खड़ा रहा, परंतु सारी गलत फहमियों और अनुमानों के साथ जो उन्होंने कहा, ये आज भी सुंदरतम सभागार के रूप में खड़ा है और संयुक्त राज्य के अच्छे आराधनालयों में से एक। ये ठीक बात है। यहाँ से सारे संसार में जीवित परमेश्वर का वचन जाता है, सारे संसार में, इस सारे ग्लोब पर निरंतर घेरा बन रहा है, आकाश के नीचे, हर राष्ट्र में, जहाँ तक मैं जानता हूँ, समस्त संसार में। इसके लिए हम धन्यवादित हों, इसके लिए हम आभारी हों। और अब हमारे पास रहने के लिए स्थान है, हमारे सिर के लिए छत, एक साफ बैठने के लिए अच्छा आराधनालय। आइए हम स्वयं को नए तौर से कार्य करने के लिए समर्पित करें और अपने आप को मसीह के लिए समर्पित करें। और भाई नेविल, हमारे अच्छे भाई, वास्तविक पास्टर, जीवते परमेश्वर के सेवक, जहाँ तक मनुष्य संदेश को जानता है, इसको पकड़े रहता जो उसके पास है। ये ठीक बात है। वो एक सज्जन पुरुष है। ये थोड़ा सा डरते हैं, या डरते नहीं, मेरा ये अर्थ नहीं है, परंतु वे इतने अधिक सज्जन हैं, वो आप जानते हैं कि कहते नहीं हैं, जो कि बातों को धार के साथ और काटते हुए, या बैठ जाओ, शांत रहो। मैंने ये नोट किया है, इसके पीछे टेप को सुना है, परंतु ऐसा हुआ कि मैं वो कर सकता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे शब्दों को याद रखें, आप समझें, और ये सारा टेप किया जा रहा है, हर चीज टेप है। और कृपया हर डीकन अपने कर्तव्य के स्थान पर खड़ा हो और याद रखे कि आपको परमेश्वर की ओर से अधिकार है कि इस पद को पवित्रताई से थामे रहें, समझे। हर ट्रस्टी भी वैसा ही है, पास्टर को लाना है। ये पास्टर का स्थान नहीं है कि ये कहना पड़े, ये ट्रस्टी का है, या मेरा मतलब डीकनों का, क्योंकि वे कलीसिया के पुलिस हैं। ये है, यदि युवा लोग बाहर आकर हॉर्न बजाते हैं, और आप जानते हैं कि वे अक्सर कैसे करते हैं, या कुछ इस प्रकार का, सभा में या वहाँ बाहर जाते हैं और माताएं अपनी लड़कियों को वहाँ भेजती हैं, और वो किसी आवारा लड़के के साथ जाती हैं और वहाँ कार से भागे फिरते हैं, और उसकी माँ सोच रही है कि वो आराधनालय में है। डीकनों को ये देखना चाहिए, तो आप यहाँ पर आकर बैठे, या फिर मैं तुम्हें अपनी कार में लेकर आपके घर आपकी माँ के पास ले जाता हूँ, समझे। आपको ये करना चाहिए, याद रखें, प्रेम, देखिए, ये सदा सुधारने वाला होता है, वास्तविक प्रेम सुधारने वाला होता है, इसलिए आपको योग्य होना चाहिए कि सुधार में स्थिर रहें। और माताएं, अब जानती हैं, वहाँ उनके बालकों के लिए स्थान है। आप युवा बच्चे अंतर समझते हैं कि भवन में इधर उधर दौड़ते फिरें, समझे, और आप बड़े भी अंतर जानते हैं, बजाय की बातें और अपनी बातचीत सभागार में करते हैं, समझे। ये ना करें, ये गलत है, ये परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करता। यीशु ने कहा, ये लिखा है, मेरा घर आराधना और प्रार्थना का घर बनेगा। कैसे सारे राष्ट्रों के द्वारा ये प्रार्थना का घर कहलाएगा। और खरीदना और बेचना कर रहे थे, और उसने रस्सी का कोड़ा बनाया और लोगों को आराधनालय से बाहर भगा दिया। और हम निश्चय ही ये नहीं चाहते कि इस पवित्र स्थान में ये हो, इसलिए अपने जीवनों को समर्पित करें, अपनी कलीसिया, अपने काम, अपनी सेवाएं, हर चीज को जो हमारी है, परमेश्वर के राज्य के लिए। अब मैं वचन में से कुछ पढ़ना चाहता हूँ, इसके पहले कि हम समर्पण की प्रार्थना करें, और फिर ये बस एक दोबारा समर्पण है, क्योंकि वास्तविक समर्पण 30 वर्ष पहले हो चुका। अब इसमें, तब जैसे कि हम इस वचन को पढ़ते हैं और कुछ मिनटों के लिए इस पर बात करते हैं, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर अपनी आशीषें इस पर हमें देगा। अब वहाँ दूसरी बात थी जो मैं कहने जा रहा था, जी हाँ, जहाँ हमारे पास अभिलेख हुआ करते थे और आदि आदि, हमारे पास एक स्थायी कमरा है जहाँ से वे जो चाहें रिकॉर्डिंग ले सकते हैं। वहाँ एक विशेष जोड़ है और हर चीज वहाँ है, जो कि सीधे मूल माइक से वहाँ आता है। वहाँ कमरे हैं, कपड़े बपतिस्मे की सेवा के लिए। और फिर एक बात, बहुत से लोग मेरे लिए बुरा अनुभव करते हैं, बहुत से लोग जो वास्तव में पवित्र वचन को नहीं जान पाए, क्रॉस का आराधनालय में होना। मुझे याद है एक बार यहाँ इस विषय में कुछ हुआ था, मेरे पास तीन सलीबे थीं और एक भाई को झटका लगा क्योंकि उसने दूसरे नामधारी में कहते सुना था सलीब का अर्थ कैथोलिक है। मैं चाहता हूँ कोई विद्यार्थी या कोई नया जन्म पाया मसीह ये कहता है कैथोलिकों के पास सलीब का विकल्प है। मसीह की सलीब कैथोलिक को नहीं दर्शाता, ये परमेश्वर राज्य को दर्शाता है। अब संत कैथोलिकों को दर्शाते हैं, हम विश्वास करते हैं कि मनुष्य और परमेश्वर के बीच केवल एक ही मध्यस्थ है और वो मसीह है, परंतु बहुत तरह के मध्यस्थों में विश्वास करते हैं, हजारों स्त्रियां और पुरुष और सारी चीजें। कोई भी भला कैथोलिक अधिकांश जो मरता है मध्यस्थ बन जाता है। अब मसीह की सलीब यीशु मसीह को दिखाती है। क्या आप आरंभ के मसीहों को जानते हैं? प्राचीन इतिहास की आरंभिक कलीसिया, वे सलीब को अपनी पीठ पर लिए फिरते थे जहां भी वे गए, अपने आप को एक मसीह बताने और प्रमाणित करने को। अब कैथोलिक ये दावा करते हैं कि ये वे लोग थे, निसंदेह वे दावा करते हैं वे ही पहले हैं, परंतु उस समय कैथोलिक यहाँ तक कि संगठित भी नहीं थे, देखा, परंतु मसीही सलीब को साथ रखते थे। आपने लोगों को कहते सुना होगा पीठ पर सलीब, आप ये कैथोलिक के संदर्भ में कहते हैं? ये एक वास्तविक कैथोलिक विश्वव्यापी पवित्र आत्मा कलीसिया इस संसार की सही है। हम कैथोलिक हैं, हम मूल कैथोलिक हैं, बाइबल पर विश्वास करने वाले कैथोलिक, समझे, वे आराधनालय वाले कैथोलिक संस्था, हम इससे स्वतंत्र हैं, हम प्रेतों की शिक्षा में निरंतर बने हुए हैं, हम पवित्र आत्मा के बपतिस्मे की निरंतरता में बने हुए हैं, और वे सारी चीजें जिनके पक्ष में आरंभिक कलीसिया खड़ी थी, और कैथोलिक कलीसिया में ये सब कुछ नहीं है, समझे। इसलिए उन्होंने सलीब को यहाँ लगाया है, ये उस जैतून के वृक्ष में से खोद कर निकाली गई है जिसके नीचे यीशु ने प्रार्थना की थी। इस सलीब ने वर्षों लिए हैं और मुझे ऑर्गन ब्राइट ने दी है, और मैं इसे आराधनालय के साथ समर्पित करना चाहता हूँ। जिस किसी ने इसे टांगा है बिल्कुल अनुकूल लग रही है। मैं नहीं जानता कि ये कौन था जिसने इसे मेरे बाएं टांगा है, उसने अपने सीधे हाथ वाले चोर को क्षमा किया, वो मैं हूँ। और दूसरी चीज जो ये दर्शाता है, जैसे कि उसका हृदय झुका हुआ है, जैसे कि आप देखते हैं वो कष्ट उठा रहा है, कोई लोग भी जो वेदी की ओर देख रहा है और वो आपको वहाँ वेदी पर देख रहा है और वो यहाँ आपके होने की आशा कर रहा है, पापी, और वो आप पर दृष्टि डालेगा। बाद में वे यहाँ एक बत्ती लगाएंगे जब वेदी की बुलाहट की जाएगी, इस पर उजियाला डाला जाएगा कि जब लोग यहाँ उसके लिए होंगे। आप कहते हैं आपको इसकी आवश्यकता क्यों है, आपके पास तो मूरत नहीं होनी चाहिए। भाई, जब उसी परमेश्वर ने कहा अपने लिए खोद कर मूर्ति ना बनाए, उसी परमेश्वर ने कहा दो शराब बनाना और उनके पंखों के सिरे पास पास हों और उन्हें अनुग्रह सिंहासन के साथ रखना जहाँ लोग प्रार्थना करते हैं। अब देखिए ये बिना समझदारी के है, इसलिए ये प्रेरणा से है और सीधे ही सही स्थान पर टंगी हुई है। और मैं बहुत ही धन्यवादित हूँ कि एक जो सीधे हाथ पर हुआ, मैं विश्वास करता हूँ कि उसने मुझे क्षमा कर दिया, क्योंकि मैं वास्तव में मैं जानता हूँ कि मैंने अपने जीवन में कभी चोरी नहीं की, परंतु मैंने उसके समय का दुरुपयोग किया है, मैंने ऐसे चोरी की है और मैंने बहुत सी बातें की हैं जो मुझे नहीं करनी चाहिए, और मैं परमेश्वर के लिए आभारी हूँ इस प्रार्थना की उसने मेरे पापों को क्षमा कर दिया है। और अब मैं पहला इतिहास की पुस्तक 17वें अध्याय से पढ़ना चाहता हूँ, समर्पित सभा के लिए लगभग 5 मिनट बोलूँगा प्रार्थना, और फिर हम संदेश में जा रहे हैं। अब पहला इतिहास 17वां अध्याय। जब दाऊद अपने भवन में रहने लगा तब दाऊद ने नातान नबी से कहा, देख मैं तो देवदारू के बने हुए घर में रहता हूँ, परंतु यहोवा की वाचा का संदूक तंबू में रहता है। नातान ने दाऊद से कहा, जो कुछ तेरे मन में है उसे कर, क्योंकि परमेश्वर तेरे संग है। उसी रात परमेश्वर का वचन नातान के पास पहुंचा। जाकर मेरे दास दाऊद से कहे, बल्कि जाकर मेरे दास दाऊद से कहे, यहोवा यूं कहता है, मेरे निवास के लिए तू घर बनवाने ना पाएगा, क्योंकि जिस दिन से मैं इसराइलियों को मिस्र से ले आया, आज के दिन तक मैं कभी घर में नहीं रहा, परंतु एक तंबू से दूसरे तंबू को और एक निवास से दूसरे निवास को आया जाया करता हूँ। जहाँ जहाँ मैंने सब इसराइलियों के बीच आना जाना किया, क्या मैंने इसराइल के न्यायियों में से, जिनको मैंने अपनी प्रजा की चरवाही करने के लिए ठहराया था, किसी से ऐसी बात कभी नहीं कही कि तुम लोगों ने मेरे लिए देवदारू का घर क्यों नहीं बनवाया? अतः अब तू मेरे दास दाऊद से ऐसा कह कि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि मैंने तो तुझको भेड़शाला से और भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिरने से इस मनसा से बुला लिया कि तू मेरी प्रजा इसराइल का प्रधान हो जाए, और जहाँ कहीं तू आया और गया वहाँ मैं तेरे संग रहा और तेरे सब शत्रुओं को तेरे सामने से नष्ट किया है, और अब मैं तेरे नाम को पृथ्वी के बड़े बड़े लोगों के नाम के समान बड़ा कर दूंगा। मैं इस जगह में ये कहना चाहूँगा कि दाऊद ने वही चीजें देखी जो हमने देखा। दाऊद ने कहा कि ये ठीक नहीं है कि तुम लोगों ने मेरे लिए देवदारू का घर बनाया और मेरे परमेश्वर का वाचा का संदूक अब भी तंबू में है। ये खालें थी जो मिलाकर सिली गई थी, भेड़ और जानवरों की। उसने कहा, ये ठीक नहीं है कि मेरे लिए अच्छा घर हो और मेरे परमेश्वर का वाचा का संदूक तंबू में रहे। इसलिए परमेश्वर ने उसके हृदय में डाला कि एक आराधनालय बनवाए। परंतु दाऊद परमेश्वर का प्रेम और पवित्रताई में मनुष्य होने के नाते फिर भी उसने बहुत सारा लहू बहाया। इसलिए उसने कहा, दाऊद ये बात उस युग के भविष्यद्वक्ता की उपस्थिति में कह रहा है जो कि नातान था, और नातान को ये मालूम था कि परमेश्वर का दाऊद से प्रेम है। उसने कहा, दाऊद जो तेरे हृदय में है वो कर, क्योंकि परमेश्वर तेरे साथ है। क्या ही वक्तव्य है, वो सब कर जो हृदय में है, क्योंकि परमेश्वर तेरे साथ है। और उसी रात परमेश्वर के पवित्र प्रेम के प्रति दाऊद के समर्पण को दर्शाते हुए, और फिर ये देखते हुए उसी रात्रि जानते हुए कि वो गलती में था, उसे ये करने की अनुमति नहीं दी गई थी, परमेश्वर इतना अनुग्रहकारी था कि नीचे उतरकर नातान से बोला। और मैंने सदा इन वचनों को पसंद किया, जाकर नातान को बता, मेरा जाकर मेरे दास दाऊद को बता कि मैंने तुझे भेड़ के बाड़े में से लिया, वो तो कुछ भी नहीं था। एक मिनट के लिए मैं इसे यहाँ लागू करना चाहता हूँ। मैंने तुझे लिया, तू कुछ भी नहीं था, और मैंने तुझे एक नाम दिया। इस पृथ्वी पर तेरा नाम एक महान पुरुष जैसा हो गया। मैं इसे एक गोपनीयता में लागू करना चाहूँगा, फिर भी इस तरह से लक्ष्य को बनाते हुए मैं ये सोच रहा था कि एक कुछ वर्षों पहले मैं वहाँ नगर में खड़ा था और किसी ने मेरी चिंता नहीं की, किसी ने मुझसे प्रेम नहीं किया, और मैंने लोगों से प्रेम किया परंतु किसी ने मुझसे प्रेम नहीं किया। मेरे परिवार की पृष्ठभूमि के कारण मैं अपने मूल्यवान माता और पिता का अपमान नहीं कर रहा हूँ। मेरी कितनी इच्छा थी कि माँ जीवित होती और इस सुबह इस पवित्र स्थान में चलती। बहुत से पुराने लोग जिन्होंने इसे बनाने की सहायता में अपने पैसे लगाए, परमेश्वर करे इस प्रातः वे उस जंगले से देखने पाए। परंतु ब्रणहम परिवार का यहाँ आसपास में अच्छा नाम नहीं रहा पीने के कारण। किसी को मुझसे कोई मतलब नहीं था और अधिक समय नहीं हुआ। मुझे याद है मैं अपनी पत्नी को बता रहा था, बस याद है मुझे कोई बात करने को नहीं मिल सका, किसी ने मेरी परवाह नहीं की और अब थोड़े से विश्राम के लिए मुझे छिपना पड़ता है। और अब प्रभु ने हमें ये बड़ा स्थान दिया है और ये बड़ी चीजें जो उसने की हैं और उसने मुझे दिया। उस बुरे नाम को छोड़ उसने मुझे किसी महान मनुष्य जैसा नाम दिया है और जहाँ कहीं मैं गया उसने मेरे शत्रुओं को गिरा दिया। इसके समक्ष कभी भी कोई खड़ा नहीं हो पाया जहाँ कहीं ये गया। परंतु और मैं इसके लिए कितना आभारी हूँ। और मैं इसको कभी कैसे जान पाता, एक छोटे फटीचर बालक के समान, यहाँ पर यहाँ से दो या तीन ब्लॉक दूर इंग्राहम विले स्कूल में, जब मैं स्कूल में उपहास की चीज था, बहुत ही फटीचर होने से और पुराने तालाब में फिसलता था। मैंने कैसे कभी जाना कि नीचे इस तालाब में कुमुदनी के बीज पड़े हैं जो कि इस प्रकार से खिल सके, और कैसे मुझे कभी मालूम हुआ कि कोई मुझसे बात नहीं कर रहा है और फिर भी वो मुझे देगा एक नाम जो उसके लोगों के बीच सम्मान पाएगा।
He could not do it. But he said, I'll raise up from your seed.
और अब दाऊद को मंदिर बनाने की अनुमति नहीं मिली, वो इसे नहीं कर सका। परंतु उसने कहा, मैं तेरे वंश में से उठाऊंगा और वो मंदिर को बनाएगा और वो मंदिर सदा का मंदिर होगा और तेरे पुत्र पर, दाऊद के पुत्र पर सदा काल का राज्य होगा, वो नियंत्रित करेगा। सुलेमान दाऊद का पुत्र स्वाभाविक में उसकी शारीरिक सामर्थ्य से उसने प्रभु के लिए मंदिर बनाया। परंतु जब दाऊद का वास्तविक वंश आता है, दाऊद का पुत्र, उसने उन्हें बताया कि ऐसा समय आएगा कि इसमें पत्थर पर पत्थर भी बाकी ना छूटेगा इस मंदिर का। परंतु उसने दूसरे मंदिर की ओर इशारा करने का यत्न किया। यूहन्ना प्रकाशन वाला प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में उसने इस मंदिर को देखा, प्रकाशित वाक्य 21, उसने देखा एक नया मंदिर ऊपर स्वर्ग से नीचे उतर रहा है जैसे दुल्हन अपने दूल्हे के लिए सजती है। और मंदिर से आवाज आती है, कहा देखो परमेश्वर का मंदिर मनुष्यों के साथ है और परमेश्वर उनके संग होगा और उनकी आंखों से सारे आंसू पोछ दिए जाएंगे, फिर कोई भूख ना होगी, ना ही और कोई दुख, ना ही कोई कष्ट या मृत्यु, क्योंकि पहली बातें बीत गई हैं। तब दाऊद का सच्चा पुत्र, जैसे कि हम आने वाले सप्ताह के पाठ में देखने जा रहे हैं, तब वो उसके मंदिर में आएगा, परमेश्वर के मंदिर में, वो वास्तविक मंदिर जिसको बनाने के लिए अब वो गया हुआ है। क्योंकि उसने यूहन्ना 14 में कहा, मेरे पिता के घर में बहुत से बड़े बड़े भवन हैं और मैं जाऊंगा, उसका इससे क्या अर्थ था, ये पहले ही ठहराया हुआ है और मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जाता हूँ और वापस आऊंगा कि तुम्हें अपने साथ ले जाऊं। और निसंदेह हम जानते हैं कि ये आने वाले महान युग में होगा और दाऊद का सच्चा वंश सिंहासन पर विराजेगा जो कि यीशु मसीह है, और तब कलीसिया पर राज्य करेगा उसकी दुल्हन के समान, उसके साथ घर में और इसराइल के 12 गोत्रों के ऊपर उस सारी अनंतता में। और ये छोटे स्थान, जैसा कि दाऊद परमेश्वर का सच्चा मंदिर नहीं बना सका क्योंकि वो उसे बनाने के लिए तैयार नहीं था, वहाँ कुछ नहीं था कि वो कर सका, वो एक मरणहार था, लहू बहाया। ऐसा ही ये आज है हमारे लिए, हम परमेश्वर का सच्चा भवन बनाने के लिए तैयार नहीं हैं। केवल एक ही है जो ये कर सकता है और इसका इस समय निर्माण हो रहा है, परंतु ये छोटा आराधनालय और इसके साथ वो मंदिर जो सुलेमान ने उसके लिए बनाया, और इसके दूसरे ये आराधना के अस्थायी स्थान है, जब तक वो समय नहीं आता जब वास्तविक मंदिर इस पृथ्वी पर स्थापित किया जाएगा और धर्मी आकाश के एक छोर से दूसरे छोर तक राज्य करेंगे, और फिर कोई और दुख नहीं होगा। उस आराधनालय में किसी की अंत्येष्टि का प्रचार नहीं होगा और विवाह ना होंगे, क्योंकि एक ही महान विवाह उस अनंतता के लिए होगा, वो क्या ही समय होगा। परंतु हम अपने हृदयों में आज ये उद्देश्य रखें, उत्सव की याद और प्रतीक्षा उस आने वाले मंदिर के लिए, कि हम उसके आत्मा के द्वारा चरित्र में ऐसे चित्रित हो जाएं कि हम इस स्थान में ऐसे आराधना करें जैसे कि हम उस दूसरे स्थान में, जिस स्थान की हम आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब आइए हम अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। और जैसा कि मैं पवित्र वचन पढ़ता हूँ, फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। फिर मैंने पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा, वो उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए सिंगार किए हो। और फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है, वो उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। आइए अब हम अपने सिरों को झुकाएं। हमारे स्वर्गीय पिता, हम आदर युक्त भय में खड़े हैं, हम आदर और पवित्र श्रद्धा में खड़े हैं, और हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हमारे उपहार को आप स्वीकार करें, कि आपने हमें अनुग्रह पैसा दिया है कि इस आराधना के स्थान को आपके लिए तैयार करें। कुछ नहीं है या स्थान नहीं है कि हम पृथ्वी पर तैयार कर सकें जो परमेश्वर के आत्मा के निवास के लिए योग्य होगा, परंतु हम इसे एक प्रेम की निशानी और आपके प्रति भावना के रूप में आपको प्रस्तुत करते हैं प्रभु, और हम सारी चीजों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं जो कि आपने हमारे लिए किया। और अब भवन और जमीन बहुत पहले ही सेवा के लिए समर्पित हो चुके, और हम आपको उन यादों के लिए जो रही धन्यवाद देते हैं। और अब प्रभु परमेश्वर, जैसा कि वर्षों पहले दर्शन मिला ये प्रकट करते हुए कि मैंने पुराना देखा जिसमें लोग एक समय बैठे थे और उन्होंने मरम्मत कर दी और नया बना दिया और मुझे वापस नदी के पार भेज दिया गया। अब प्रभु परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता, यहाँ हम तेरे झुंड के लोगों के समान खड़े हैं, हम यहाँ तेरे राज्य के लोगों के समान खड़े हैं, मैं खुद और पास्टर और कलीसिया लोग हम इस भवन को सर्व सामर्थी परमेश्वर की सेवा के लिए समर्पित करते हैं। यीशु मसीह उसके पुत्र के नाम में होते हुए परमेश्वर की सेवा के लिए और परमेश्वर आदर और सम्मान के लिए और होने पाए सुसमाचार इस स्थान से ऐसा प्रवाह हो जब तक कि संसार के चारों कोनों से यहाँ ना आ जाए कि परमेश्वर की महिमा को यहाँ से निकलते हुए देखें, जैसा कि आपने बीते समय में किया, होने पाए भविष्य में कई गुना अधिक हो। पिता, हम अब अपने आप को आपकी सेवा के लिए वचन में होते हुए समर्पित करते हैं, उस सब के साथ जो हम में है। प्रभु, भक्त मंडली और लोग, वे अपने आप को इस प्रातः वचन के सुनने के लिए समर्पित करते हैं और हम अपने को सेवकों के समान समर्पित करते हैं वचन के प्रचार के लिए, समय और असमयों में डांट फटकार सारे संकट झेलने के साथ साथ, जैसा कि ये कोने के पत्थर में लिखा हुआ है, 30 वर्षों पहले आपने कहा ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, परंतु अपने लिए ऐसे शिक्षक ढूंढ लेंगे जिन्हें कानों की खुजली है और सच्चाई से कथा कहानियों की ओर फिर जाएंगे। प्रभु, जैसा कि हम वचन को लोगों के लिए थामे रहें, ऐसा यत्न कर रहे हैं, हम प्रेरणा से भर जाएं, अपनी दुगनी कोशिश से बलवंत हो जाएं। प्रभु, जैसा एक आत्मा का दूना भाग इस स्थान पर प्रहार करे, होने पाए पवित्र आत्मा जैसा कि ये मंदिर के समर्पण के दिन था जब सुलेमान ने प्रार्थना की, पवित्र आत्मा अग्नि स्तंभ और बादल के रूप में सामने के द्वार पर आया, सरापों के चारों ओर घूमता हुआ पवित्र स्थान में चला गया और उसने अपना विश्राम स्थान लिया। ओ परमेश्वर, सुलेमान ने कहा, यदि तेरे लोग कहीं भी परेशानी में हो, इस स्थान की ओर देख कर प्रार्थना करें तो स्वर्ग से सुन लेना। प्रभु, होने पाए इस सुबह हर हृदय के अंदर हर पवित्र किए प्राण जो यहाँ हैं आए हैं, और बाइबल ये कहती है कि परमेश्वर की महिमा इतनी महान थी यहाँ तक कि सेवक भी सेवा का काम ना कर सके परमेश्वर की महिमा के कारण। ओ प्रभु परमेश्वर, इसे फिर से होने दे जैसा कि हम अपने आप को तुझे इस आराधनालय की समर्पण सेवा के लिए देते हैं, और ये लिखा है, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, और हम अपने आप को इस आराधनालय की भेंटों के साथ इस सुबह आपको सेवा के लिए समर्पित करते हैं, अंत दिन के उजियाले के लिए, सांझ के उजियालों के लिए, ताकि हम लोगों के लिए स्वांतना और विश्वास प्रतीक्षा करने वाले लोगों के लिए जो दूल्हे के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, मसीह के सुसमाचार से दुल्हन को तैयार करें ताकि प्रभु यीशु ग्रहण करे। ये हम, मैं अपने को भाई नेविल और भक्त मंडली को परमेश्वर की सेवा के लिए समर्पित करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आप बैठ सकते हैं।
David said, I was happy.
दाऊद ने कहा, मैं आनंदित हुआ जब लोगों ने मुझसे कहा, आओ हम प्रभु के भवन को चलें, और होने पाए ये हमारे साथ सदा हो, जब इसका उल्लेख हो हम प्रभु के भवन में जमा होने के लिए आनंदित होंगे, आमीन। अब इस छोटी सी समर्पण सेवा के पश्चात अब मेरे पास 1 घंटा है, और अब जरा याद रखें कि हम किसके लिए समर्पित हैं, श्रद्धा, पवित्रताई, प्रभु के सम्मुख शांत, प्रभु के सामने आराधना, उतने जितने श्रद्धा में बने रहे जितने हो सकते हैं प्रभु के भवन में, और जब सेवा विसर्जित हो जाती है, सभा के विसर्जित होने के तुरंत बाद भवन से चले जाएं, समझे, और तब ये द्वारपालों को समय मिलेगा कि अंदर आकर अगले समय के लिए इसकी सफाई करें और इसे तैयार कर दें कि फिर ये प्रभु के भवन में कोई गड़बड़ नहीं। और मैं सोचता हूँ आप सभा के विसर्जित होने के पश्चात लगभग 15 मिनट में स्थान साफ हो जाएगा। निश्चित रहें, मित्र भाव में बने रहें, हर एक से हाथ मिलाएं, हर एक को वापस आने का निमंत्रण दें। और इस आने वाले सप्ताह में बहुत ही पवित्र सेवाएं यहाँ हों, हम ऐसी आशा करते हैं जो कभी इस आराधनालय में हुई हों, हम इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैंने अपने आप से कभी किसी चीज को आरंभ नहीं किया। अब तक पिछली रात्रि प्रार्थना में छोटी सी घड़ी में मैंने कुछ देखना आरंभ किया था, इसलिए मैं विश्वास करता हूँ ये एक महान समय होगा, जो कि मैं विश्वास करता हूँ ये होगा यदि प्रभु हमारी सहायता करेगा। अब जब मैंने कहा महान समय, अब मैं किसी चीज पर बोलने जा रहा हूँ इस सुबह। आप जानते हैं, जिसे मनुष्य महान कहता है कभी ये महान नहीं होता, परंतु जिसे परमेश्वर महान कहता है मनुष्य उसे मूर्ख कहता है, और जिसे परमेश्वर मूर्खता कहता है उसे मनुष्य महान कहता है। इसलिए इसे अपने ध्यान में रखें, हर वचन को तौलें। अब सभाएं लंबी हैं, वे थक जाएंगे क्योंकि कठोर सभाएं हैं, बहुत सारी शिक्षा, पवित्रीकरण, और मैं बस वो स्थान जहां मैं ठहरा हुआ हूं, लोग कोशिश करते हैं मुझे हर चीज खिलाना चाहते हैं, परंतु मैं कहा भाई आपने अपना वजन बहुत कम कर लिया है भाई ब्रणम और आदि आदि, परंतु मैं निरंतर सेवा में हूं, मुझे अगले रविवार रात्रि में जाना है ताकि जल्दी से जाकर मैक्सिको में लूं, इसलिए ये कठिन बात है, इसलिए परंतु मैं कोशिश कर रहा हूं बहुत अधिक ना खाऊं और अपने आप को तैयार करूं। और इस प्रातः मैं भाई जूनियर जैक्सन को देखकर आनंदित हूं और भाई रुडेल और अलग अलग सेवकों को आसपास। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। अब मैं इस प्रातः आपसे एक विषय पर बात करना चाहता हूं, जो यहां मैंने कुछ टिप्पणियां लिखी हुई हैं, और मैं पहले यशाय के 53वें अध्याय से पढ़ना चाहता हूं। अब जबकि आप निकाल रहे हैं तो मैं एक या दो उद्घोषणाएं करना चाहता हूं। कि आज रात्रि मैं इस पुस्तक पर बोलना चाहता हूं, जो कि अंतिम कलीसियाई काल को मोहर खुलने से जोड़ती है। अब इसमें एक बड़ा खाली स्थान है, और इसके पहले जब मैंने कलीसियाई कालों को समाप्त किया, मैंने तुरंत बाद डैनियल के 70 सप्ताहों पर बोला, क्योंकि ये इसमें बंधा हुआ है। और मैंने कहा अब यदि मैंने कभी 7 मोहरें ली तो मुझे इन डैनियल के 70 सप्ताहों को पूरा करना होगा, मोहरों के जोड़ने के क्रम में एक चीज को खुला छोड़ते हुए, और वो 5वां अध्याय था 7 मोहरों की पुस्तक का, और आज रात्रि हम उसे लेंगे। हम आज रात्रि से जल्द आराम करना चाहते हैं। मेरे विषय में क्या है? आपने पहले ही इसका उल्लेख किया है, क्या आपने जल्द ही आरंभ किया? इस बारे में क्या है? क्या हर कोई यहाँ 7 बजे आ सकेगा? ठीक है, तो हम अपनी नियमित सभा 6:30 बजे आरंभ करेंगे, गाने की सभा, और मैं यहाँ 7 बजे होऊंगा, और फिर इस सारे सप्ताह हम जल्द ही आरंभ करेंगे। और हम कोई भी मसीहों की तरह गाना पसंद नहीं करता, हम गाना पसंद करते हैं, हम उन चीजों से प्रेम करते हैं, परंतु अब हम लोग किसी और चीज में हैं, हम वचन में हैं, इसलिए आइए हम ठीक इसी के साथ बने रहें, हम बढ़ रहे हैं, हम शिक्षा में हैं, और आप अनुभव कर सकते हैं कि मुझ पर कितना तनाव है, देखिए, क्योंकि यदि मैं कुछ गलत सिखाता हूं, तो मुझे उसका उत्तर देना होगा, समझे, इसलिए कोई क्या कहता है मुझे वो नहीं लेना है, मुझे चाहिए, मुझे प्रेरणा में होना चाहिए, और मैं विश्वास करता हूं कि वे 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 गर्जन हैं, इसे प्रदान करेंगे, समझे। और अब यशाया में, यशाया का 53वां अध्याय पहला या 2 पद, मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूं, अब इसका 7 मोहरों से बिल्कुल संबंध नहीं है, ये बस एक संदेश है, क्योंकि मुझे मालूम था कि मुझे समर्पण करना ही है और मैं इसमें नहीं जा सकूंगा क्योंकि मेरे पास समय नहीं होगा, परंतु मैंने सोचा एक छोटी सी समर्पण सभा, इस आराधनालय की यादगार सभा या बल्कि छोटी समर्पण सभा, तब वे समय नहीं होगा कि जो मैं कहना चाहता हूँ उसमें जाऊँ, देखिए इस पुस्तक को खोलते हुए, इसलिए आज रात्रि करूँगा। और अब ये छोटी सी सभा है, ये इस सारे में होते हुए मिला हुआ है, इसलिए अब हर वचन को सुने, इसे पकड़ें, और यदि आप इसे टेप के ऊपर ले रहे हैं या कुछ, तो फिर आप टेप की शिक्षा के ऊपर ही बने रहें, कुछ भी ना कहें, परंतु वो जो टेप कहता है ठीक वही जो टेप कहता है, समझे। अब क्योंकि उनमें से कुछ बातें हम उस सारे भाग को समझने जा रहे हैं इस विषय में, क्योंकि ये गलत समझा गया, समझे। और आप निश्चित रहें, वही कहें जो टेप कहता है, और कुछ भी ना कहें, समझे, क्योंकि ये मैं अपना कुछ भी नहीं कहता हूँ, ये वो है जो ये कहता है, आप समझे। और बहुत सी बार भ्रम में लोग उठते हैं और कहते हैं, भाई अमुक अमुक ने कहा इसका ये अर्थ है, इसे उसी तरह से छोड़ दें जैसा ये है। हम बाइबल को इस प्रकार से चाहते हैं, ठीक जैसा बाइबल ये कहती है, हम इसी प्रकार से चाहते हैं, बिल्कुल वैसे ही, अपना अनुवाद इसमें ना डालें, ये पहले ही अनुवादित है। अब देखिए, अब जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया, और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ। मुझे ये फिर से पढ़ने दें ध्यान से, जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया, प्रश्न है, और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ। दूसरे शब्दों में, यदि आपने हमारे समाचार का विश्वास किया तब प्रभु का भुजबल प्रकट हुआ, समझे। किसने समाचार का विश्वास किया और किस पर प्रभु का भुजबल प्रकट हुआ। और मैं संत मती के सुसमाचार में से भी पढ़ना चाहता हूँ, संत मती का 11वां अध्याय। और अब आप लोग अपने कागज और चीजें लेते आए, क्योंकि अब लगातार, यदि आपके पास रिकॉर्डर नहीं है, आप लेते आए अपने कागज ताकि हम ले सकें। मती का 11वां अध्याय 25वां और 26वां पद, 11, 26 और 27। ठीक है, यीशु प्रार्थना में बोल रहा है। मैं इसे थोड़े पीछे से आरंभ करना चाहता हूँ, हम इसे 25वें और 26वें पद तक लेंगे। मैं विश्वास करता हूँ कि जहाँ मैंने घोषणा की, यद्यपि मैंने यहाँ अपनी बाइबल में निशान लगा रखे हैं। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पे प्रकट किया है। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। इन दो वचनों को पकड़ें, किसने हमारे समाचार का विश्वास किया और किस पर प्रभु का भुजबल प्रकट हुआ। फिर भी यीशु ने परमेश्वर को धन्यवाद किया, क्योंकि उसने भेदों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा है और बालकों पर प्रकट करेगा, जैसा कि सीखेंगे। ऐसा करना परमेश्वर को अच्छा लगा। इस वचन को पढ़ते हुए मैं ये विषय लेता हूँ, परमेश्वर स्वयं को साधारणता में छिपा रहा है, फिर उसी में स्वयं को प्रकट कर रहा है। टेप के लिए मैं इसे दोहराता रहूँगा, आप देखिए, टेपों के लिए, क्योंकि वे इसे टेप कर रहे हैं, समझे। परमेश्वर स्वयं को साधारणता में छिपा रहा है, फिर उसी में स्वयं को प्रकट कर रहा है। सोचकर ये विचित्र लगता है कि कैसे परमेश्वर ये चीज करता है, कि परमेश्वर अपने आप को किसी सादी चीज में छिपा लेगा, इसी कारण से ज्ञानी इसे लाखों मील से चूक जाएंगे, और फिर वापस उसी में पलटता है, सादगी में, साधारण सी बात में, अपने कार्य करने की विधि में, और फिर से अपने आप को प्रकट करता है। मैंने सोचा ये एक पाठ बनता है कि इसमें जाने से पहले हम इसका अध्ययन करें, सात मोहरों की उस महान शिक्षा में, जिस मार्ग के द्वारा वो स्वयं को प्रकट करता है, बहुत से चूक जाएंगे। अब मनुष्यों के अपने विचार होते हैं कि परमेश्वर को कैसा होना चाहिए और परमेश्वर क्या करने जा रहा है, और जैसा कि मैंने अपना पुराना वक्तव्य दिया है बहुत सी बार, कि मनुष्य मनुष्य ही बना रहता है। मनुष्य सदा परमेश्वर की महिमा करता है कि उसने क्या किया है, और सदा सामने की ओर देखता है कि वो क्या करेगा, और जो वो कर रहा है उससे अनजान रहता है, समझे समझे। इस प्रकार से वे इससे चूक जाते हैं, वे मुड़कर देखते हैं और देखते हैं कि उसने कितनी महान चीजें की हैं, परंतु देखने में असफल रहते हैं कि उसने करने के लिए कितनी साधारण चीज का प्रयोग किया है, समझे। और फिर सामने देखते हैं और महान चीज को आते देखते हैं कि ये होने जा रहा है, 10 में से 9 बार ये उनके आसपास पहले ही हो रहा होता है, और ये इतना साधारण होता है कि वे नहीं जानते, समझे। एक दिन एक व्यक्ति यहाँ यूटिका में, और यदि उसके कुछ लोग यहाँ हैं, मैं यहाँ किसी मनुष्य के सुधार को दर्शाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, वो तो युद्ध का अनुभवी है और मैं विश्वास करता हूँ कि वो था। मुझे नहीं मालूम कि वो किस ओर था, परंतु मैं विश्वास करता हूँ वो एक विरोधी था, परंतु वो एक नास्तिक था और उसने दावा किया कि परमेश्वर जैसी कोई चीज नहीं है। वो यूटिका में रहा, उसका नाम जिम डॉर्से था, आप में से बहुत से लोग उसे जानते होंगे। जब मैं छोटा था तो उसने मुझे एक तरबूज दिया था, वो नदी किनारे तरबूज उगाता था, वो मेरे पिता का एक अच्छा मित्र था, परंतु एक दिन उससे एक बड़ी विशेष बात, महान बात जो उसने कभी कही तुलना में कही गई। उन दिनों में मैं एक छोटा लड़का था, परंतु उसके विश्वास की तुलना में जिस कारण वो चला गया और सिर झुकाकर और रोया, और इसके द्वारा मैं समझ गया कि वो मनुष्य शानदार रीति से मसीह में मत परिवर्तित हो गया है। लगभग 85 वर्ष की आयु में एक दिन उसने छोटी लड़की से पूछा, जो कि संडे स्कूल से आ रही थी, क्यों वो अपना समय ऐसी चीजों में नष्ट करती है। उसने कहा क्योंकि उसका विश्वास था कि एक परमेश्वर है, और श्री डॉर्से ने कहा, उसने कहा, बालक तुम ऐसी चीज का विश्वास करके बहुत गलत हो। और कहा कि वो छोटी लड़की नीचे झुकी, एक छोटा सा फूल तोड़ा जमीन पर से और उसकी पंखुड़ियों में से उसे खींचा, और कहा, श्री डॉर्से, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये कैसे जीता है। ये वहाँ था। जब उसने पीछे ढूंढना शुरू किया, वो बालक से कह सकता था, भाई ये जमीन से उगा है, और फिर प्रश्न घूम सकता था कि पृथ्वी कहाँ से आ गई, वो बीज वहाँ कहाँ से आया, ये कैसे हुआ, और फिर और वापस चलता रहा जब तक उसने देख नहीं लिया, समझे। कोई चकाचौंध करने वाली बात नहीं जो इस विषय में हम सोचते हैं, परंतु ये वास्तव में बहुत साधारण बात है। परमेश्वर को भाया कि अपने आप को प्रकट करे, और फिर अपने आप को छिपा रखे, फिर अपने आप को छिपा रखे और अपने आप को प्रकट करे सादगी में, छोटी चीजों में, ये मनुष्य के सर पर रखे। क्योंकि यदि आप कहेंगे न्यायी परमेश्वर ऐसा क्यों करेगा, क्योंकि मनुष्य आरंभ में बनाया गया था कि अपने आप को बदलने का यत्न न करे। एक मनुष्य को पूरी रीति से परमेश्वर पर निर्भर रहने के लिए बनाया गया। यही कारण है कि हमें मेमने और भेड़ से जोड़ा गया है। भेड़ अपनी अगुवाई स्वयं नहीं कर सकती, उसे अगुवा चाहिए ही, और पवित्र आत्मा को हमारी अगुवाई करनी है। इसलिए मनुष्य को इसी प्रकार बनाया गया है, और परमेश्वर ने अपने सारे काम सादगी में किए कि सादगी में ही इसे समझा जा सके, और परमेश्वर ने अपने को साधारणता में बना रखा सादगी के साथ, ताकि साधारणता में समझा जाए। इसके अलावा मेरा विश्वास है, उसने यशाया 35 में कहा, मूर्ख भी गलती नहीं करेगा, ये इतना साधारण है। और हम जानते हैं कि परमेश्वर इतना महान है, जहाँ तक कि हम किसी महान चीज की आशा करते हैं और हम साधारण चीज पर चूक जाते हैं, हम सादगी पर ठोकर खाते हैं, और इसी प्रकार से हम परमेश्वर पर चूक जाते हैं सादगी पर ठोकर खाने के द्वारा। परमेश्वर इतना सादगी में है, जब तक कि आज के दिन के और सब दिनों के ज्ञानी चूक न जाएं, वो उसे लाखों मील से चूक जाते हैं, क्योंकि उनके ज्ञान में वे जानते हैं कि उस जैसा कुछ नहीं है इतना महान, परंतु उसके प्रकाशन में वो इतना साधारण है कि उनके सिर के ऊपर से निकल जाता है और चूक जाते हैं। अब इसका अध्ययन करें, सारे का अध्ययन, और आप लोग जो यहाँ पर आए हैं, जब आप अपने मोटल में के कमरे में जब जाएं, तो इन बातों को लेकर इस पर ध्यान करें। हमारे पास समय नहीं है कि इसकी और व्याख्या करें जैसे कि इसकी व्याख्या करनी चाहिए, परंतु मैं चाहता हूं जब आप मोटल या होटल में पहुंचे या जहां कहीं भी आप रुके हुए हैं या घर, एक साथ जमा हों और इस पर अध्ययन करें। उस मार्ग से चूक जाते हैं जिसमें वो अपने को प्रकट कर रहा है। वो बहुत ही महान है, फिर भी अपने को सादगी में छिपाता है कि स्वयं को छोटे से छोटे पर प्रकट करे। समझे, बड़ा होने का यत्न ना करें क्योंकि ये ऊपर से निकल जाता है, परंतु परमेश्वर की साधारणता को सुने और तब आप परमेश्वर की ठीक वही साधारण से मार्ग में पाएंगे। बहुत ही दिखावा, संसारिक बुद्धि, शिक्षा हमेशा उससे चूक जाते हैं। मैं अब यहाँ नहीं हूँ और मैं जानता हूँ कि यहाँ दो या तीन विद्यालय के शिक्षक हैं। मैं जानता हूँ कि वे यहाँ बैठे हैं और मैं यहाँ विद्यालय के विरोध में नहीं हूँ और शिक्षा के और अशिक्षकता के उसका पक्ष नहीं ले रहा हूँ। मैं इसके लिए यहाँ नहीं हूँ, परंतु ये क्या है कि लोगों ने इसे इस प्रकार से रखा है और निर्भर करते हैं कि जब तक कि वे यहाँ तक कि धर्म विद्यालय आदि आदि में नहीं जाते, वे यहाँ तक कि उसमें चूक जाते हैं जो परमेश्वर ने उनके सामने रखा है। इसलिए मैं भाइयों के विरोध में नहीं हूँ जो नामधारियों में है, परंतु मैं नामधारी की व्यवस्था के विरोध में हूँ क्योंकि ये स्वयं को बड़ा करती है और सेवकों को शिक्षित करते हैं उस अमुक अमुक स्थान में, जब तक कि उनको सही रूप में शिक्षित ना कर दें और शिक्षा ना दें, वे बाहरी रहते हैं और उन्हें मनोविज्ञान की परीक्षा में से निकलना होता है और आदि आदि। मैं ऐसा कभी नहीं सोचता हूं कि ये परमेश्वर की इच्छा है कि सेवक को मनोवैज्ञानिक से परखा जाए, परंतु उसे वचन से परखना चाहिए। समझे, उसे परखने का परमेश्वर का मार्ग यही होगा कि उसके जन को भेजा जाए कि वचन को ले, वचन प्रचार करो। आज हम धारणा यानी फिलॉसफी प्रचार करते हैं, हम मतसार और सांप्रदायिकता का प्रचार करते हैं और बहुत सारी चीजें और वचन को छोड़ देते हैं क्योंकि वे कहते हैं ये समझा नहीं जा सकता, ये समझा जा सकता है, उसने ये करने की प्रतिज्ञा की है, अब उससे ये मांग रहे हैं कि वो ये करे। अब हम यहाँ कुछ चरित्र लेने जा रहे हैं कुछ मिनटों के लिए। अब नूह के दिनों पर ध्यान करें। नूह के दिन परमेश्वर ने संसारिकता की बुद्धि को देखा, इतनी महान रुकावट और सम्मानित हो गई। उसने एक साधारण संदेश साधारण व्यक्ति के द्वारा भेजा और उन्हें अपनी महानता दर्शाई। अब हम जानते हैं कि नूह के दिनों में उन्होंने दावा किया कि सभ्यता इतनी सामर्थी थी कि जिस स्थान पर हम अब तक नहीं पहुंचे हैं अपनी इस आधुनिक सभ्यता में, और मैं विश्वास करता हूं कि अंत में ये पहुंच जाएगी क्योंकि हमारे प्रभु ने कहा कि जैसे ये नूह के दिनों में था ऐसा ही ये मनुष्य के पुत्र के आने में होगा। उसने कुछ उदाहरण दिए और उन्होंने पैरामिड और स्फिंक्स वहाँ मिस्र में बनाए और उन्होंने बड़ी विशाल चीजें बनाई जिसकी आज हम में सामर्थ्य नहीं है जिससे ऐसा कुछ बनाए। उनके पास शव संलेपन था जिससे शरीर का संलेपन किया जाता था जिससे कि वो स्वाभाविक दिखता रहे। ये आज तक टिका है, हम नहीं सकते, आज हम मम्मी नहीं बना सकते, हमारे पास चीजें नहीं है कि इसे बनाए। उनके पास रंग थे जो इतने पक्के हैं कि 4-5 हजार वर्ष पहले हैं, ये अब भी वैसे ही बने हुए हैं, वही रंग जो थे। समझे, हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है और सभ्यता की बहुत सी महान चीजें उनकी श्रेष्ठता को हमारी आधुनिकता सभ्यता के ऊपर बोलती है। और इसलिए आप कल्पना कर सकते हैं कि कैसे शिक्षा और विज्ञान, इस प्रकार के महान चिन्ह जो हमारे पास बचे हैं कि वहाँ एक ऐसी सभ्यता थी, वो क्या ही महान सभ्यता होनी चाहिए। ये स्मृति चिन्ह कैसे वो विज्ञान और आधुनिक सभ्यता और शिक्षा लोगों के पास होनी चाहिए, उनके पास थी, होनी थी। वहाँ कठिनाई से कोई, मेरा अनुमान है कि उनके बीच कोई अज्ञानता नहीं रही होगी। और इसलिए परमेश्वर उस दिन की महान व्यवस्था में होते हुए ढूंढ रहा था, उनकी व्यवस्था में संभवतः नहीं ढूंढ सका कि सही प्रकार का मनुष्य ढूंढ रहे, तो कि जब तक कि वो किसी अशिक्षित को ढूंढे, संभवतः किसान जिसका नाम नू, एक भेड़ चराने वाला, और उसने उसे लोगों के लिए एक संदेश दिया जो कि इतना साधारण था उस दिन की छात्रवृत्तियां, जब तक कि लोगों ने संदेश की सादगी से ठोकर ना खाई, और फिर भी संदेश विज्ञान के सामने मूल विषय था। आकाश में से वर्षा कैसे हो सकती है जबकि वहाँ कोई वर्षा नहीं है, समझे? नाव बनाने का साधारण संदेश, कुछ ऐसा निर्माण किया कि जिसमें प्रवेश कर जाए, उसे तैराने के लिए कोई पानी नहीं है, क्यों? वो धर्मांध बन गया है और वो हो गया। हम उसे क्या कहें? यदि अब आप आज के इस भाव को क्षमा करें, एक विचित्र प्राणी, और लगभग परमेश्वर के सारे लोग विचित्र प्राणी होते हैं, देखिए वे हैं। मुझे खुशी है कि मैं उनमें से एक हूँ। इसलिए आप जानते हैं कि वे लोग इस आधुनिक सभ्यता के चलन से भिन्न होते हैं, इसलिए वे विचित्र अनोखे हो जाते हैं। उसने कहा उसके लोग थे एक अजीब लोग, विचित्र अनोखे, परंतु एक आत्मिक याजक पद, एक राजकीय राष्ट्र, परमेश्वर को आत्मिक भेंट चढ़ा रहे हैं, उनके होठों के फल उसके नाम को महिमा दे रहे हैं। क्या ही लोग हैं, उसने उन्हें लिया। और ध्यान दें, अब उन दिनों में ये क्या ही महान बात रही होगी, क्योंकि कोई हर धर्म कलीसिया में आया, एक हर धर्मी, और लगता है कि लीक से हटकर सुसमाचार प्रचार कर रहा है, जिस प्रकार से कि वे विश्वास करते हैं। और वैज्ञानिक लोग, क्यों? ये बस एक पागल है। वे कैसे इस बात को सिद्ध कर सकते थे कि वहाँ कोई वर्षा नहीं है? परंतु इस साधारण से चरवाहे ने इसका विश्वास किया। यदि परमेश्वर ने कहा कि वर्षा होगी, तो ये वर्षा होगी, समझे? और इसलिए आज से इसकी तुलना करें, कोई चंगा हुआ के विषय में वे कहते हैं कि ये केवल भावना है। मैं वैज्ञानिक रूप से आपको सिद्ध कर सकता हूँ कि कैंसर या वस्तु या चीज अब भी वहीं पर है, परंतु साधारण विश्वासी के लिए वो चला गया, समझे? क्योंकि वो वस्तु की ओर नहीं देख रहा है, वो प्रतिज्ञा की ओर देख रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसा नूह ने किया। इसलिए आप देखते नहीं, जैसा कि ये नूह के दिनों में था, वैसा ही मनुष्य के पुत्र के आने पर होगा। वैज्ञानिक रूप से कोई भी डॉक्टर कह सकता है, इधर देखिए, आपकी गांठ अब भी वही है, आपका कैंसर वही है, आपका हाथ वैसे ही अपाहिज है जैसे कि वो कभी था, आप पागल हैं। और याद रखें, नूह के दिनों से ये वही आत्मा है जिसने कहा कि वहाँ कोई वर्षा नहीं है। हम उपकरण से चांद पर मार सकते हैं और वहाँ वर्षा नहीं है, परंतु यदि परमेश्वर ने कहा कि वहाँ वर्षा होगी, वहाँ, क्योंकि विश्वास आशा की हुई वस्तु अनदेखी चीजों का प्रमाण है, और विश्वास परमेश्वर के वचन पर टिकने का स्थान है, यही जहां वो विश्राम स्थल पाता है। आप समझे? इसका विश्राम स्थल परमेश्वर का वचन है, यही जहां नूह ने इसे टिकाया, परमेश्वर ने ऐसा कहा, ये तय हो गया। अब यदि आप फिर ध्यान दें, तब अब नूह इस हट धार्मिकता का विश्वास करता था, और आज के लोग जो पवित्र आत्मा के बपतिस्मे का विश्वास करते हैं, अब कलीसिया कहती है ये लोग हर धर्मी हैं, अब कलीसिया कहती है ये लोग हर धर्मी हैं, ये लोग कुछ नहीं बल्कि ये लोग उत्तेजित, भावुक, हड़बड़ाहट से भरे लोगों का झुंड है, परंतु ये बहुत थोड़ा जानते हैं कि परमेश्वर का वचन ये सिखाता है, ये प्रतिज्ञा है। और नूह को इससे कोई मतलब नहीं कि उन्होंने क्या कुछ कहा, बूढ़े मनुष्य का दिमाग ठीक नहीं है, ये वैज्ञानिक रीति से गलत है और दिमागी रूप से वो गलत था, परंतु नूह के लिए ये प्रभु का वचन था, और नूह इसी के साथ टिका रहा, और बुद्धिमान और समझदारों ने इसी साधारणता में ठोकर खाई और अपने जीवन को खो दिया। अब क्या ही झिड़की है ये इस पीढ़ी के लिए। बहुत से लोग कहते हैं यदि मैं उस समय वहाँ हुआ होता, नहीं अब भी उसी मनोस्थिति में होते हैं, क्योंकि आज वही चीज फिर से उत्पन्न हो रही है केवल दूसरे रूप में। वे आज इस पर ठोकर खाते हैं जैसे उन्होंने तब खाई। कोई संदेह नहीं उन दिनों में उनके पास बहुत सारे प्रचारक थे, परंतु नूह परमेश्वर से प्रेरणा प्राप्त था और नूह देख सकता था कि और देखा कि क्या घटित होने के लिए तय था और जानता था कि व्यभिचारी और दुष्ट पीढ़ी जो इस प्रकार की है कि परमेश्वर इसे स्थिर नहीं रहने देगा। इसलिए हम क्या कर सकते हैं आज, परंतु उसी चीज को देखते हैं, एक आधुनिक सादोम और अमोरा। देखिए, दुष्ट व्यभिचारी लोग अपनी छात्रवृत्ति में शानदार, वे परमेश्वर के प्रगटीकरण से साधारणता में उसके जीवन और उसके वचन पर ठोकर खा गए। अपने वचन को दिखा रहा है। संसार में कोई व्यक्ति नहीं रोजेला कि या और ये कह सके कि हम परमेश्वर के उसी वचन को प्रकट होते हुए अपने साथ नहीं देखते हैं। अंत के दिनों की वही प्रतिज्ञा, वही सांझ के उजियाले जो चमकने थे, इसे देखते हुए हम सौभाग्यशाली लोग हैं और जहाँ की ऊंचा शानदार संसार ये उनसे छिपा हुआ है। यीशु ने परमेश्वर से कहा, पिता, उसने कहा तुझे ये अच्छा लगा कि उनसे छिपा रखे, ऐसे ही पिता आपने इसे छिपा दिया, उन्हें अपनी बुद्धि के साथ ही रहने दो। अब देखिए, ये बुद्धि ही थी जिसने पाप गंदगी में गेंद को लुड़काना आरंभ किया आरंभ में, क्योंकि जब शैतान हवा से मिला, हवा बुद्धि की खोज में थी और शैतान ने उसे ये दिया। और बुद्धि वचन के विरोध में है और हम बुद्धि नहीं मांगते, हम विश्वास मांगते हैं जिसके लिए हमें पहले से ही कहा गया है, इसलिए समझे। परंतु आज ज्ञानियों ने इसे इस प्रकार से चमका रखा है और वहाँ पर रख रखा है, इसमें अपना अनुवाद डाला है, उन्होंने सदा यही किया है, वे आज यही करते हैं, ये उसी नाप में है। अब लोग परंतु या फिर लोग इसमें चूक गए जैसा कि वे आज इसमें चूकते और ये करते हैं, वही चीजें करते हैं, क्योंकि वे यही कारण है कि वे चूक गए, क्योंकि इस पर विश्वास करने के लिए बहुत बुद्धिमान थे, समझे। अब संदेश बहुत ही साधारण था कि बुद्धिमान विश्वास करने के लिए अधिक बुद्धिमान थे कि इस साधारण संदेश का विश्वास करें। ओ, परमेश्वर ने इसे सच्चाई में साधारण बनाया और तेज और बुद्धिमान इसे देखने में चूक गए, क्योंकि ये बहुत ही साधारण था। भाई, इसी ने परमेश्वर की महानता को महान बनाया, क्योंकि महान होने के नाते वे स्वयं को सादगी में बना सकता था। आज मनुष्य ये दिखा रहे हैं कि वे परमेश्वर के नहीं हैं, वे महान हैं और अधिक महान होने का यत्न कर रहे हैं और स्वयं को महान दिखाते हैं, और बड़े बिशप, डॉक्टर, पवित्र पोप, हर चीज अपने को कुछ बनाते हैं जो कि वे वास्तव में नहीं हैं, और परमेश्वर महान होने के नाते अपने आप को नीचा करके साधारणता में आ गया। सादगी महानता है। हम जेट विमान बना सकते हैं, हम रॉकेट दाग सकते हैं कि या मिसाइल को कक्षा में डाल सकते हैं, और हम ये सारी चीजें कर सकते हैं, फिर भी हम घास की एक पत्ती नहीं बना सकते। ओ आमीन, इस विषय में क्या है। परंतु बजाय इसके कि वापस आने का यत्न करें और देखते हैं कि घास को किसने बनाया, और उस परमेश्वर को स्वीकार करते जिसने घास बनाई, हम मिसाइल बनाने का यत्न कर रहे हैं, वहाँ वो किसी से भी जल्दी पहुँच जाएगी जो इसे बना सकता है, समझे। हम इतने तेज और बुद्धिमान हैं हमारी कलीसियाओं में, जब तक कि हम करोड़ों डॉलर की इमारत बना सकते हैं या 10 करोड़ डॉलर की इमारत, परंतु फिर भी मेथोडिस्ट से अच्छी इमारत बनाने की कोशिश करते हैं या बैप्टिस्ट प्रेस्बिटेरियन से अच्छी बनाते हैं और पेंटिकॉस्टल भी दौड़ में शामिल हैं। परंतु बात यह है कि हम अब भी इतने तेज हैं और अपने मार्ग पे इतने सदे हुए कि हम अपने आप को नम्र नहीं बना लेते हैं कि परमेश्वर को अनुभव करें जो कि एक और अपने उद्देश्य पर है, समझे? ये ठीक बात है, यही हम सादगी से ठोकर खाते हैं। उन्होंने सदा यही किया। अब वे थे, वे इस साधारण संदेश का विश्वास करने के लिए बहुत ही बुद्धिमान थे। ये उनकी वैज्ञानिक खोज के लिए उतना चमकाया हुआ नहीं था जो उनके पास था, ये नहीं था, ये प्रतिभाशाली नहीं था, ये संदेश उनकी शिक्षा योजना के लिए पर्याप्त नहीं था जो उनके पास उस दिन में था, समझे? उन्होंने ये जानने के लिए अध्ययन किया कि परमेश्वर था, और उन्होंने ये जानने के लिए अध्ययन किया कि वो बहुत महान था, और उन्होंने अपने आप को उसके साथ महान होने का यत्न किया, जबकि ऊपर का मार्ग सदा नीचे को होता है। कौन जानता है उत्तरी ध्रुव उत्तर है या दक्षिणी ध्रुव उत्तर है, या उत्तरी ध्रुव दक्षिण है, दक्षिणी ध्रुव उत्तर है, कौन सा ऊपर है, कौन सा नीचे को है? हम तो अंतरिक्ष में लटके हैं। हम कहते हैं कि उत्तरी ध्रुव ऊपर है, आप कैसे जानते हैं? दक्षिणी ध्रुव उत्तरी हो सकता है? देखिए, आप नहीं जानते, इसलिए याद रखें ये वचन कहा, तो फिर आप कैसे कहोगे भाई ब्रणम कि ऊपर नीचे है? यीशु मसीह के वचन के आधार पर उसने कहा, वो जो स्वयं को नम्र करता है ऊंचा उठाया जाएगा, परंतु वो जो स्वयं को ऊंचा करता है नीचा किया जाएगा, नीचे लाया जाएगा। इसलिए तब सही में ऊपर नीचे है और नीचे ऊपर है। जैसा कि पुराने संत ने शिकागो में कहा, एक मनुष्य, एक विशेष सेवक किसी निश्चित नामधारी से पेंतिकोस्तों के सामने खड़ा हुआ। वो पूरी तरह से ज्ञानी सारी चीजों के साथ था। वो उठ खड़ा हुआ और ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जिसके विषय में पेंतिकोस्तों को मालूम नहीं था, और वो वहाँ उठ खड़ा हुआ और देखा कि पेंतिकोस्तों के साथ ठीक नहीं चल रहा था, और वो सीना तान कर बाहर चला गया, और वो एक पवित्र डॉक्टर और आदि आदि, आप जानते हैं, किसी विशेष बड़े विद्यालय से वहाँ शिकागो में, और उसने चारों तरफ देखा, और वे पेंतिकोस्तल एक दूसरे को देख रहे थे। वे ये भी नहीं जान पाए कि किस विषय में बात हो रही है। वो इतना पढ़ा लिखा, इतना तेज प्रतिभाशाली था, उन्हें नहीं मालूम था। ये कुछ किसी सेनेटर के समान था, या एक व्यक्ति के जो हाल ही में राष्ट्रपति के चुनाव लड़के हारा हो। टक कूट ने मुझे बताया, जब मैं मामा फोर्ड की अंत्येष्टि पर प्रचार कर रहा था और पुनरुत्थान के विषय में बता रहा था, पुनरुत्थान की गारंटी, ठीक वैसे ही निश्चित जैसे सूर्य उदय होता है वैसे ही मैं उठूंगा, ठीक जैसे कि घास बर्फ पड़ने पर मर जाती है और पत्तियां पेड़ से गिर जाती हैं और ये फिर वापस आती है, जब पृथ्वी अपने आप को कक्षा में ठीक कर लेती है, इसे फिर से उठना है। टक ने कहा, बिली में संदेश की सराहना करता हूँ। भाई नेविल और मैं एक साथ कार में बैठे थे, और मैंने कहा, टक, उसने कहा, मैं आपके संदेश की सराहना करता हूँ। मैंने कहा, टक, मेरे पास कोई शिक्षा नहीं है। मैंने कहा, उसने कहा, इस विषय में ये अच्छी बात है, समझे? और अब उसने कहा, वो देखने को गया, भाई मेरा अनुमान है कि वो मनुष्य मुझे क्षमा कर देगा, मेरा ये अर्थ नहीं है। एडलाई स्टीवेंसन, आप जानते हैं, और उसने कहा, उसने उसे 15 मिनट सुना, और श्री स्टीवेंसन प्रतिभाशाली वक्ता है, आप जानते हैं, होना ही है, जब तक टक ने नहीं कह दिया। मैं समझता हूँ उसके पास कॉलेज की शिक्षा है, उसने कहा, वो वहाँ बैठा था और सो गया था, और उसने कहा, 15 मिनट सुनते हुए वो सो गया था, परंतु कहा, उसकी कॉलेज की शिक्षा के साथ मैं नहीं समझ पाया सिवाय थोड़े से शब्दों के जो उसने कहे, वे इतने अधिक परिष्कृत थे। उसने कहा, आपने मुझे आपकी सेवाओं में कभी सोते हुए नहीं देखा होगा। भाई ब्रणम, क्या आपने देखा? इसलिए देखिए, ये इसकी सादगी है, बस साधारण, यही जहाँ परमेश्वर ने रखा है। अब वे थे, वे बहुत ही तेज थे उस दिन में परमेश्वर के कार्य करने के साधारण मार्ग के अर्थ को समझने में। ये उनके लिए चमकाया हुआ नहीं था, इसे तो चमकाया हुआ होना चाहिए था, इसे बहुत क्रोम चढ़ा हुआ होना था, या वे इसमें चूक जाते हैं। परंतु अब वो महान यहोवा अपने वचन में छिपा हुआ था, और उसने अपने को उन लोगों पर प्रकट किया जिन्होंने उसके वचन का विश्वास किया, उन्हें बचाने के द्वारा, और उस साधारण संदेश के घटित होने के द्वारा। नू का साधारण संदेश, परमेश्वर ने इसे घटित किया। अब इस पर ध्यान दें। और फिर तब मूसा के दिन में दूसरी बार के छुटकारे पर ध्यान दें। जब परमेश्वर अपने लोगों को छुड़ाने के लिए कुछ करने को होता है, परमेश्वर लोगों के पास संदेश भेजता है। ये इतना साधारणता में होता है, जैसा कि हम इसे इन मोहरों के तोड़ने में समझेंगे। इसे पहले लाने का मेरा यही उद्देश्य है कि हम पाते हैं कि उन मोहरों का तोड़ना बहुत साधारण है, कि बुद्धिमान इसे लाखों मील से चूक जाता है, समझे? मैं आशा करता हूं कि परमेश्वर इसके लिए मेरा अभिषेक करता है, समझे? समझे? ये बस ऊपर से निकल जाता है, और यही कारण है कि मैंने सोचा ये संदेश इस प्रातः सही रहेगा कि परमेश्वर की सादगी पर इसकी नेव रखूं। देखिए कैसे परमेश्वर अपने आप को सादगी में छिपा लेता है। जरा सोचें, वे परमाणु को तोड़ सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं, परंतु जब ये जीवन के छूने की बात आती है, वे ये भी नहीं बता सकते कि ये कहां से आ रहा है। घास की एक साधारण सी पत्ती और परमेश्वर उसमें छिपा है। वे चांद पर रॉकेट दाग सकते हैं और उस पर रडार से दृष्टि या और जो भी है, और फिर भी घास की पत्ती में जीवन की व्याख्या नहीं कर सकते। ये इतना साधारण है, वे इसे अनदेखा कर देते हैं। अब मूसा पर ध्यान दें। उस दिन जब परमेश्वर इसराइल के बालकों को छुड़ाने वाला था अपने वचन के अनुसार, वो उसने क्या किया? उसने साधारण से परिवार को चुना। हमारे पास उनका कोई लेखा जोखा नहीं है। देखिए बस, एक लेवी पुत्र, बस यही जानते हैं, समझे? और इसलिए हम और उसकी पत्नी, बस एक साधारण से, संभवतः एक गारा बनाने वाले, जैसा कि संसार सोचेगा वहाँ शत्रुओं के लिए ईंटे बना रहे हैं। वे इसराइल में एक साधारण से गुलाम थे, परंतु परमेश्वर ने उस परिवार को चुना कि उससे छुड़ाने वाले को लाए, एक साधारण यहूदी परिवार। उसने कभी भी जाकर राजसी या प्रसिद्धि या कुछ और या किसी याजक को भी ले, उसने आम साधारण परिवार लिया, समझे? सादगी। ध्यान दें, तब उसने क्या किया? उसने एक बालक को जन्म दिया, एक साधारण मनुष्य। उसने कभी नहीं, वो कर सकता था, वो सूरज को ठहरा सकता था यदि वो उन्हें छुड़ाना चाहता था, वो उन्हें छुड़ाने के लिए वायु को ठहरा सकता था, वो एक स्वर दूत को ठहरा सकता था कि उन्हें छुड़ा ले। ओ हालेलुया, परमेश्वर जो भी चाहे वो ये कर सकता है। अच्छा भाई ब्रणम, आप कैसे जानते हैं? परमेश्वर अपनी योजना को नहीं छोड़ेगा, यही कारण है हम ये जानते हैं। इस दिन में उसे साधारण होना है, समझे? अब वो सदा साधारणता में कार्य करता है, परंतु परमेश्वर ने आरंभ में वो सूर्य को ऐसा बना सकता था कि सुसमाचार प्रचार करे, या हवा सुसमाचार प्रचार करे, या स्वर्गदूत सुसमाचार प्रचार करे, परंतु उसने इस उद्देश्य के लिए मनुष्य को ही ठहराया और उसने ये कभी नहीं बदला। उसने कभी अभिषिक्त नहीं किया, उसने नामधारी संस्थाओं को कभी नहीं ठहराया, उसने मनुष्यों के झुंडों को नहीं ठहराया, उसने मनुष्यों को सुसमाचार प्रचार के लिए ठहराया, न कि मशीन, तकनीकी तंत्रों को या किसी स्वर्गदूत को। ये मनुष्य ही था, और जब वो छुटकारे को उन लोगों के लिए लाया, उसने साधारण सा मनुष्य भेजा, साधारण परिवार में जन्मा, गुलामों के झुंड में। ओह प्रभु, वो क्या ही परमेश्वर है, अपने आप को साधारणता में प्रकट करता है। अब ध्यान दें, और उसने उसे संसारिक बुद्धि में प्रशिक्षित किया ताकि वो असफल हो सके और दिखाए कि ये वो बुद्धि नहीं जिसके द्वारा हमने कभी छुटकारा पाया, ये विश्वास के द्वारा कि हमारा छुटकारा हुआ। उसने उसे जाने दिया और इस प्रकार की शिक्षा ले जब तक कि वो मिस्रियों को बुद्धि ना सिखा सके। वो बहुत ही तेज था। परमेश्वर उस साधारण परिवार के साथ था, जो कि संभवतः हो सकता है कि अपना नाम ना लिख पाते हों। और मूसा को उच्च शिक्षा के लिए ले लिया गया था, ऐसी महान शिक्षा के साथ, यहाँ तक कि वो शिक्षकों को बुद्धि सिखा सकता था, वो प्रतिभाशाली को सिखा सकता था। जी हाँ, और परमेश्वर ने उसे उस प्रकार होने दिया ताकि वो अपने आप को साधारणता में दर्शा सके, दिखाने के लिए कि बुद्धि का इससे कोई लेना देना नहीं है। और मूसा अपनी प्रतिभा में असफल हो गया, उसने अपने उद्देश्य के लिए उसे उस प्रकार से होने दिया ताकि वो असफल हो जाए, और वो असफल हो गया और वो गिर पड़ा, ताकि दिखाए ना तो बल के द्वारा, ना शक्ति के द्वारा, बल्कि ना ही मिस्र की बुद्धि के द्वारा, ना ही हमारे विद्यालय की बुद्धि के द्वारा, ना ही हमारे धर्म विज्ञान के बल के द्वारा, ना ही हमारे संस्था के झुंड के द्वारा, ना ही हमारी विद्वान वाली शिक्षा के बल के द्वारा, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा, परमेश्वर ने कहा। उसकी बुद्धि समाप्त हो गई थी, और अंत में जब वो परमेश्वर से जलती झाड़ी पर मिला, उसने अपने जूते उतार दिए और मानवता में स्वयं को नम्र कर लिया और अपनी सारी बुद्धिमानी को भूल गया। परमेश्वर छुटकारा ला रहा था, उसे बुद्धिमानी में शिक्षित होने दिया कि वो असफल हो जाए, ये दर्शाने के लिए कि आप अपनी समझ का सहारा नहीं ले सकते या किसी और की समझ का। उसे गिरने दिया कि अपनी सामर्थ्य दिखाए। क्या आप ये देख सकते हैं? ऐसा करने में परमेश्वर का उद्देश्य था, कि अपने आप को नम्रता में प्रकट करे, और उसने मूसा को सबसे ऊंचा होने दिया जब तक कि वो फिरौन से अगले स्थान पर ना आ गया। वो ताकतवर सेना नायक था। इतिहास के अनुसार मूसा ने स्वयं ही आसपास के देशों को जीता, और जब वो प्रभु के कार्य के लिए मुड़ा अपनी सारी योग्यता के साथ, परमेश्वर ने उसे सिर के बल गिरने दिया ताकि उसे बाहर रेगिस्तान में ले जा सके और उसमें से सब कुछ बाहर निकाल दे। और फिर उस पर विनम्रता के साथ प्रकट हुआ और उसे हाथ में लाठी लिए हुए लोगों को छुड़ाने के लिए भेजा। जब वो इसे सेना के प्रशिक्षण के साथ नहीं कर सका था, शिक्षा के द्वारा, वैज्ञानिक शिक्षा के द्वारा और सेना की सामर्थ्य के द्वारा, वे इसे नहीं कर सका, और उसने उसे रेगिस्तान में पुरानी टेढ़ी लाठी दी और उसने उसके साथ ये किया। परमेश्वर विनम्रता में, सादगी में, परमेश्वर उस लाठी में और मूसा में था, और जब तक लाठी मूसा के हाथ में थी तो ये परमेश्वर के पास थी, क्योंकि परमेश्वर मूसा में था। निश्चय ही ध्यान दें, ना तो बल से, ना ही शक्ति के द्वारा, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा, परंतु साधारण विश्वास के द्वारा। मूसा को ये समझ थी कि वो एक छुड़ाने वाला था, उसकी माँ की शिक्षा से, और उसने अपने आप को सेना की शक्ति में प्रशिक्षित किया था कि ऐसा करे, परंतु वो असफल हो गया। समझे, उसे ये समझ थी कि उसके पास शिक्षा थी, परंतु उससे काम नहीं चला, इसलिए उसे ये सब भूलना पड़ा और साधारण सी बात पर आना पड़ा कि परमेश्वर को उसके वचन पर ले, और तब उसने लोगों को छुड़ाया। जी हाँ श्रीमान, परमेश्वर उसके वचन पर क्या विश्वास के द्वारा छुड़ाता है, सदा ही ऐसा रहा है। यदि हमारे पास समय होता तो इस पर हम दृष्टि डालते। हमारे पास अब भी 20-21 मिनट हैं। हम केन के ऊपर दृष्टि डाल सकते हैं और हाबिल पर, कि केन ने परमेश्वर को कैसे प्रसन्न करने का यत्न किया, कुछ सुंदरता के द्वारा। दूसरी विधि, लोग सोचते हैं भक्त मंडली अच्छे सुंदर कपड़ों के साथ, पादरी के द्वारा, सेवक लोग कपड़े पहने, गायन मंडली कपड़े पहने, और वे सब जो पहने हुए हैं ये परमेश्वर को प्रसन्न करता है। क्या आप देख सकते हैं कि ये कहां से आता है? केन ने ऐसे ही कोशिश की थी, और उसने उसके लिए वेदी बनाई, कोई संदेह नहीं। उसने इसे सुंदर बनाया, और मनुष्य निष्कपट था। उसने आराधना की, उसने सोचा जब तक मैं ईमानदार हूँ इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। इससे अंतर पड़ता है, आप ईमानदारी के साथ गलत हो सकते हैं। ध्यान दें, उसने वेदी बनाई और वो, और जैसे फूल रखे इसे तैयार किया और सुंदर फल रखे, और सोचा निश्चय ही एक महान, पवित्र, शुद्ध, सुंदर परमेश्वर इस बलिदान को स्वीकार करेगा। परंतु देखिए, उसने ये अपनी बुद्धि से किया था, उसने ये अपने विचार से किया, और यही जो आज है वे इसे अपनी बुद्धि के द्वारा करते हैं, उनकी शिक्षा के द्वारा, उनकी शिक्षा और नैतिकता जो उन्होंने सीखी है। परंतु हाबिल ने प्रकाशन के द्वारा, विश्वास के द्वारा परमेश्वर को उत्तम बलिदान चढ़ाया। देखने में सफाई के बारे में कुछ नहीं, मनुष्य की भाषा में। वो छोटा सा उसे गर्दन से पकड़ा, अंगूर की बेल से बांधा इस प्रकार से, और खींचता हुआ वेदी के पास ले गया। वो इसमें कोई भी सुंदरता नहीं थी। उसे वेदी पर लिटाया और तेज पत्थर से उसका गला काट दिया, जब तक कि लहू की धार उस पर ना आ पड़ी और वो चिल्ला और मर रहा था। भयानक दृश्य इसे देखना, यद्यपि ये साधारण था। सादगी में उसे मालूम था कि वो अपनी माता और पिता के लहू से जन्मा है, अपने माँ के लहू में जन्मा, अपने पिता के लहू के द्वारा, और ये लहू था जिससे गिरावट आई, इसलिए ये लहू ही इसे वापस लाएगा। इसलिए उसने परमेश्वर को अति उत्तम बलिदान चढ़ाया, क्योंकि ये उस पर प्रकट किया गया था। और आज कुछ भाई लोग जो वे सोचते हैं कि उन्होंने सेब और आड़ू खाया, और उस दिन मैंने बहुत ही अतिवादी चीज देखी अखबार में, उन्होंने कहा अब उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि हवा ने जो खाया वो सेब नहीं था। मैं सोचता हूँ कि वे यही दावा करते हैं, ये खुमानी थी। इसलिए देखिए कि आत्मा कहाँ से आ रही है। और उन्होंने कहा कि मूसा ने वास्तव में लाल सागर पार नहीं किया, ये तो वहाँ पटेरों का झुंड था, समुद्री पटेरे, और वो इसराइली बालकों को समुद्री पटेरों के बीच से लेकर आया, समुद्र के किनारे की तरफ से। वहाँ पटेरों का बड़ा झुंड था, मूसा ने समुद्र पार किया, परंतु ये पटेरों का समुद्र था जो उसने पार किया। आप जानते हैं, ये एक लंबी घास, रेशम सी कोई चीज जिसमें से होकर वो पार हुआ। कितना हास्यपद है ये, जबकि बाइबल ने कहा जल दाएं बाएं खुल गया, और परमेश्वर ने तेज पूर्वी हवा चलाई कि अलग करे। समझे, समझे। वे लोग इसे अपनी तरह से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो मार्ग है, वे हमेशा असफल रहे और वे लगातार असफल रहेंगे। आप जानते हैं ये सारी चीजें। और केन आज शारीरिक बुद्धि का प्रतीक है, जो कि बाहरी रूप से धार्मिक है। वो दिखावे के लिए कुछ करना चाहता है, परंतु वो आराधनालय जाता है और वो बहुत सारी चीजें करता है भवन बनाने के लिए। केवल एक ही कलीसिया है और आप उसके सदस्य नहीं बनते। ये सारी सराय हैं, समझे? आपने मेथोडिस्ट सराय के सदस्य हैं, बैप्टिस्ट सराय, प्रेस्बिटेरियन सराय, पेंटिकॉस्टल सराय, परंतु आप कलीसिया में जन्मे हैं। जी हाँ श्रीमान, समझे? ये सारी सराय हैं, ये कलीसियाएं नहीं हैं, ये सराय हैं। और ऐसी कोई चीज नहीं है जैसे मेथोडिस्ट कलीसिया या पेंटिकॉस्टल कलीसिया, नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं है। नहीं, ये सब गलत है, समझे? वे ये ठीक बात है, ये वे सराय हैं जिनके लोग सदस्य हैं, परंतु आपने जीवते परमेश्वर की कलीसिया में जन्म लिया है और ये यीशु मसीह की रहस्यमय देह बनाई जा रही है। अब परंतु परमेश्वर को अच्छा लगा कि वो अपने भेद को हाबिल पर उस साधारण विश्वास के द्वारा बहाए हुए लहू में प्रकट करे। वो मेरी इच्छा थी कि मेरे पास समय होता कि इस पर थोड़ी सी देर रुकता, समझे? फिर भी और केन अपनी सारी बुद्धि के साथ तेज मनुष्य। ओ, आप कहते हैं, अब भाई ब्रणम, आपने कहा वो आप उसे शिक्षित प्रतिभावान बनाने का यत्न कर रहे हैं। वो था, वो तेज था। पीछा करें, उसके खिंचाव को देखें, उसके बालकों को देखें, उनमें से प्रत्येक वैज्ञानिक था और डॉक्टर और योग्य मनुष्य, हर कोई। परंतु आप संत के वंश का पीछा करें, वे नम्र थे, किसान और काश्तकार और आदि आदि, और वहाँ विनाश तक। परंतु केन के बालक तेज थे, बुद्धिमानों का झुंड। वे यहाँ तक कि उन्होंने दावा किया वे तांबा निकालना और धातु बना सकते थे, और बनाने वाले वे बुद्धिमान मनुष्य थे। जब ये दूसरे मनुष्य तंबुओं में रहते थे, अपनी भेड़ें चराते थे और परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर निर्भर करते थे, समझे? ये क्या था? अब जरा वंशावलियों को देखें और देखें कि ये सही है या नहीं, समझे? उन्होंने परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर भरोसा किया। यही जैसे नूह चुना गया, इस प्रकार के लोगों में से, यही जैसे पौलुस उसके झुंड में से लिया गया था, समझे? यही जैसे जॉन वेस्ली, मार्टिन लूथर और जो हैं, यही जैसे आप जो आज हैं, देखिए वही चीज, नम्र, परमेश्वर के साधारण प्रतिज्ञा का विश्वास किया। अब ध्यान दें, परमेश्वर को ये पसंद आया कि प्रमाणित करे। अब परमेश्वर सदा इस बात को प्रमाणित करेगा कि ये सत्य है कि नहीं, समझे? अब बहुत से लोग अपने में व्यवहार करने का यत्न करते हैं कुछ ऐसी बातों में कि जिनसे परमेश्वर लाखों मील दूर है। ये ठीक बात है, परंतु जब आप परमेश्वर को देखते हैं कि वो पलट कर आता है और कहता है इसे रोको, कहता है ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, तब आप जानते हैं कि ये ही सत्य है। अब जब बलिदान वेदी पर है, परमेश्वर ने उसकी बुद्धिमानी की परमेश्वर वाली अवधारणा को अस्वीकार कर दिया, परंतु जब उसने हाबिल को देखा, साधारण से विश्वास के द्वारा उसने ये विश्वास किया कि ये सेब या खेत का कोई फल नहीं था, परंतु ये लहू था। विश्वास के द्वारा उसने ये विश्वास किया, परमेश्वर की ओर से प्रकाशन के द्वारा, उसके बलिदान को स्वीकार करने के द्वारा परमेश्वर एक सत्य सिद्ध आदम हुआ, समझे? यही जहां हम बीमारों के लिए प्रार्थना करने की सोचते हैं, कुछ भी यीशु ने कहा, यदि तुम मुझ में हो और मेरा वचन तुम में, जो चाहो मुझसे मांगो और ये तुम्हारे लिए हो जाएगा। अब जैसा कि हम समाप्ति की ओर आ रहे हैं, तेजी के साथ, हमारे पास 20 मिनट और हैं। ध्यान दें, एलिया के दिन परमेश्वर ने अपने आप को छिपाने के लिए साधारण व्यक्ति को चुना। अब इस पर सोचें, परमेश्वर ने चुना, ये उसका चुनाव था। याद रखें, उनके पास रब्बी याजक थे, उन दिनों में उनके पास महान लोग थे, यहाँ तक कि राजा अहाब अपने में एक यहूदी था, वो राष्ट्र में एक महान व्यक्ति था उस दिन में। परंतु परमेश्वर ने स्वयं को साधारण मनुष्य में छिपाया, न कि एक ज्ञानी, संसार के किसी लोकप्रिय मनुष्य में नहीं, किसी महान योग्य सैनिक में नहीं, या कुछ नहीं, किसी बड़े नाम में नहीं। हम ये तक नहीं जानते उसके पिता और माता कौन थे, हम उसकी वंशावली के विषय में कुछ नहीं जानते, बस कहीं एक साधारण सा किसान कहीं पर, जो कि एक भविष्यद्वक्ता होने के लिए उद्देश्य से बड़ा हुआ। परमेश्वर ने उसे अपने लिए जंगल में जीवित रखा। हम केवल ये जानते हैं कि वो पैर खचेड़ता हुआ कहीं नहीं गया, वो सीधा गया और सारे पादरियों की व्यवस्था को दोषी ठहराया। ओह प्रभु, और आप जानते हैं उन्होंने उसके विषय में क्या सोचा, कि ये कौन से विद्यालय से आया है, ये किस नामधारी के साथ है, क्या ये फरीसी सदूकी के साथ है या जो उनके पास था, ये इनमें से किसी के साथ नहीं है, परंतु ये सारे मामले को दोषी ठहराता है, समझे? परमेश्वर ने ये करने के लिए चुना है। परंतु एक सादा सा मनुष्य बिना शिक्षा के, हमारे पास ऐसा कोई स्थान नहीं जहां ये कभी विद्यालय गया हो, उसके विषय में हमारे पास कुछ नहीं है, बस एक साधारण व्यक्ति। परमेश्वर वहां उसके पीछे मनुष्य में छिपा है। क्या आप ये समझ सकते हैं? परमेश्वर संसार के लिए अशिक्षित सन की गवार में छिपा है, क्योंकि आप ये जानते हैं उन्होंने इस पर हर चीज के दोष लगाए, यहाँ तक कि जादूगर एलिया सारे भविष्यवक्ताओं पर ये दोष लगाए गए। देखा, इसलिए यीशु पर एक होने का दोष लगाया गया था। आप देखिए, बालजबू सनकी होने के नाते कहा, क्यों तुम पागल हो? हाँ, हम जानते हैं कि तुझ में शैतान है, तेरा दिमाग ठिकाने पर नहीं है, समझे? यही जो उसने उन्हें बताया, जब ये अंत के दिन आएंगे कि वे निंदा करेंगे, ऐसा करते हैं। उसने उन्हें क्षमा कर दिया, परंतु अंत के दिनों में क्षमा नहीं किया जाएगा, इसका भुगतान करना पड़ेगा। उस अनंत अलगाव के साथ कभी भी क्षमा ना होगी इस संसार में और आने वाले संसार में। परंतु एलिया को पागल मनुष्य समझा गया। क्या आप वहां खड़े हुए कल्पना कर सकते हैं? स्त्रियों ने आज की आधुनिक दिनों के समान बाल कटा रखे हैं, मेरा अनुमान है, और जिजाबेल के समान रंगी हुई हैं, राष्ट्र की पहली महिला और प्रचारक संसारिक हो गए हैं और सब कुछ। और तब क्या हुआ? तब बूढ़ा एलिया आकर सबको दोषी ठहराता है, सबको, इजाबेल से लेकर नीचे तक। क्यों? सोचा, हमें तेरी नहीं सुननी है, हमारे पास पास्टर है। नीचे ही उन्हें नहीं, परंतु जो भी है वो उनका पास्टर था, वो इजाबेल का पास्टर था। वो ये पसंद नहीं करती थी, वो भिन्न प्रकार की थी, परंतु वो परमेश्वर का भेजा हुआ था, समझे? वो उसके लिए परमेश्वर का भेजा हुआ पास्टर था। उसने उससे घृणा की, परंतु फिर भी वही पास्टर था। ध्यान दें, और एलिया ने अपने को नम्र किया और जो परमेश्वर ने कहा उसी के साथ बना रहा। इस प्रकार की इसने परमेश्वर को प्रसन्न किया कि एलिया की आत्मा को ले और उसे तीन बार आगे बढ़ाने की प्रतिज्ञा दी उस आने वाले समय, समझे? आमीन। और उसने ये किया, आमीन, निश्चय ही उसने ये किया, निश्चय ही उसने प्रतिज्ञा की कि वो आएगा। और ये एलीशा के ऊपर आया, इसके बाद वाले में, फिर यहूना बपतिस्मा देने वाले पर, और मलाकी चार के अनुसार इसे यहाँ फिर से होना चाहिए इस अंत के दिन में, समझे? परमेश्वर ने उस आत्मा से प्रेम किया जो कि उस साधारण जंगल में रहने वाले अशिक्षित पर, वहाँ पीछे कहीं जंगल में, और इसलिए वो उसके वचन के लिए इतना आज्ञाकारी था कि वो ये कह सका, एलिया ये कर और एलिया उसे करेगा। और परमेश्वर ने स्वयं को वहाँ छिपाया ऐसी साधारणता में। उन सब ने उसे बताया कि इस बूढ़े सनकी का उससे कुछ भी लेना देना नहीं है, और आदि आदि। परंतु एक दिन जब वो बूढ़ा हो गया और उसका सिर गंजा हो गया और उसकी सफेद दाढ़ी नीचे लटक रही थी और कुछ थोड़े से बाल उसके कंधों पर लटके हुए थे, छोटे बूढ़े झुर्रीदार हाथ और उनसे मांस लटक कर झूल रहा था, इस प्रकार से चलता हुआ उस सामरिया की सड़क पर आया और वे आंखें आकाश की ओर देख रही थीं। एक टेढ़ी छड़ी उसके हाथ में, देखने के लिए उसमें कुछ भी अधिक नहीं था, परंतु उस दिन के लिए यहोवा यूं कहता है उसके पास था। वो तुतलाया नहीं, वो हकलाया नहीं, उसने ये नहीं कहा अब महान आहाब, वो गया और बोला, स्वर्ग से ओस तक नहीं गिरेगी जब तक मैं न कहूँ। हालेलुया, समझे? परमेश्वर ने उसकी सादगी का सम्मान किया। अब आप देखिए, जब यह साधारण तरीके से था और हर कोई उसके विरोध में था, हर कोई उसकी जान को अटका हुआ था, सारे पुरोहितों की सभा, हर चीज उसके पीछे लग गए थे, ये सच बात है, उससे पीछा छुटाने की कोशिश में थे और आदि आदि। परंतु उस सादगी में, यद्यपि उनका उसके साथ उसके अभियान में कोई सहयोग नहीं था, और जो भी उसके पास था, हर किसी ने सोचा कि वो एक सन की था, परमेश्वर स्वयं उसमें छिपा हुआ था। परंतु जब उस बीज के पकने का समय आया जो कि लगाया गया था, परमेश्वर ने स्वयं को स्वर्ग से आग भेजने के द्वारा प्रकट किया और बलिदान को भस्म कर दिया। परमेश्वर साधारणता में छिपा हुआ है और फिर अपने आप को प्रकट कर रहा है, समझे? निश्चय ही इसे करने में परमेश्वर प्रसन्न है, उसने सदा इसी प्रकार से किया है। जी हाँ श्रीमान, अब हम पाते हैं कि वो उसने इन बातों की प्रतिज्ञा की है। आज हम बहुत से लोगों के साथ यही परेशानी है, हम इस प्रकार चाहते हैं, आप जानते हैं, ऐसा धर्म विज्ञान और नामधारी वाला शिक्षित विचार, और परमेश्वर हमें प्रयोग नहीं कर सकता। परमेश्वर मनुष्य को एक शुरुआत दे सकता है कि कुछ करे, और उसे एक सेवकाई देता है। पहली बात आप जानते हैं, लोग जो कहते हैं वो उनका पक्ष लेगा, और पहली बात आप जानते हैं वो बहुत सारे लोगों के झुंड में घिर जाएगा और फिर परमेश्वर उससे अपना समर्थन हटा लेगा और उसे छोड़ देता है, समझे? देखा? और तब वो दूसरा मनुष्य ढूंढने का यत्न करेगा, कोई जो इसे करेगा, समझे? वो तो कुछ ऐसा ढूंढेगा जो उसके वचन को लेगा, दिव्य प्रकाशन को लेगा और उससे हटेगा नहीं, वो ठीक वचन के साथ टिका रहेगा। वो ये इसी प्रकार से करता है, उसने सदा से इसी प्रकार किया है। इसलिए जब मनुष्य बहुत ही शिक्षित और तेज हो जाता है कि वो अपना ही अनुवाद डालने का यत्न करता है, भाई जैसे कि वे कहते हैं पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, वे कहेंगे ओ ये तो किसी और दिन के लिए था। परंतु यदि वे नहीं करते, अच्छा ये और दिन के लिए नहीं था, परंतु मैं आपको बताऊं, ये ठीक वैसे नहीं आता जैसे पेंतिकोस्तल के दिन में हुआ, जब हम विश्वास करते हैं, हम पवित्र आत्मा पाते हैं और इस प्रकार की बातें आपने देखा। और यीशु मसीह के बपतिस्मे के विषय में बात करते हैं वे, जबकि बाइबल इसी प्रकार से सिखाती है। आप कहते हैं ये तो समझौता है, समझे? परमेश्वर इस प्रकार के व्यक्ति का प्रयोग नहीं करता, समझे? वो उस मनुष्य को सारे देश में इस प्रकार से मारा मारा फिरने दे सकता है और व्यक्ति को निकाल दिया जाता है और उसकी हंसी और उपहास उड़ाया जाता है और इस प्रकार से सारी चीजें। परंतु जब वास्तविक परीक्षा का समय आता है तब परमेश्वर खड़े होकर और स्वयं को उसी साधारणता में प्रमाणित करता है। फूल के समान सीधे हो जाओ, बीज ऐसा लगता है ये तो हो चुका, ये मरता है और भूमि में गिर जाता है। छोटे से बीज को खोदो और ये सड़ा हुआ है, गंध जैसा लगता है, परंतु उसमें से जीवन उत्पन्न होता है, फिर से दूसरा फूल। परमेश्वर सादगी में ये वही चीज करता है। ऊपर का मार्ग सदा नीचे जाता है। अपने आप को नम्र बनाए, कभी ना कहें भाई मेरे पास ये वो है। आपके पास कुछ नहीं है, बस बस ये याद रखें, यदि आपके पास परमेश्वर का अनुग्रह है तो बस धन्यवाद करें इसके लिए और इसके लिए नम्र बने रहें। देखिए अपने को नम्र बनाते जाएं। अब मैं जल्दी करने जा रहा हूं क्योंकि घड़ी, मैं आपको अधिक समय तक रोके नहीं रखना चाहता क्योंकि मैं आपको थकाना नहीं चाहता। इस सप्ताह में हमारे पास लंबा समय है। अब हम ये पाते हैं कि लोग तेज हो गए हैं और शिक्षित हैं। मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ, दूसरा दूसरी ओर बहुत दूर चला जाता है। वे बहुत ही उत्साहित हो जाते हैं और धर्मी बनने का यत्न करते हैं। अब हम जानते हैं कि हमारे पास वो झुंड है, समझे? वे दूसरी ओर चले जाते हैं। यही जहाँ मैं उन भाइयों के झुंड से सहमत नहीं हूँ जो ज्योति के मार्ग से अधिक समय नहीं हुआ अलग हो गए। वे उस तथ्य को होते हुए नहीं देख सके जब तक उन्होंने अपने को एक झुंड नहीं बना लिया। इसलिए वे कनाडा में इकट्ठे हुए और लोगों का एक झुंड बना लिया और वे करने लगे और प्रेरित और भविष्यद्वक्ता अपने में से ही बनाने लगे और आदि आदि, और वे इसी में गिर गए, समझे? और ये सदा ही रहेगा, समझे? वे हो गए, वे अनुभव करते हैं क्योंकि वे हैं कि वे नहीं, इसलिए वे दूसरी बातों को दोषी ठहराते हैं और बहुत सी चीजें, जब तक वे दूसरी ओर चले गए। एक और है कि वे बहुत ही समझदार, ठंडे और तटस्थ हैं। वे हर चीज का इनकार करते हैं और दूसरे दूसरी ओर हैं, अतिवादी भावुक लोगों का झुंड और वचन का इनकार करते हैं। परंतु वास्तविक सच्ची कलीसिया मार्ग के बीच में स्थिर रहती है। अब यदि आप ध्यान दें, ये बाइबल का ज्ञान है कि परमेश्वर ने क्या कहा है और ये पर्याप्त आत्मिकता जो हृदय को सरगर्म रखने के लिए, और बस यही मार्ग है। यशाया ने कहा ये इसी प्रकार से होगा, उसने कहा वहाँ एक राजमार्ग होगा। और नाजरीन कलीसिया के धन्य पवित्र अनमोल मित्र, एक सामर्थी छोटा सा अभियान जिसे परमेश्वर ने आरंभ किया, परंतु उन्हें क्या मिला? जब परमेश्वर ने कलीसिया में अन्य भाषा में बोलना आरंभ किया, वे इतने धार्मिक थे और इतने घमंडी कि उन्होंने इसे शैतान कहा और देखिए कि उनका क्या हुआ। देखा? देखा? वे तुझसे भी अधिक पवित्र, और इसलिए हम पाते हैं, देखा? और दूसरी ओर अब एक और धर्मांध हो जाते हैं, दूसरी ओर ठंडे और घमंडी हो जाते हैं। अब यशाया ने कहा वहाँ एक राजमार्ग होगा, और नाजरीन और बहुत से पुराने होलीनेस वाले लोग कहा करते थे धन्य पुराना राजमार्ग, परमेश्वर की महिमा हो, हम पुराने राजमार्ग पर चलते हैं। परंतु आप याद रखें, ये ठीक वो नहीं जो उसने कहा है। उसने कहा वहाँ एक राजमार्ग होगा और एक समुच्चय बोधक है और एक मार्ग है, और ये पवित्रताई का राजमार्ग नहीं कहलाएगा परंतु पवित्रताई का मार्ग। अब एक पवित्रताई का राजमार्ग, लोग अपने आप को पवित्र बनाने का यत्न करते हैं, और जब आप ये करते हैं, ये ऐसे ही है जैसे मैंने पहले कहा था, ये इस तरह है, ये इस प्रकार से होगा जैसे एक शिकरा अपने में पंडुकी के पंख लगाए कि वो पंडुकी हो जाए, जबकि उसका स्वभाव अब भी शिकरे का है, समझे? वो ये कौए के समान होगा जो कबूतर के पंख लगाने का यत्न करे, या एक मोर के, और कह रहा है आप देखो मैं एक सुंदर पक्षी हूँ, देखिए ये कुछ बनावटी है। परंतु एक मोर को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि उसको मोर के पंख आ रहे हैं या नहीं। पंडुकी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि उसके पंख उगने वाले हैं या नहीं। जब तक कि उसका स्वभाव पंडुकी का है, उसको पंडुकी के ही पंख उगेंगे। अब देखिए होलीनेस वाले कहने लगते हैं स्त्रियों के लंबे बाल रखने चाहिए और लंबी आस्तीनें और ये सारी चीजें और लंबे स्कर्ट और कोई शादी की अंगूठी नहीं पहननी चाहिए या किसी प्रकार के गहने। देखिए ये स्वधर्मी पवित्रता ही हो जाती है, समझे ये बनाई हुई पवित्रता ही है। परंतु जीवित परमेश्वर की वास्तविक कलीसिया, और देखिए क्या घटित हुआ उन नामधारियों का। अब उन सब ने बाल काट लिए पेंतिकोसलों के समान और आदि आदि, और वे लगभग सारे के सारे अंगूठियां आदि पहनने लगे। वर्षों पहले के पेंतिकोसलों को देखें, वे कैसे इस पर शोर मचाते थे, देखिए। और हम ही कलीसिया हैं। कलीसिया मसीह की देह है। ये एक व्यक्तिगत दूसरे व्यक्तिगतों में जो कि परमेश्वर के राज्य में जन्मा है, जो कि भीतर से बाहर की ओर आया, ये अपने आप ही जीवित हुआ। आपको भेड़ से ऊन उगाने के लिए नहीं कहना पड़ता है, या ऊन बनाने के लिए भेड़ को ऊन बनाना नहीं पड़ता। वो कहता है मेरा स्वामी चाहता है कि मैं इस वर्ष ऊन उगाऊं, मुझे व्यस्त होना पड़ेगा। नहीं, उसको केवल ये करना होता है कि वो भेड़ बनी रहे। ये ठीक बात है। ऊन अपने ढंग से होगा, ये होगा, इसे धारण करेगा, क्योंकि और हमसे फल बनाने को नहीं कहा जाता है। हमें फल उगाने ही चाहिए, देखिए फल उगाना, समझे, हमें फल उगाने चाहिए। और जब तक परमेश्वर के फल के पेड़ हैं, परमेश्वर के वचन के साथ, परमेश्वर का वचन स्वयं ही इसे प्रमाणित करेगा। जब तक वचन वहाँ है, ये फल उत्पन्न करेगा। यीशु ने कहा यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में, तो जो चाहो मांगो ये हो जाएगा। समझे, आप इसे बनाते नहीं हैं, आप इसके लिए कार्य नहीं करते, ये तो वास्तव में वहाँ पर है और ये आगे आगे बढ़ता है। अब आइए हम चले, अब जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, कुछ ही मिनट बचे हैं और फिर हम बंद कर देंगे। अब दूसरे धर्मांधता तक चले जाते हैं। अब वे दूसरी ओर चले जाते हैं। वे सोचते हैं केवल इसलिए क्योंकि वे ऊपर नीचे कूदते या किसी प्रकार की अनुभूति या भावुकता, अन्य भाषा में बोलना या भविष्यवाणी करना जो सही घटित हो या कुछ इस प्रकार का, वे सोचते हैं यही है कि ये उनके पास है, परंतु ये नहीं है। यीशु ने कहा उस दिन बहुत सारे लोग मेरे पास आएंगे और कहते हैं प्रभु क्या मैंने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, तेरे नाम से बहुत से कार्य किए और प्रेत आत्माएं निकाली। उसने कहा चले जाओ, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। समझे, ये वो नहीं है मित्र, ये वो नहीं है। यही कारण है और भाषाएं प्रमाण है, और अन्य भाषा के बोलने में विश्वास करता हूँ, परंतु मैं इसे पवित्र आत्मा का मात्र प्रमाण नहीं मानता। नहीं श्रीमान, आत्मा का फल प्रमाण है, समझे जी हाँ। अब आप देखिए यही कारण है कि मैं पेंतिकोस्तल भाइयों के चाल से सहमत नहीं हूँ। इस मामले में वे कहते हैं यदि एक मनुष्य अन्य भाषा में बोलता है उसके पास पवित्र आत्मा है। मैं असहमत हूँ, ये कोई चिन्ह नहीं है कि उसके पास पवित्र आत्मा है। समझे, मैंने प्रेत आत्माओं को भाषाओं में बोलते सुना है, जितनी तेजी से वो कर सकते हैं, मनुष्य की खोपड़ी से लहू पीते और शैतान को बुलाते हैं। मैंने देखा है कि इंडियन सांपों को लेकर अपने चारों ओर लपेटते हैं, वहाँ एरिजोना में वर्षा वाले नृत्य में अपने हाथों को इस प्रकार से पकड़े रहते हैं और गोलाई में भागते हैं। जादू वाला डॉक्टर बाहर आता है, अपने को काटता है और एक पेंसिल को नीचे रखता है और ये अन्य भाषा में लिखती है और इसका अनुवाद देती है। समझे, इसलिए मुझे ये ना बताएं, इसके लिए मैं बहुत पुराना हूँ। समझे, इसलिए आत्मा का फल, यीशु ने कहा उनके फलों से, अन्य भाषा या भावुकता से नहीं, परंतु उनके फलों से तुम उन्हें जान जाओगे। समझे, इसलिए ये आत्मा का फल है। ये परमेश्वर स्वयं को मानवता मिठास में प्रकट कर रहा है और हर दिन एक सा है। ये कुछ इस विषय में है, एक मनुष्य जो ठीक वचन के साथ बना रहता है, हर बार वो जो वचन को देखता है वो उस पर आमीन से विराम लगाता है। कोई मतलब नहीं कि दूसरे लोग क्या कहते हैं कि वो इसका विश्वास करता है। आपने देखा, ठीक है, समझे, परंतु हम बजाय काफी दूर निकल जाते हैं, कट्टरता पर हम टिके और शैतान के लोगों के बीच में आ जाते हैं। शैतान का यही काम है और वो एक अच्छा व्यापारी है, और वो लोगों के बीच में आ जाता है और उन्हें ये सोचने देता है कि ये उनके पास इसलिए है क्योंकि वे ऊपर नीचे कूद सकते हैं और फिर अपने पड़ोसी से घृणा करते हैं। नहीं, समझे, बातें कहते हैं और भाषाओं में बोलते बहुत शानदार और इस प्रकार की चीजें। और याद रखें, आप वास्तविक पवित्र आत्मा की भाषाओं में बात कर सकते हैं और फिर भी आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है। बाइबल ऐसा कहती है यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ लाभ नहीं। मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हो जाऊंगा, पहला कुरिन्थियों 13, समझे? इसलिए आप नहीं, ये वो नहीं करता। देखिए, मेथोडिस्ट ने कहा जब हम चिल्लाए हमें ये मिला, परंतु ये उनके पास नहीं है। नाजरीन ने कहा जब उन्होंने पवित्र जीवन बिताया तो ये उनके पास था, परंतु उनके पास नहीं था। पेंतिकोस्तों ने कहा हमने अन्य भाषा बोली हमें मिल गया, परंतु उनके पास नहीं था, समझे? परमेश्वर स्वयं को प्रकट कर रहा है, संवेदना में नहीं, नहीं कि संवेदनाएं, फिर भी क्या? इसके साथ आपने स्थान देखा, ये इतना नम्र हो जाता है यहाँ तक कि कोई देखने नहीं पाता। यदि तुम अपना इसमें डालना नहीं चाहते, अपने सोच और इसमें अपने ही विचार, तो ये परमेश्वर है। अब और फिर वे कट्टरवादों का एक झुंड हो जाते हैं, तब यहाँ ठंडे औपचारिक इस ओर, यहाँ कट्टरवादी दूसरी ओर, और यहाँ दुल्हन सीधी चली जाती है, दोनों ओर से बुलाई जा रही है। ये ठीक बात है, जब ये साथ साथ जाता है तो परमेश्वर इसका समर्थन करता है, उसका वचन। अब ओ, मुझे इसमें से कुछ छोड़ना है क्योंकि यहाँ मेरे पास बहुत है, मेरे पास मेरा समय समाप्त हो गया और मैं जल्दी जल्दी हो सके अब जल्दी जल्दी करूँगा। अदन से, अब ये अदन से आया है, भविष्यवाणी की गई थी कि वहाँ मसीह आ रहा था, वहाँ अदन से होते हुए। अब मैं यहाँ अपने कुछ पवित्र उल्लेखों को छोड़ रहा हूँ जो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, और टिप्पणियाँ, संदेश को समय में समाप्त करते हुए यदि कर सका। परमेश्वर दीनता में छिपा रहता है, और अब मैं जल्दी जल्दी बात करूँगा, परंतु फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप इसे पकड़ लें, समझे? अदन से इस बात की भविष्यवाणी की गई है कि एक मसीहा आएगा, ये पहले ही बता दिया गया था कि वो किस प्रकार का व्यक्ति होगा। हम अधिक समय ले सकते हैं, आप जानते हैं कि बाइबल बताती है कि वो किस प्रकार का व्यक्ति होगा। मूसा ने कहा तुम्हारा प्रभु परमेश्वर मुझ जैसा एक भविष्यवक्ता उठा खड़ा करेगा। उन्हें मालूम था कि मसीहा एक भविष्यवक्ता होगा, उसकी सेवकाई एक विशेष प्रकार की होगी। सारे भविष्यवक्ताओं ने बताया कि वो क्या करेगा, उन्होंने इसे एक प्रतीक में बोला है, और ये सब उनके सर के ऊपर से निकल गया, बाकी सबके नीचे से होता हुआ, समझे? समझे, एक के नीचे से और दूसरे के ऊपर से होते हुए, समझे? समय से वो समय के दृश्य पर आ गया, वे लोग जिनके पास वो भेजा गया था उनके पास उनके अपने अनुवाद थे कि उसे कैसा होना है, उनके अपने काल्पनिक अनुवाद में। बाइबल कभी नहीं बदली, बाइबल सदा एक सी रही है, इसी कारण मैं कहता हूँ पवित्र वचन ने कहा, और मैं उसके साथ टिका रहता हूँ। बाइबल का कोई व्यक्तिगत अनुवाद नहीं होता, इसलिए मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, पेंटिकॉस्टल इसमें अपना अनुवाद डालने का यत्न ना करें, कहें कि इसका अर्थ ये नहीं, इसका ये अर्थ है, इसका ठीक वही अर्थ है जो इसने कहा, ठीक वही। किसी ने कहा ये कैसे हो सकता है, मैं नहीं जानता कि कैसे, ये मैं नहीं जो कहता हूँ, इसकी चिंता परमेश्वर करता है, वही है जिसने ये कहा है, मैंने नहीं। देखिए, वो अपनों की चिंता आप करता है, परंतु अब, परंतु इस मसीहा की भविष्यवाणी की गई थी, भविष्यवक्ताओं ने बताया बिल्कुल ठीक वो कैसे आएगा, जब वो आता है तो वो क्या करेगा, परंतु उनके अपने अनुवादों ने लोगों के बीच में, जब वो आता है वो इतनी साधन रीति में, सादगी में, कि कलीसिया के सारे झुंड ने इस पर ठोकर खाई। क्या ये ठीक बात है? वहाँ वे लोग जिन्हें सिखाया गया था, एक मनुष्य, एक शिक्षक, एक याजक नहीं हो सकेगा जब तक वो विशेष वंश से ना जन्मे, लेवी के बाद। और जरा सोचिए, उसके महान 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 दादाजी एक याजक थे, ठीक उस वचन में है, मंदिर में दिन और रात। एक कैथोलिक पुरोहित या सेवक जिसे सेवकाई मिली हो पीढ़ी से, किसी विशेष कलीसियाओं और आदि आदि से। मेरे बड़े परदादा एक मेथोडिस्ट के बिशप थे, मेरे दादा एक बिशप थे, आदि आदि, समझे? वो जो वचन में जिया हो, परंतु उन्होंने इसे अपनी ही विधि में ढाल लिया, और उनके बालकों ने इसे उसी प्रकार स्वीकार किया जैसे पिता ने ये सिखाया था, जब तक कि पिता ने उसे सिखाते हुए वास्तविक मार्ग से हटा ना दिया। और उन्होंने इससे ऐसी संस्था बनाई थी, यहाँ तक जब पवित्र आत्मा ने सत्य को सामने रखने का यत्न किया, वे इसे स्वीकार नहीं कर सके। और यही वही बात आज है, मेरा अर्थ असभ्य होने से नहीं है, परंतु ये ठीक बात है, आज वही बात है। वे अमुक अमुक इतना जटिल बना देते हैं, और किस और तरह से वे अपना सिखाते हैं, जैसे कि ये कहा गया कि परमेश्वर के पास पोते पोतियां नहीं है, आप ये जानते हैं, परमेश्वर के पास पुत्र और उसके पुत्रियां हैं, परंतु पोते पोतियां नहीं। हर मनुष्य को वही दाम चुकाना है, और उसी एक मार्ग से आना है जैसा कि आपके पिता ने किया, इसी प्रकार आपको करना चाहिए। अब इसलिए वो बहुत ही साधारण था। जब ये मसीहा 4000 वर्षों से हर भविष्यद्वक्ता इसके विषय में बोला, दाऊद ने इसके लिए गाया और सब में से होते हुए, और जब वो आता है तो लोगों के अपने विचार बने हुए थे, उसे क्या करना चाहिए और वो कैसे करने जा रहा है, कैसे इसकी व्याख्या की गई थी, चार्ट आदि पर रूपरेखा बनाई हुई थी। जब तक वो अपने वास्तविक साधारण मार्ग से आता है, इसने उनके धर्म विज्ञान को नष्ट कर दिया, देखा, और उन्होंने ये नहीं जाना। वो वचन के अनुसार आया। अब क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बोला कि मसीहा किसी निश्चित मार्ग से होकर आएगा? ये बहुत ही खराब है कि हमारे पास दूसरा घंटा नहीं है ताकि हम उसे ले लेते, इसकी व्याख्या करते कि ये कैसे था, समझे? हम सब जानते हैं कि ये कैसे था, यद्यपि हम में से अधिकांश कैसे परमेश्वर ने कहा कि वो आएगा और कैसे वो यहूदा के बैतलहम, तू अपनों में छोटा नहीं, और फिर आगे बढ़ते हुए, और वो कैसे करेगा, वो क्या करेगा, समझे? और फिर भी बहुत ही साधारण था, यहाँ तक कि महान विद्वान गड़बड़ा गए, यहाँ तक कि वे चूक गए। परंतु आप जानते हैं कि यीशु वचन से हटकर नहीं आया, वो वचन के अनुसार आया, परंतु उनके अनुवाद से हटकर आया, समझे? उसने वो चीजें सिखाई जो उनके पुरोहितवाद के प्रशिक्षण के विरुद्ध थी उसके विषय में। अब उदाहरण के लिए उन्होंने कहा, जब मसीह आता है तो निश्चय ही वो मंदिर में आएगा और कहे, कैफा या जो भी महायाजक हो, मैं आ गया हूँ। वो 1 करोड़ स्वर्गदूतों की सलामी के साथ आएगा। परमेश्वर कहेगा, ठीक है, तुम लोग जो वहाँ पर हो, तुम लोग वास्तव में शक्तिशाली कलीसिया हो, तुम मेरे लोग हो, मैं चूल घुमाने पर हूँ और स्वर्ग से गलियारा नीचे आएगा। मैं मसीहा को तुम्हारे पास इस प्रातः भेज रहा हूँ, मैं उसको वहाँ आंगन में उतारूंगा और सारे लोग आसपास आ जाएंगे, कहें, डॉक्टर अमुक अमुक आप, और डॉक्टर अमुक अमुक आप, आगे खड़े हो जाओ, पहले उसका अभिनंदन करने को, आप समझे? अब संभवतः यही कुछ इस प्रकार से आज सोच रहे हैं। अब आप जानते हैं, ये थोड़ा कठोर लगता है, परंतु मैं नहीं, मैं एक सारांश बनाना चाहता हूँ, और ये इसी प्रकार से होने जा रहा है, और यदि ये इस प्रकार से नहीं होता है तो ये सही नहीं है, ये मसीह विरोधी है, समझे? यदि ये उस प्रकार से नहीं आता है, ये मसीह विरोधी है, आप समझे? इसलिए नहीं होगा, और इस प्रकार से तब वहाँ होगा। फिर अगली चीज आती है, लगभग 1 करोड़ स्वर्गदूतों की सलामी अपने झुंड के साथ, और वे वहाँ आंगन में उतरेंगे जहाँ सुलेमान ने मंदिर बनाया है, और ओ, वहाँ ऊपर नीचे होते हुए ये पवित्र स्थान जहाँ संत और महात्मा लोग मरे, और आदि आदि। जी हाँ, यीशु ने कहा, तुम पाखंडियों, तुम शैतान के पुत्रों, कहा, तुम भविष्यद्वक्ताओं की कब्रों को संवारते जिन्हें तुम्हारे बाप दादाओं ने वहाँ गाड़ा। ये ठीक बात है, समझे? कितने धर्मी मनुष्य और भविष्यद्वक्ता तुम्हारे पास भेजे गए थे, और तब भी तुमने उनमें से प्रत्येक को मार डाला, देखा? तो फिर वो किसको धर्मी कहेगा, जिसे वे हर धर्मी और मूर्ख कहते हैं? जी हाँ, वहाँ उन्होंने सोचा कि ये उसी तरह से आएगा। परंतु जब वो चरनी में आया, कुंवारी से जन्मा, उस आम बढ़ई, पालन पोषण करने वाला पिता, एक छोटी अपरिचित लड़की, देखिए, किसी महायाजक की पुत्री नहीं या और जो हो, वो आया जैसे एक छोटी सी महिला जो वहाँ उस छोटे में से रहती थी, पुराना औसतन गांव जो नासरत कहलाया, और एक साधारण विधुर से उसकी पत्नी मर गई थी, उसके पास कुछ बच्चे थे, यूसुफ, और उसकी मंगनी हो गई थी, और फिर वो आरंभ से ही बुरे नाम के साथ आया। उन्होंने कहा, उसका जन्म अवैध है, ओ प्रभु, इससे उनकी शान पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा, समझे? उनकी शैक्षिक नीति इसे सहन नहीं कर सकी, उनके वचन के अनुवाद इस विषय में कुछ नहीं जानते, फिर भी ये यहोवा यूं कहता है था, ओ प्रभु, ये सोच मुझे कपकपा देता है, और ये देखते हुए कि वही बात फिर से घटित हो रही है, परमेश्वर बदल नहीं सकता, ये पहले ही 12 हो गए हैं, क्या आप जरा, क्या मैं रोक दूं, या थोड़ा सा, धन्यवाद, थोड़ा सा शांत बैठें, थोड़ा सा देखिए। अब मैं इसको आने वाले संदेश के लिए आधार बना रहा हूं, और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को जल्दी ही बाहर जाने दूं, हो सकता है अगले 10 या 15 मिनटों में, यदि हम कर सके। परमेश्वर आपको आशीष दे। ध्यान दें, अब ये बहुत ही साधारण है, उनके लिए ये निशाने से चूक गए, परंतु ये परमेश्वर के निशाने पर प्रहार करता है, ये वचन पर मार करता है। ये ठीक उसी प्रकार से आया जैसे उसने कहा, परंतु वे अपने अनुवाद में गलत थे। मूसा की छड़ौती के समय ये गलत था, नूह के समय का अनुवाद गलत था, देखा? परंतु परमेश्वर अपने वचन के अनुसार आता है। और फिर यीशु आया, उसने वही बातें सिखाई जो विरोध में थी। यदि तू मसीहा है ऐसा ऐसा कर, आप समझे, यदि तू क्रूस पर से उतर आए और अब हमें दिखा, समझे। परंतु परमेश्वर लोगों के लिए मूर्खता वाले व्यवहार नहीं करता। परमेश्वर केवल वही चीजें करता है जो भली और सही हो। उन्होंने सोचा ऐसा तो निश्चय ही सरदूतों की महान सलामी के साथ ही आएगा, परंतु वो चरनी से होता हुआ आया और उनकी अपनी शानदार नैतिकता ये साधारण व्यक्ति के लिए हास्यपद की सोचे की सामर्थ्य। परमेश्वर वो महान सामर्थ्य यहोवा जो सारी पृथ्वी का स्वामी और सारी चीजों का की सृष्टि की और अपनी ही बालक को जन्म लेने के लिए स्थान तय नहीं कर सका जो किसी गौशाला से और गोबर के ढेर से अच्छा हो। वहाँ कैसे हो सकता है, समझे, ये क्या था? परमेश्वर सादगी में, इसी बात ने उसे महान बना दिया। देखिए, शिक्षा की नैतिकता अपने को इस प्रकार छोटा नहीं कर सकती, वो नहीं टिक सकती। परंतु परमेश्वर इतना महान है कि वो अपने आप को इतना नीचे ले आया, यहाँ तक कि अपने बालक पर डालने के लिए कपड़ा भी नहीं। इस पर सोचें। और संसार सराय में जगह नहीं थी और वो गौशाला में चला गया, एक छोटी कगार, एक छोटी गुफा जैसा पहाड़ी के बाजू में होता है, और वहाँ भूसे के पलंग पर परमेश्वर का पुत्र आया। ओह, वहाँ पर जाकर मिलना कितना अंतर है वहाँ। और उसकी माँ को माँ होना था, पाया गया कि वो माँ बन रही है। ओ, यहाँ तक कि विवाह होने से महीनों पहले वे सगाई की हुए थे कि विवाह करें या विवाहतों के बराबर, समझे, वो माँ बनने वाली थी। और लोगों ने ये देखा और वे जान गए कि ये इस प्रकार से था, और मरियम अपने हृदय में वो जानती थी कि क्या हो रहा था। और यूसुफ समझ नहीं पाया, परंतु प्रभु का स्वर्गदूत उसके पास रात में आया, कहा, यूसुफ तू दाऊद की संतान, मरियम को अपनी पत्नी करने से न डर, क्योंकि कोई गड़बड़ नहीं है, परंतु वो तो पवित्र आत्मा से है। ये तय हो गया। वो पुरुष यूसुफ, उसका नाता परमेश्वर से जुड़ा था, तब परमेश्वर उससे बोल सका। परंतु आज हमने अपने पुरोहितवाद का लबादा अपने चारों ओर लपेट रखा है, यहाँ तक कि हम में से कोई बात नहीं कर सकता जिससे हम जुड़े हैं उस पुरोहितवाद के बाहर। मैं कठोर या अतिवादी नहीं होना चाहता, इसलिए मैं इसे यहीं छोड़ देना चाहता हूँ। ध्यान दें, परंतु आप समझते हैं कि मेरा क्या अर्थ है। ध्यान दें, एक चरनी उन उच्च वर्ग के लोगों के लिए हास्य पद थी। हमारे पास यहाँ तक कि कोई लिखित प्रमाण भी नहीं है कि वो कभी एक दिन के लिए भी विद्यालय गया हो, और फिर भी 12 वर्ष की आयु में एक साधारण लड़का मंदिर में अपने शिक्षण से याजकों को चकरा देता है। ओ प्रभु, ये क्या था? परमेश्वर स्वयं को छिपा रहा है। इस समय मुझे अच्छी धार्मिक अनुभूति हो रही है। परमेश्वर स्वयं को खलियान में छिपा रहा है। परमेश्वर अपने आप को एक छोटे बालक में छिपा रहा है, समझे। ध्यान दें, यद्यपि ये थोड़ी देर में प्रकट होने जा रहा है, उसे होना ही है। जब वो गली में खेलने जाता है तो कोई संदेह नहीं, अभिभावक आपस में बात करते हैं और कहते हैं, उस बच्चे के साथ मत खेलो, उसके साथ कोई मतलब नहीं रखो। उसकी माँ कुछ नहीं, बस एक आम व्यभिचारिणी है, और पिता और माँ, ये बालक जन्मा, इसके पहले कि इनका वास्तव में विवाह होता, वो माँ बनने वाली थी, उससे कोई मतलब न रखो। मरियम ने क्या सोचा? परंतु कुल मिलाकर कोई मतलब नहीं। बाहर वालों ने क्या सोचा? वो इन बातों पर विचार करती रही। उन लोगों ने ये अपने हृदय में छिपा रखा है। वे जानते थे वे इसके विरोध में कुछ बुरा नहीं कह सकते थे। परमेश्वर अपने व्यक्ति से बात करता है, कभी कभी कहता है शांति बनाए रखो, इस विषय में कुछ भी मत कहो। मेरी सभा में मेरे कुछ लोग कहते हैं, अच्छा यदि तुम मसीह के दास हो, आप जानते हैं कि ये वहाँ पर चल रहा है। निश्चय ही मैं जानता हूँ कि ये वहाँ चल रहा था। जब वो कहता है तो तुम क्या करने जा रहे हो? शांति बनाए रखो, इस विषय में कुछ भी मत कहो। उस दिन उस व्यक्ति को लिया और उन्हें पुस्तक में दिखाया। कोई बात वर्षों पहले कही गई थी। बोला, भाई मैं इसे नहीं समझ सका। मैंने कहा, आपने वहाँ देखा? ये यहाँ पीछे है, तारीख लिखी हुई थी और सब कुछ, जब वो यहाँ पीछे हुआ। बहुत से लोगों ने यहाँ पुस्तक में देखा। मैंने कहा, ये घटित होगा, ये इस प्रकार से होगा और वैसा ही होगा। कहा, अच्छा क्यों नहीं आप इस विषय में कुछ कहते हैं? ये तो इसे तो इसी प्रकार से ही होना था, समझे। और यूसुफ अंतर को जानता था। वो जानता था कि ये बालक कहाँ से है। मरियम को मालूम था ये किस से है। यीशु जानता था कि उसका पिता कौन है। उसने क्या कहा? मुझे अपने पिता के कामों में लगा होना चाहिए। न कि लकड़ी काटना और दरवाजा बनाना, परंतु अपने पिता के कामों में लगा होना चाहिए। आमीन। अपनी माँ से कहा, क्या आप लोग ये नहीं समझ सकते कि मैं ये मेरा समय है कि मैं अपने पिता के कामों में लगा रहूं। अब उन्होंने सोचा, ये छोटा सनकी बालक, कोई भी अवैध बालक इस प्रकार विचित्र जिज्ञासु चीज जो भी है, आप यही हैं। देखिए, परंतु परमेश्वर अपने आप को छिपा रहा है। सुनिए, परमेश्वर अपने आप को छिपा रहा है जिसे संसार सोचता है जैसे एक गंदगी, भ्रष्ट, अवैध। देखिए, परमेश्वर स्वयं को मरे हुए बीज के भ्रष्टता में छिपाए हुए है ताकि जीवन को लेकर आए। समझे? क्या आप समझते हैं? परमेश्वर स्वयं को एक छोटे धोने वाली महिला में छिपा लेता है, या एक साधारण मनुष्य में जिसने अपना खाना बगल में दबा रखा है और अपनी पत्नी को चूमता और बालकों को अलविदा और चला जाता है, और हो सकता है अपने आप को उसमें छिपा कुछ करता है कि आर्च बिशप इस विषय में कुछ नहीं जानेगा। समझे? आप उसे तुरई फूंकते हुए नहीं सुनते और इसे बाहर भेजते हैं। वो परमेश्वर बस महिमा लेता है, बस यही है। साधारण लोग इसे सुनते हैं और आनंदित हैं। देखिए, अब परमेश्वर अपने आप को बालक की एक सादगी में छिपाता है, अपने आप को सादगी में छिपा रहा है एक साधारण परिवार में। परमेश्वर और पुरोहित और महान मनुष्य, बुद्धि, प्रतिभाशाली और वे सब, और हिरोदेस और आदि आदि उस दिन के, और नीरो और इन सब ने इसे अनदेखा किया। परमेश्वर साधारणता में छिपा है। अब जल्दी से यशाया 40 में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, यदि आप चाहें तो हम इसे लेना चाहते हैं। मलाकी 3 सब, जी हाँ, यदि आप चाहें तो इस पर निशान लगा लें। यशाया 40, आप सब जानते हैं, शांति की बातें कर रहा है, जैसा कि यह है। संभव है मैं, ये अच्छा हो सकता है कि मैं इसे यहाँ पहले पढ़ूंगा। यदि आपके पास समय है तो आइए इसे करें, थोड़ी सी मिनटों के लिए। हम यहाँ पुस्तक में यशाया 40 निकालेंगे और यहाँ पढ़ें, और जरा देखें कि वो क्या कहता है इस विषय में। इधर देखिए, विश्राम, तुम मेरे लोगों को विश्राम दो। अब याद रखें, ये 712 वर्ष पहले था। इस पर यहाँ इस पर शीर्षक देखें, उसके जन्म लेने के 712 वर्ष पहले। यह भविष्यवक्ता उसके लिए बोल रहा है, तुम्हारा परमेश्वर ये कहता है, मेरी प्रजा को शांति दो, शांति। यरूशलेम से शांति की बातें कहो और उससे पुकार कर कहो कि तेरी कठिन सेवा पूरी हुई है, तेरे अधर्म का दंड अंगीकार किया गया है, यहोवा के हाथ से तूने अपने सब पापों का दूना दंड पा चुका है। किसी की पुकार सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो, हमारे परमेश्वर के लिए अराबा में एक राजमार्ग चौरस करो। हरेक तराई भर दी जाए और हरेक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी जाए, जो टेढ़ा है वो सीधा और जो ऊंचा नीचा है वो चौरस किया जाए। ओ प्रभु, वो कैसा मनुष्य होना चाहिए, समझे? अब मलाकी मेरे साथ निकालें, अंतिम पुस्तक पुराने नियम में, भविष्यवक्ताओं में अंतिम। अब मलाकी में यहाँ सुनिए, मलाकी से लेता है अंत के समय में, इसलिए कि आप निश्चित रहें और भूले नहीं। मलाकी का 3 अध्याय, देखो मैं अपने दूत को भेजता हूँ और वो मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा, और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वो अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। हाँ, वाचा का वो दूत जिसे तुम चाहते हो, सुनो, वो आता है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। अब भी यूहन्ना के लिए बोल रहा है, मेरे दूत को मेरे आगे भेजो कि मार्ग को तैयार करे। यीशु ने यही मत्ती 11:10 में बोला, कहा, यदि तुम इसे ग्रहण कर सकते हो, ये वही है जिसके लिए बोला गया है, देखो मैं अपने दूत को अपने आगे भेजता हूँ। समझे? ये ठीक बात है। अब ये सब कैसे बोला गया? जब 700 वर्ष थे, मसीह के आगे आगे चलने के लिए आना था, परंतु जब वो दृश्य पर आया इतनी सादगी में होते हुए कि वे उसे चूक गए। अब याद रखें, वो याजक का पुत्र था। अच्छा, कितना हास्यपद सा लगता है कि अपने पिता के कार्य क्षेत्र का अनुकरण ना करके पीछे धर्म विद्यालय में जाता, परंतु उसका कार्य बहुत ही विशेष था। 9 वर्ष की आयु में वो जंगल में चला गया और प्रचार करते हुए बाहर आया, वे से चूक गए। वो इतनी सादगी में था, बहुत ही सादा, उनकी उच्च वर्ग की शिक्षा के हिसाब से, कि ऐसे का विश्वास करे। उन्होंने सोचा कि जब ये मनुष्य आता है, कैसे है, सारे ऊंचे स्थान नीचे कर दिए जाएंगे, सारे नीचे स्थान ऊंचे कर दिए जाएंगे, ऊंचा नीचा चौरस कर दिया जाएगा। दाऊद ने ये देखा और कहा, पहाड़ियां मेड़ों की नाई उछली, पत्तियों ने ताली बजाई। क्या हुआ? एक बूढ़ा लंबी दाढ़ी वाला इस प्रकार का, बिना शिक्षा के, भेड़ की खाल अपने चार ओर लपेटे हुए है, यहूदा के जंगलों से लड़खड़ाता हुआ बाहर आया, कह रहा है, प्रायश्चित करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। और तुम सांप के झुंड अपने विचारों में ये मत कहो कि मैं अमुक अमुक संस्था से हूँ। परमेश्वर योग्य है कि इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न करे। ओ प्रभु, अच्छा वो वहाँ नहीं है, हम जानते हैं कि ये वो नहीं है, परंतु वो था। देखिए, वो मार को साफ कर रहा था, समझे? यही जब ऊंचे नीचे स्थान समतल किए गए, यही जहाँ ऊंचे स्थान नीचे किए गए। ऐसा मत सोचो कि अब्राहम तुम्हारा पिता है, मुझे इस तरह की बातें मत बताओ, क्योंकि परमेश्वर योग्य है कि इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न करे। ऊंचे स्थान नीचे किए गए, ओ यही है। जी हाँ, अंतर देखिए, उसने कहा यही जो होने जा रहा है। और जब वे आए, उन्होंने सोचा ओ, वे उसे ग्रहण करने के लिए तैयार थे यदि वे उनकी अपनी संस्था में आता, परंतु क्योंकि वो इस प्रकार से आया, ऐसे साधारण मार्ग से, फिर भी वचन के अनुवाद में ऊंचे स्थान नीचे किए गए, उन्होंने इसे स्वीकार करना ना चाहा, परंतु वे लड़के, उसने उनको मूंड दिया, उसने उनको बेपर्दा कर दिया, कहा तुम सांप के झुंड, तुम घास में सांपों, मैं तुम्हें बताता हूँ, कुल्हाड़ा पेड़ की जड़ पर रखा है, और हर पेड़ जो अपना फल नहीं लाता वो काट कर आग में डाला जाएगा। मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा दूंगा, परंतु मेरे बाद एक आ रहा है जो मुझसे शक्तिशाली है, वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा, और उसका सूप उसके हाथ में है। वो खलियान को अच्छी तरह साफ करेगा, वो भूसे को जला देगा, और गेहूं को अपने खत्ते में जमा करेगा। आमीन। ये वो था कि ऊंचा नीचा चौरस किया जाएगा। देखिए, परंतु लोग ये नहीं समझ सके, परंतु ये ठीक वचन के अनुसार है, ठीक वैसे ही जैसा वचन ने कहा। बहुत ही साधारण कि वे इसे चूक गए, वे इसे देखने में चूक गए। आप ऐसे अंधे ना हो जाएं, समझे? आप ऐसे अंधे ना बनो। इसलिए अब सुनिए, वे इसमें चूक गए। वो बहुत ही साधारण था उनके आम विश्वास में, इस प्रकार का व्यक्ति कि वो चूक गए। फिर से ये क्या था? परमेश्वर जो कि वचन है, सादगी में छिपा हुआ है, न कि एक पुरोहित उसमें घूमे हुए कॉलर के साथ तेज और शिक्षित। यीशु ने उनसे वही बात पूछी, उनसे कहा तुम क्या देखने गए थे? जब यूहन्ना के चेले आए, कहा तुम क्या देखने गए थे? क्या तुम उस मनुष्य को देखने गए थे जो याजक के वस्त्रों को पहनता है, और आप जानते हैं कोमल वस्त्र? उसने कहा उस प्रकार के प्रचारक को। उसने कहा क्या तुम वो देखने गए थे? कहा नहीं, उस प्रकार के बच्चों को चूमते हैं, और तुम जानते हो कि वे मरुओं को गाड़ते हैं, वे दोधारी तलवार के विषय में कुछ नहीं जानते, लड़ाई में सबसे आगे। वे वहाँ कुछ बुद्धि वाले उपदेशक के साथ किसी क्वानिस क्लब या कोई चीज, आप जानते हैं, वे वहीं ठीक हैं। परंतु जब ये युद्ध आता है कि उसका सामना करे, तो वे इस विषय में कुछ नहीं जानते, वे तो राजमहलों में रहते हैं, वे इस प्रकार के लोकप्रिय लोगों के साथ मूर्ख बनते फिरते हैं। परंतु कहा तो फिर तुम क्या देखने गए थे? क्या तुम हवा से हिलते हुए सरकंडे को देखने गए थे, एक मनुष्य जो कह सका? किसी ने कहा आप जानते हैं, आप जुड़े हुए हैं, आप वन्नस से हैं, परंतु यदि तुम यहाँ असेंबली में आओगे, मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्या करूंगा। हम बनाएंगे, मैं विश्वास करता हूँ, मैं ये करूंगा। ओ, एक सरकंडा हिला, न कि यूहन्ना? नहीं नहीं नहीं, यदि आएगा कि सदूकी हो जाए, न कि फरीसी या फिर कुछ और, आपने किसी को हवा से हिलते हुए नहीं देखा होगा, यूहन्ना को नहीं, नहीं श्रीमान भाई, उसे नहीं। उसने कहा तो फिर तुम क्या देखने गए थे? एक भविष्यद्वक्ता को? इसे करने के लिए एक भविष्यद्वक्ता होना चाहिए। देखिए, उसने कहा अब ये तो भविष्यद्वक्ता का प्रमाण है, परमेश्वर का वचन उसके साथ है, वचन भविष्यद्वक्ता के पास आता है, समझे? कहा तो तुम क्या देखने गए थे? एक भविष्यद्वक्ता को? कहा हाँ, ये ठीक बात है, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ भविष्यद्वक्ता से भी बड़े को, क्योंकि वो था। क्यों? वो एक भविष्यद्वक्ता से बड़ा है, वो वाचा का दूत था, निश्चय ही वो था, व्यवस्था और अनुग्रह को मिलाने वाला, और वो वहाँ डांट के बीच का पत्थर था जिसके लिए कहा गया। उसने कहा यदि तुम इसे ग्रहण कर सको, ये वही भविष्यद्वक्ता है जिसके लिए कहा गया, देखो मलाकी 3 में, मैं अपने दूत को अपने आगे भेजूंगा, वो मेरे मार्ग को तैयार करेगा, समझे? ओ, वो इतनी सादगी में था, परमेश्वर फिर अपने आप को सादगी में छिपा रहा है। अब देखिए कि उसने क्या किया, उसने एक ऐसे सामर्थी मसीह के आगमन का प्रचार किया, उसका सूप उसके हाथों में है, वो अपनी तरह से साफ करेगा, लड़के मेरा अर्थ वो पूरी रीति से अपना खलियान साफ करेगा, वो गंदगी को लेकर और उसे उड़ा देगा और उसे जला भी देगा, ये ठीक बात है, वो दानों को इकट्ठा करेगा और उसे खत्ती में ले जाएगा। देखिए, वो प्रेरणा में था। परंतु जब यीशु आता है जिसकी वे राह देख रहे थे, और आप जानते हैं वे सारे चेले वे किसी महान कुछ आने की राह देख रहे थे, ओ वो आ रहा है, वहाँ बस यही था, लड़के वो सामर्थी होगा, वो उन रोमियों को लात मार करके इस पृथ्वी पर से खत्म कर देगा, यूनानियों को उधर से रास्ता दिखा देगा और रोमी उधर चले जाएंगे जब वो आएगा। जब वो आता है तो वो एक नम्र व्यक्ति है, उसे इधर से उधर धक्का दिया जा रहा है। ये क्या था? परमेश्वर अपने आप को साधारणता में छिपा रहा है, ओ प्रभु। तब वो अपने संदेश के अंत में आता है और उसने कहा, कौन मुझे पाप के लिए दोषी ठहराता है? वो सब जिसके लिए बाइबल ने कहा मैं करूंगा, यदि मैं अपने पिता के कार्यों को नहीं करता हूँ तो मुझे दोषी ठहराओ। परंतु जो पवित्र वचन ने कहा कि मैं करूंगा और मैंने ना किए हो, पाप अविश्वास है। आप जानते हैं, कौन मुझ पर दोष लगा सकता है? यदि मैं परमेश्वर की उंगली से प्रेत आत्मा को निकालता हूँ तो मुझे दिखाओ इस विषय में तुम क्या कर रहे हो। सादगी, यहाँ तक कि अपने आप को मृत्यु के लिए दे दिया। परंतु ओ, उस ईस्टर की सुबह, हालेलुया, यही जहाँ वो अपने कार्यस्थल को शुद्ध करेगा, वो गंदगी को उड़ा देगा। ठीक है भाई, जी हाँ निश्चय ही। और गेहूं को खत्ती में बंद करेगा, वहाँ नीचे जमीन पर पड़ा है, अनंत जीवन के साथ विश्राम में है, उस महान दिन की प्रतीक्षा कर रहा है जिस पर कि हम बोलने जा रहे हैं, प्रभु का आगमन। जब ये जीवन उस जीवन के पास आ जाएगा और हम पुनरुत्थान में जी उठेंगे और उसके साथ हवा में उठा लिए जाएंगे और वहाँ पर खत्ती में एकत्र किए जाएंगे और कूड़ा वहाँ जला दिया जाएगा, वो भूसी जो उससे लिपटी हुई थी और इसे इधर उधर खींचने का यत्न करती है, वो ना बुझने वाली आग में जला दी जाएगी। आमीन। ओ, ये क्या आश्चर्यजनक नहीं? वे उसे चूक गए, परमेश्वर सादगी में। क्यों? क्यों उसने कभी पुरोहित वाले शब्दों में प्रचार नहीं किया? उसने कभी नहीं किया। उसने प्रचारक की तरह प्रचार नहीं किया, समझे? उसने प्रचार किया जैसे एक, उसने परमेश्वर के सादगी वाले शब्दों का प्रयोग किया, शब्द जैसे कि कुल्हाड़ा रखा है, पेड़ जैसे शब्द, सांप जैसे शब्द, न कि किसी धर्म विज्ञानी शिक्षक के समान, जैसा पुरोहित वाले दिनों में, जैसा कि एक दिव्य डॉक्टर, डॉक्टर अमुक अमुक, उसने ये नहीं किया। उसने वहाँ के एक लकड़हारे के समान जो कहीं हो, उसने कुल्हाड़ी और पेड़ और सांप और इस प्रकार की चीजें और गेहूं और खत्ते और इस प्रकार की सारी चीजें, आज उसे एक साधारण प्रचारक के समान समझा जाएगा। मैं सोचता हूं वो उस दिन में एक पैर पटकने वाला प्रचारक कहलाया गया था, वहां यर्दन के किनारे ठूंठ पर खड़ा हुआ। परमेश्वर सादगी में संसार की बुद्धि से छिप रहा है। अब आइए ढूंढते हैं, यीशु ने कहा, पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने इन बातों को संसार के बुद्धिमानों से छिपा रखा है और उन बालकों पर प्रकट करता है जो सीखेंगे, समझे? परमेश्वर अपने आप को मसीह में छिपा रहा है, परमेश्वर सादगी में यहुन्ना में छिप रहा है, समझे? जरा देखिए, वो था, जरा इस पर सोचें कि परमेश्वर साधारणता में अपने आप को संसार की बुद्धि से छिपा रहा है। अब हमें एक दो मिनट में बंद करेंगे क्योंकि मैं आप लोगों को देर तक रोके रखना नहीं चाहता। अब आइए एक मिनट के लिए रुकते हैं, कुछ व्यक्तिगत, जिस दिन में हम रह रहे हैं इस पर सोचिए, समाप्ति के बहुत ही समीप, उस दिन के विषय में सोचिए जिसमें हम रह रहे हैं, जब परमेश्वर एक छोटे नम्र स्थान में उतर कर आया जिसमें हम रह रहे थे, बीमारों को चंगा करना, और धनी और अभिमानी और उच्च शिक्षित, आश्चर्य कर्मों के दिन बीत गए, दिव्य चंगाई जैसी कोई चीज नहीं है। आपको याद है वो संदेश जो मैंने इस भूमि के टुकड़े पर से खड़े होकर प्रचारा उस प्रातः जब मैंने छोड़ा, दाऊद और गोलियत के विषय में कहा कि आप कैसे इस शिक्षित संसार का मुकाबला करने जा रहे हैं भाई बहनम, इस सब के साथ। मैंने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता कि मैं कैसे सामना करने जा रहा हूँ, परमेश्वर ने कहा है जाओ, समझे? बस यही है, देखिए ये उसका शब्द है, उसने ये प्रतिज्ञा की है, वो घड़ी अब है। जब वो सरदूत जिसका चित्र आप देखते हैं वहाँ उस नदी पर उस दिन आया, आने वाले जून में 30 वर्ष या बल्कि 33 वर्ष पहले, इस आने वाले जून में, और कहा जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भेजा गया, 5,000 या उससे अधिक लोग उस समय आ गया, और जब तेरा संदेश संसार का पथ विचलन कर देगा। यदि आप में से कोई वहाँ था, आपको आलोचना याद होगी। मैं समझता हूँ रॉय स्लॉटर या उनमें से कुछ लोग यहाँ बैठे हैं, वो दिन याद हो सकता है, या कुछ श्रीमती स्पेंसर या जो उनमें से पुराने लोग यहाँ हैं, ये जानते होंगे, देखा जॉर्ज राइट या उनमें से कुछ, ये जानते हैं ये कैसे था। परंतु ये क्या नहीं हुआ? उसने ये किया। और फिर इस सब के बीच जब उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया और कहा ये बस विचारों की चंगाई है, अब परमेश्वर घूमा और एक बड़े अपोसम को वहाँ भेजा और परमेश्वर के सामर्थ्य से चंगा किया गया। लाइलवुड और बैंक्स, जब हम वहाँ पर बैठे हुए थे और परमेश्वर के प्रमाणित सत्य को जानते हैं, जब एक छोटी पुरानी मरी हुई मिनो मछली वहाँ पानी पर पड़ी हुई थी और पवित्र आत्मा ने एक दिन पहले कहा था वो उनको अपनी महिमा दिखाने जा रहा है, और इस विषय में कुछ करने जा रहा है। और वहाँ वो उस समय वहाँ पर खड़े थे और पवित्र आत्मा वहाँ नाव में नीचे उतर आया और मैं खड़ा हुआ और उस मछली से कहा और वो पानी पर आधे घंटे से मरी पड़ी थी। उसके गलफड़े उसके मुंह से बाहर निकले हुए थे। वो जीवित हो गई थी और पानी में उतनी ही तेजी से तैरती हुई निकल गई जैसे कि कोई भी मछली। ये क्या है? परमेश्वर स्वयं को सादगी में छिपा रहा है और परमेश्वर योग्य है कि इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर दे। परमेश्वर योग्य है कि अपोसम को चंगा कर दे या एक मछली या कोई भी चीज। यदि वो अपना संदेश लाएगा और लोग इसका विश्वास नहीं करेंगे तो परमेश्वर अपोसम को उठा सकता है कि इसका विश्वास करे। हालेलुया। परमेश्वर एक मरी हुई मछली को जिला सकता है, वो मरे हुए अपोसम को जिला सकता है, वो सकता है, वो जो भी चाहे वही कर सकता है। इस पीढ़ी के लिए क्या ही ताड़ना है जब वे इस पर ठोकर खाते हैं और इस पर विवाद करते हैं और आपने ये नहीं किया और वो नहीं किया और परमेश्वर ने एक साधारण से जानवर को भेज दिया। समझे, क्या ही फटकार है। ये क्या था? परमेश्वर सादगी में अपने आप को महान दर्शा रहा है। ओ प्रभु, इस पीढ़ी के लोगों के लिए फटकार है उनके अविश्वास पर। अब वे लोग वैसे ही सोचते हैं जैसे सदा सोचा करते थे। ये उनके अपने रीति के अनुसार होना चाहिए था। अब यदि दिव्य चंगाई जैसी कोई चीज है, जैसा कि एक कैथोलिक व्यक्ति ने मुझे ये बताया, एक व्यक्ति ने उस रात्रि मुझे इस विषय में बताया, आप इस विषय में जानते हैं, कहा ये आयर्स, मैं उस लड़के के विषय में वहाँ हॉस्टन देखने गया। उसने कहा अच्छा, अब यदि ये परमेश्वर का वरदान है तो इसे कैथोलिक कलीसिया में आना चाहिए। आप समझे, मैं थोड़ी सोचते हैं कि ये उनकी कलीसिया होनी चाहिए। पेंटेकोस्ट सोचते हैं ये उनकी कलीसिया में होना चाहिए, परंतु ये किसी में भी नहीं आया। ये यीशु मसीह की पुनरुत्थान की सामर्थ्य में स्वयं को प्रकट कर रहा है। निश्चय ही ये ठीक बात है। जी हाँ, वो करता है। बस इस पर ध्यान करें, इसे अपने पास से निकलने न दें, इसे अपने हृदय के नीचे रखें और इसे याद रखें, इस पर मनन करें। इसे उनके ही तरीके से आना है, उनके अपने नामधारी से, और इसके अलावा होता है तो ये वो नहीं है। देखा, ये बस मनोविज्ञान है या ये शैतान है, ये परमेश्वर नहीं है। क्योंकि यदि ये परमेश्वर था तो इसे उनके ही तरीके से आना था। आपने देखा जिस तरह से हमने इसे अनुवाद किया है, इसी प्रकार से यीशु को फरीसियों के पास आना था, इसे वैसा ही होना था। समझे, यदि परमेश्वर मसीह को भेजने पर था तो उनका वो सारा अनुवाद था कि उसे कैसे होना चाहिए, और क्योंकि वो भिन्न प्रकार से आया तो फिर ये वो मसीह नहीं था, वो कुछ और अवैध था, वो एक बालजबूल था, परंतु ये परमेश्वर था जो सादगी में छिप रहा था। अग्रदूत तो विशेष निश्चित शिक्षित मनुष्य होना चाहिए जो कि उनके ठीक है, एक कोई संदेह नहीं। प्रतिदिन प्रतिवर्ष जब वे अपने सेवकों का अभिषेक करते हैं और उन्हें बाहर मिशनरी के समान भेजते हैं, नए मत परिवर्तकों को अंदर लाएं, प्रत्येक ने सोचा ये वो अग्रदूत होगा जो आना था, परंतु परमेश्वर ने उसे जंगल से उठाकर खड़ा किया जहाँ कोई धर्म विद्यालय नहीं था और इस प्रकार की चीजें। समझे, परमेश्वर अपने आप को नम्रता और सादगी में छिपा रहा था। परंतु अब प्रतीक्षा करें, बंद करते हुए हम ये कहते हैं, परंतु परमेश्वर के साधारण से संदेश को अस्वीकार करना परमेश्वर का साधारण सा तरीका की अनंतता तक नष्ट कर दे। अब ये कितना, हम बात करते हैं कि ये कितना साधारण है और लोग सोचते हैं ठीक है, वे इस पर हंस नहीं सकते, इससे भाग जाते हैं और जैसा चाहते हैं वैसा व्यवहार करते हैं, परंतु ये परमेश्वर से अनंत तक का अलगाव है। वे जो नूह के दिनों में मर गए, उसके संदेश को नहीं सुना, वे नष्ट हो गए, और यीशु गया और उन्हें अंधेरे की जंजीरों में प्रचार किया अपनी मृत्यु में, अपने जी उठने के पहले, और वो नरक में गया और उन आत्माओं को प्रचार किया जो कैद में थी, जिन्होंने नूह के धैर्य के दिनों में प्रायश्चित नहीं किया जब परमेश्वर एक साधारण संदेश साधारण मनुष्य के द्वारा प्रचार किया जा रहा था। वो गया और उसने कहा, नूह ने ये प्रचार किया, मैं यहाँ होऊंगा और मैं यहाँ हूँ। ये ठीक बात है। समझे, वे जो नबी का संदेश सुनने में असफल है, मूसा वहाँ जंगल में था जो उसने परमेश्वर से पाया, अग्नि स्तंभ से सही प्रमाणित और अगुवाई करके जंगल में ले गया और फिर उठने का यत्न किया और इसके द्वारा संस्था बनाई और वे जंगल में नष्ट होकर मर गए, उनमें से प्रत्येक केवल दो मनुष्य, यहोशा और कालिब, और वहाँ फरीसी इतने अंधे थे कि वे देख ना सके, इसलिए उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और कहा, हमारे बाप दादाओं ने मन्ना खाया, हमारे बाप दादाओं ने जंगल में मन्ना खाया, और यीशु ने कहा और वे सब मर गए। उन्होंने परमेश्वर की महिमा को देखा, वे ज्योति में चले, वे अग्नि स्तंभ की ज्योति में चले, वे उसकी सामर्थ्य की उपस्थिति में चले, वे उन स्थानों में से होकर निकले जो पवित्र आत्मा ने उनके जाने के लिए तैयार किए थे। उन्होंने वो स्वर्ग से गिरा हुआ मन्ना खाया जो परमेश्वर ने उन्हें दिया और नष्ट होकर नरक में चले गए, वे उनमें से प्रत्येक मर गया। यदि आप इस वचन को लेते हैं, ये परमेश्वर की उपस्थिति से अनंत अलगाव है, वे उनमें से प्रत्येक मर गया, समझे? और वो जिसने यीशु को अस्वीकार किया नष्ट हो गया। देखिए मेरा क्या अर्थ है, परमेश्वर की सादगी का इनकार करना, ये ऐसे ही कुछ नहीं है। आप कहते हैं भाई मैंने गलती की है, आप उस प्रकार से नहीं करते हैं, परमेश्वर इसे इस प्रकार से नहीं लेता है, आप सदा के लिए नष्ट हो गए। अच्छा है कि हम किसी और चीज के विषय में सोचें। इसे तो अब परमेश्वर के द्वारा ही प्रमाणित होना है, और यदि ये उसका वचन है, समझे? ओ उनके समान जिन्होंने मूसा को अस्वीकार किया, एलिया को अस्वीकार किया, यहुन्ना को अस्वीकार किया, यीशु को अस्वीकार किया उनके अपने दिनों में। यहाँ मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं और फिर मैं आशा करता हूं कि मैं आपको अधिक ठेस नहीं पहुंचा रहा हूं। परंतु देखिए, उस दिन मुझे हॉस्टन टेक्सास में बुलाया गया, क्षमा मांगने की कोशिश की कि कुछ लोगों ने वहाँ इकट्ठा करके और क्षमा पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए, ये नवयुवक और नवयुवतियाँ आप जानते हैं वे इस मुसीबत में फंस गए। मेरा अनुमान है आपने इस विषय में अखबार में पढ़ा होगा, और वो श्रीमान आयर्स का सौतेला पुत्र था, और श्री आयर्स ही वो थे जिन्होंने प्रभु के स्वर्गदूत का चित्र उतारा था जिसे आप ठीक वही देखते हैं, एक रोमन कैथोलिक और उसकी पत्नी जो यहूदी थी, और उसने इस यहूदी लड़की से विवाह किया था। वे एक दूसरे से धर्म के विषय में बात नहीं करेंगे और आदि आदि इस प्रकार से। और टेड किपरमैन जो कि उनके साथ इस काम में थे, उनका डगलस स्टूडियो था, और जब वो वहाँ पर आया जहाँ श्री बेस्ट डॉक्टर बेस्ट बैप्टिस्ट चर्च के जिन्होंने अपना मुक्का भाई बोसफोर्ड की नाक पर ताना और कहा अब मेरा चित्र उतारो, ऐसा करते हुए कहा मैं इस बूढ़े आदमी का डराने का चित्र लेकर अपने अध्ययन कक्ष में टांगूंगा एक दिव्य चंगाई की यादगार में। और इसके पहले मैं हॉस्टन टेक्सास जाता, प्रभु परमेश्वर ने मुझे वहाँ जाने को कहा और मैं वहाँ प्रभु के नाम में था। और आप सब उस बहस को जानते हैं और जो बातें जो वहाँ उठी आपने पुस्तकों में पढ़ा है और आदि आदि, और ये वहाँ पर था। और उस रात्रि बहुत नम्रता के साथ चलने का यत्न कर रहा था, क्यों? उन्होंने कहा ये अनपढ़ों का एक झुंड है। डॉक्टर बेस्ट ने कहा ये कुछ नहीं सिवाय एक अज्ञानियों का एक झुंड, कहा ऐसे लोग नहीं जो दिव्य चंगाई जैसी चीज में विश्वास करते हैं, इस प्रकार की चीज पिछड़ों का झुंड, वे नहीं जानते कि ये परमेश्वर सादगी में है। क्यों? कहा इस व्यक्ति के पास व्याकरण की शिक्षा तक नहीं है, वो सारी शिक्षा की डिग्रियों से सुसज्जित था जितना हो सकता था कि वो सोचने लगा कि भाई बोसफोर्ड को कैसे भी दबा लेगा, परंतु जब ये वचन पर आया तो वो मुकाबले में 1/10 भी नहीं था, समझे? और भाई बोसफोर्ड को मालूम था कि वो कहाँ पर है, उसके बहुत सारे लोग वहाँ पर बैठे हुए थे, वहाँ बहस में थे, और वो वहाँ पर था। तब वो हमको ये कहने लगा कि हम अज्ञानियों का झुंड है, कहा अच्छी समझ वाले इस बात का विश्वास नहीं करते। भाई बोसफोर्ड ने कहा एक मिनट, उसने कहा इस नगर में कितने लोग हैं, उस रात्रि में लगभग 30,000 इस प्रकार के हमारे बीच बैठे हुए हैं। इस नगर में कितने लोग हैं यहाँ इन बड़े अच्छे बैप्टिस्ट कलीसियाओं में जाते हैं, डॉक्टर के बयान से ये सिद्ध कर सकते हैं कि वे परमेश्वर की सामर्थ्य से चंगे हुए हैं। जब से भाई ब्रैनम इस नगर में प्रचार कर रहे हैं खड़े हो जाएं, और 300 खड़े हो गए। इस विषय में क्या है, ये वहाँ था, परमेश्वर सादगी में छिप रहा है। तब उसने कहा भाई, उसने कहा उस दिव्य चंगाकर्ता को सामने लाओ, मैं उसे किसी को सम्मोहित करते हुए देखूं, तब मैं आज से 1 वर्ष बाद देखता हूँ। और टेड किप और आयस वहाँ जिसने चित्र उतारा बोला श्री ब्रैनम कुछ नहीं बस एक सम्मोहन करने वाला, मैंने एक महिला को देखा उसके गले में घेंगा था इस प्रकार से, और कहा उसने उस महिला को सम्मोहित कर दिया। अगले दिन मैंने उससे बात की और उसे घेंगा नहीं था, कहा उस व्यक्ति ने उसे सम्मोहित कर दिया, और ओ उसने बस मेरा उपहास उड़ाया, कहा मुझे नगर से भगा देना चाहिए और उसे उनमें से एक होना चाहिए जो ये करे। और सब इस प्रकार से हॉस्टन क्रॉनिकल में ये सामने के पृष्ठ पर था बड़ी बड़ी लाइनों में। मैंने कभी एक शब्द भी नहीं कहा, मैं वहाँ अपने पिता के काम से था, बस कुल मिलाकर यही था, वचन के साथ टिके रहें, उसने मुझे वहाँ भेजा और ये उसका काम है। उस रात्रि जब मैं वहाँ नीचे पहुँचा मैंने कहा मैं कोई दिव्य चंगा करता नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, यदि कोई ये कहता है तो मैं कहता हूँ वे लोग गलत हैं। और मैंने कहा मैं दिव्य चंगा करता कहलाना नहीं चाहता, मैंने कहा यदि डॉक्टर बेस्ट यहाँ उद्धार का प्रचार करते हैं तो वो अपने आप को दिव्य उद्धार करता कहलवाना नहीं चाहेंगे। और मैंने कहा तो फिर मैं दिव्य चंगा का प्रचार करता हूँ तो मैं अपने आप को दिव्य चंगा करता नहीं कहलवाना चाहूंगा, परंतु वो कहता है कि वो दिव्य उद्धार करता नहीं है, निश्चय वो नहीं है, न ही मैं दिव्य चंगा करता हूँ, परंतु उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए, मैं इस ओर संकेत कर रहा हूँ, समझे? और इसलिए वो निरर्थक। अब देखिए घूमा और मैंने कहा परंतु यदि परमेश्वर के इस वरदान की उपस्थिति, प्रभु का ये दूत, यदि इस पर शक है वो सिद्ध किया जा सकता है। उसी समय के लगभग वो चक्रवात में नीचे आया, कहा अब बोलने की आवश्यकता नहीं है, वो मेरे लिए पहले ही बोल चुका और मैं चला गया। और मैं उस बड़े शहर ह्यूस्टन गया, राष्ट्र का एक सबसे बड़ा अच्छा शहर जो कहीं है। जब उस दिन मैं वहां गया तो शहर को देखकर ये अपमानित सा लगा। सड़कें गंदी थीं, टेक्सास एवेन्यू में जिन जगहों में काउंटर थे, और मैं राइस होटल गया जहां अक्सर फिल्मी सितारे रुकते हैं, और वहां मैं नीचे तहखाने के कैफेटेरिया में गया। वो कैफेटेरिया उसकी छत नीचे लटक रही थी, पलस्तर फर्श पर, गंदगी और धूल, प्रचारकों के बीच में एक भ्रम जैसा मैंने कभी नहीं देखा या मैंने अपने जीवन में सुना। क्यों? ज्योति में चलने को मना कर दिया कि अंधेरे में चलें। वहां उनके बालक मृत्यु की पंक्ति में बैठे थे। परमेश्वर नीचे उतरा जहां सादगी प्रकट की गई थी, और अस्वीकार तब परमेश्वर ने अपने आप को सादगी में दिखाया, और वहां चित्र लिया गया जो सारे संसार में घूम गया। यहां तक कि वैज्ञानिकों ने कहा यह केवल एक अलौकिक जीवन जिसका सारे संसार के इतिहास में कभी जो चित्र लिया गया, और वॉशिंगटन डीसी में लटका हुआ है धार्मिक कला के हॉल में। यहां ये सादगी प्रकट हो रही है, समझे। परमेश्वर अपने आप को सादगी में छिपा रहा है और फिर अपने आप को प्रकट कर रहा है, समझे। अब उसने अपने आप को मसीह की मृत्यु में छिपा लिया, परंतु अपने आप को पुनरुत्थान में प्रकट किया, ओ प्रभु, और आदि आदि। आप सकते हैं, हम सकते हैं, इसका कोई अंत नहीं है, बस कहते रहें, परंतु आप वही हैं। नीचे तहखाने में जाकर रोशनी से अपनी आंखें मूंद लेना, सूर्य की चमक का इनकार करना, और ये ठीक है। और याद रखें, केवल एक ही तरीका है कि आप गलत हो सकते हैं, कि पहले सही का इनकार करें, समझे, और अपनी आंखें खोलने को मना करें। आप अंधकार में जिएंगे, समझे। यदि आप देखने से इनकार कर दें तो आप कैसे देखने वाले हैं, समझे। साधारण चीजों पर ध्यान दें। ये एक छोटी बात है कि आप बिना किए छोड़ दें, बड़ी चीजें नहीं जिन्हें करने का आप यत्न कर रहे हैं। ओह प्रभु, तो फिर इधर देखें, मैं आपको बता दूं, मत्ती 11:10 में उसने कहा, यदि तुम इसे ग्रहण कर सकते हो तो वो यही है, समझे। ये वही है जिसे मेरे आगे भेजा गया, ये सादगी थी। एक दिन उसके बारे में पूछा गया, कहा, तो फिर शास्त्री क्यों कहते हैं वो? उसने कहा, मनुष्य का पुत्र यरूशलेम को जा रहा है, मैं पापियों के हाथ सौंपा जाऊंगा, और वे मनुष्य के पुत्र को मार डालेंगे, और वो मरने जा रहा है, और तीसरे दिन वो फिर से जी उठने वाला है। कहा, वहाँ जो दर्शन मिला इसे किसी को न बताना। और चेले, अब इस पर सोचें, वे चेले जो यहुन्ना के साथ साथ चले, उससे बातें की, उसके साथ खाया, जंगल में उसके साथ किनारे पर बैठे, फिर उन्होंने कहा, तो फिर शास्त्री क्यों कहते हैं कि एलिया का पहले आना अवश्य है? आप कहते हैं आप वहाँ क्रूस पर चढ़ने जा रहे हैं और फिर जी उठने वाले हैं, तू तो मसीहा है, कि सिंहासन को ले। अब शास्त्री क्यों कहते हैं? हमारे सारे शास्त्री यहाँ कहते हैं, वचन स्पष्ट कहता है, इसके पहले कि मसीह आए, एलिया का पहले आना होगा। जी हाँ, समझे। उसने कहा, वो तो पहले ही आ चुका और तुम्हें मालूम ही नहीं हुआ। अब वो कौन था? चेले। मैं यहाँ झटका देने जा रहा हूँ, अब जरा थोड़ा, परंतु मेरे करने का ये अर्थ नहीं है, अगले ही कुछ मिनटों के लिए, बस एक या दो मिनट, परंतु निश्चित हूँ कि आप समझ जाएंगे। क्या आप मुझे सुन सकते हैं? देखिए, क्यों वे पुरुष जो मसीह के साथ साथ चले, क्यों वचन पहले ये कहता है कि एलिया को आना ही है, और वे यूहन्ना के अपने मत परिवर्तक थे, और यहाँ तक कि उसे जानते भी नहीं। शास्त्र ने क्यों कहा? शिक्षकों ने। आप देखिए कि मेरा क्या अर्थ है, समझे। तो फिर शास्त्र क्यों कहता है कि एलिया को? चेले जो उसके संग संग चले, तो शास्त्र क्यों कहता है कि उसे पहले आना है, इन बातों के पहले, और सारी चीजों को वापस लाना है? उसने किया इन आधा दर्जन लोगों के लिए। कुल मिलाकर यही वहाँ था, बस इन्हीं को उसे स्वीकार करना था, यही वे जो इसे देखने के लिए ठहराए गए थे। यीशु ने कहा, वो तो पहले ही आ चुका और तुमने नहीं जाना, परंतु उसने वही किया जो पवित्र शास्त्र ने कहा कि वो करेगा। उसने उन्हें बहाल कर दिया, तुम सब जो मुझे ग्रहण करते हो और मुझ पर विश्वास करते हो। उसने ठीक वही किया जो शास्त्र ने कहा कि वो करेगा, और उन्होंने उसके साथ वही किया जो शास्त्र ने कहा कि वे करेंगे। वो तो आ चुका और तुम्हें ये नहीं मालूम? क्या आप तैयार हैं? मैं आपको थोड़ा सा झटका दूं, उठा लिया जाना भी इसी प्रकार से होगा। ये इतना साधारण होगा कि कोई संदेह नहीं, ये वैसे ही होगा जब तक कि किसी दिन रैप्चर ना हो जाएगा और कोई इस विषय में कुछ नहीं जानेगा। अब उठे ना, परंतु बस एक मिनट अध्ययन करें, मैं निश्चय ही बंद कर रहा हूँ। स्वर्ग में उठा लिया जाना इतने ही साधारण रीति से होगा कि जब तक न्याय आ जाएगा और वे मनुष्य के पुत्र को देखेंगे और वे कहेंगे, क्या ऐसा ऐसा नहीं होना है? और क्या एलिया को हमारे लिए नहीं आना है? और क्या रैप्चर नहीं हो जाना था? यीशु कहेगा, ये तो पहले ही हो गया और तुमने इसे नहीं जाना। परमेश्वर सादगी में समझे। अब इस सप्ताह में हम कुछ डरावनी गहरी शिक्षा पर आ रहे हैं। अब रैप्चर पर ध्यान दें। इतने थोड़े उस दुल्हन में जाएंगे, ये नहीं होगा। अब देखिए कैसे शिक्षकों ने इसे पाया। उनके पास चार्ट थे, वे बढ़ते हैं और 1 करोड़ लोगों को आते हुए यहाँ दर्शाते हैं। सारे मेथोडिस्ट, यदि ये मेथोडिस्ट प्रचारक है, यदि ये पेंटिकॉस्टल है तो सारे पेंटिकॉस्टल आ रहे हैं। ये कभी भी इसे नहीं छुएगा। ये होगा, हो सकता है एक जेफरसन विले छोड़ेगा, कोई गायब हो जाएगा, वे कहेंगे भाई आप कभी नहीं, बाकी ये नहीं जान पाएंगे। एक होगा जो जॉर्जिया को छोड़ देगा, समझे, वहाँ अफ्रीका से एक छोड़ देगा। और चलिए कहते हैं 500 लोग होंगे जो रूपांतरण में चले जाएंगे। अब ये कलीसिया देह नहीं है, ये दुल्हन है, ये कलीसिया नहीं है, ये कलीसिया है, समझे। कलीसिया हजारों में आएगी, परंतु ये अगले पुनरुत्थान में होगा, वे हजार साल वाली अवधि में नहीं जिएंगे, समझे। परंतु दुल्हन में यदि इसी मिनट में पृथ्वी पर से 500 लोग चले जाएं, तो संसार को कुछ भी पता नहीं लगेगा। यीशु ने कहा, एक वहाँ पलंग पर होगा और एक चला जाएगा, एक छूट जाएगा। ये रात का समय होगा, वे वहाँ दो खेत में होंगे, पृथ्वी की दूसरी ओर। मैं एक को ले लूंगा, एक को छोड़ दूंगा, जैसा ये नूह के दिनों में हुआ था, ऐसा ही मनुष्य के पुत्र के आने के दिनों में होगा। सोचिए, हर चीज वैसे ही साधारण रूप में चलती रहेगी जितनी हो सकती है। एक अति उत्साही संदेश निकल जाएगा और पहली बात आप जानते हैं कि कुछ ये सेवक कहीं जा रहा है, वो कभी वापस नहीं आएगा। संभवतः वो जंगल में शिकार पर निकल गया, अब वो कभी वापस नहीं आएगा। और ये व्यक्ति कहीं गया, आप जानते हैं क्या हुआ। मैं विश्वास करता हूँ युवा लड़की वो कहीं पकड़ ली गई होगी, किसी ने उसे पकड़कर उसे संभवतः अपमानित किया होगा और नदी में फेंक दिया होगा। वो किसी के साथ नहीं थी। इसके आधे, हर में से 99 कहेंगे, 1 करोड़ में से इस विषय में कुछ जानेगा, जब तक कि कोई उसकी अच्छी जान पहचान का ना हो सकता हो। कहता है लड़की गायब हो गई, क्यों, मैं नहीं समझ सकता, वो कभी इस तरह से नहीं गई, नहीं। और जब वे कहते हैं कब्रें खुल जाएंगी, ये कब्रें कैसे खुलने जा रही हैं? जब मेरे पास समय नहीं है कि मैं इसमें जाऊं, जो कि मैं चाहता था, मैं इसे लेने जा रहा हूं कि आपको परमेश्वर की सादगी दर्शाऊं। और वो कैल्शियम, पोटाश और हर चीज, जब हर चीज आप में पदार्थों की है, मिलकर चम्मच भर है, ये ठीक बात है। और ये क्या करता है, टूटकर पीछे आत्मा और जीवन में हो जाता है। बस परमेश्वर बोलता है और रैप्चर आ जाएगा। ये ऐसा नहीं होने जा रहा है और सरदूत आकर कर कब्र खोद रहे हैं और पुरानी लाशें निकाल रहे हैं। ये क्या है, ये आरंभ से ही पाप में जन्मा है, परंतु एक नया वाला इसकी समानता में बना है, आप जानते हैं, समझे। यदि हमारे पास ये है, ये फिर मर जाएगा, समझे। कोई, आप कहते हैं कब्रें खुल जाएंगी, मरे हुए बाहर निकल जाएंगे, ये सही हो सकता है, परंतु खुलना नहीं जिस प्रकार से आप खुलना कहते हैं, समझे। ये ठीक बात है, समझे, इस प्रकार से ये नहीं होगा, परंतु ये गुप्त होगा, क्योंकि उसने कहा वो रात के चोर के समान आएगा। ये वो हमें पहले ही बता चुका है, रैप्चर यानी उठा लिया जाना। तब न्याय आएगा, पाप, महामारी, बीमारी और सारी चीजें, और लोग मृत्यु के लिए चिल्लाएंगे कि उन्हें ले ले। जब न्याय, प्रभु ये न्याय हमारे ऊपर क्यों है, जबकि आपने कहा कि रैप्चर पहले होगा, वो कहेगा ये तो पहले ही हो चुका और तुम्हें मालूम ना हो सका, समझे। परमेश्वर स्वयं को साधारणता में छिपा रहा है, ओ प्रभु, ठीक है, वो सब ये पहले ही हो गया और तुम्हें मालूम नहीं चल पाया। विश्वासियों ने, उसके आगमन ने साधारण से चिन्ह का विश्वास क्यों नहीं किया? वे सारी चीजों को जो वचन ने कही, जिनकी वे आशा कर रहे थे, और बीच में ही चांद नीचे चला जाएगा, यानी सूर्य दिन के बीच में, और सब प्रकार की चीजें होंगी। ओ यदि हम बस, मेरे पास यहाँ टिप्पणियाँ लिखी हुई हैं, देखिए, ये दिखाने के लिए कि ये क्या चीजें हैं। इस सप्ताह इन मोहरों के तोड़ने में इन्हें देखेंगे, जो भी है, समझे। यही है जहाँ की सब कुछ हो चुका है और आप ये नहीं जानते। देखिए, यदि ये है, यदि प्रभु का स्वर्गदूत इन मोहरों को तोड़ेगा, याद रहे ये 7 भेद भरे गर्जनों से मोहर बंद है, समझे। अब क्या, क्यों नहीं लोग नम्र लोगों के झुंड की साधारण सी सादगी का विश्वास नहीं कर सकते? देखिए, और परमेश्वर के चिन्ह की आवाज का वे क्यों नहीं इसका विश्वास कर सकते हैं? जैसे कि ये सदा से सच्चा परमेश्वर का वचन रहा है जो कि प्रकट हो रहा है। यह है वे बहुत ही बुद्धि वाले और बहुत ही शिक्षित कि लिखित वचन के सादे से रूप का विश्वास करें। वे इसमें अपना ही अनुवाद डालना चाहते हैं। इसका ये अर्थ नहीं है, इसका वो अर्थ नहीं है, समझे, इसका ये मतलब नहीं है। सुनिए, मैं इसे जरा जल्दी से कह दूं, यहाँ तक कि दर्शन जो परमेश्वर इस जगह में देता है इतने गलत समझे गए। यही कारण है कि आप टेपों पर मुझे ये कहते हुए सुनते हैं, वही कहें जो टेप कहते हैं, वही कहें जो दर्शन कहते हैं। अब यदि आप ठीक से जगे हुए हैं तो आप कुछ देखेंगे, समझे। मैं आशा करता हूं कि मैं इस अपने ही हाथों में रोक नहीं रखूंगा और आपको दिखाता हूं, समझे समझे आप, ये यहां है, हम अंत में हैं, समझे। जी हाँ श्रीमान, तेज पढ़े लिखे इसमें चूक जाएंगे। साधारण दर्शन जब ऐसी साधारणता में प्रकट किए जाते हैं, यहाँ तक कि वे लोगों के सिर पर से होकर निकल गए, समझे, क्योंकि मैंने दर्शन देखे हैं, आपको वहाँ शिकार पर जाने के लिए बताया और आप जानते हैं इससे लोगों ने ठोकर खाई और वहाँ परमेश्वर ने किसी विशेष उद्देश्य के लिए भेजा और वापस आकर इसका अनुवाद दिया, अपनी माँ के जाने के विषय में दिखाया और इस प्रकार की चीजें, और वापस आकर इसे पहले से बताया और ये हुआ ठीक वैसे ही जैसे ये था। उसने कहा कि ये घटित होगा, समझे, और फिर भी यूहन्ना ठीक वहाँ आया और स्वीकार किया। उसने कहा मैं मसीह नहीं हूँ, परंतु मैं वो आवाज हूँ जो जंगल में पुकारता है। और तब वे ही चेले कहते हैं, तो फिर फरीसी क्यों कहते हैं पवित्र लेख सिखाता है कि पहले एलिया को आना है, समझे। परमेश्वर की साधारणता चलती है, लोगों के सिर के ऊपर से निकल जाता है। मुझे ये लेने दें और मैं फिर बंद करता हूँ, मैं परमेश्वर की सहायता से करूंगा, समझे। देखिए, आइए इसका खुलासा करें, आपको निरंतर ये बताते रहने के लिए मुझे खेद है, और फिर देखिए आपको रोके रखने के लिए खेद है, परंतु कुछ ही घंटों में हम वापस आ रहे हैं। देखिए, आइए स्याही की एक साधारण सी बूंद लें, हर चीज किसी उद्देश्य के लिए है। आप लोग आज सुबह यहाँ किसी उद्देश्य के लिए जमा है। मैं आपके घर में खाता हूँ, चार्ली नैली आप लोग मेरे लिए पकाते हो, किसी उद्देश्य के लिए है। मैं हर चीज किसी उद्देश्य के लिए है। ये आराधनालय किसी उद्देश्य के लिए खड़ा किया गया है, बिना उद्देश्य और कारण के कुछ भी नहीं है। अब आइए स्याही की एक साधारण सी बूंद लें, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? स्याही की एक साधारण सी बूंद लें और इसे देखें, ये क्या है? स्याही की एक बूंद, ये कहाँ से आई है? ठीक है, अब आइए स्याही की एक बूंद लें और ये काली स्याही है। अब ये स्याही किसी उद्देश्य के लिए है, ये मेरी क्षमा लिख सकती है एक कलम में उस पश्चतापी से, ये मेरी क्षमा मृत्यु कक्ष से लिख सकती है, ये ठीक बात है, ये यूहन्ना 3:16 लिख सकती है और विश्वास करने के द्वारा मेरे प्राण को बचा सकती है, क्या ये ठीक बात है, या मेरे मृत्यु आदेश के हस्ताक्षर कर सकती है, समझे, ये एक उद्देश्य के लिए है, क्या ये ठीक बात है। अच्छा, छोटी सी स्याही को देखें और देखें ये कहाँ से आती है। अब ये एक स्याही है, ये रसायन आदि एक साथ मिलाए गए हैं जब तक कि ये स्याही नहीं हो गई, और ये काली है, आप इसे अपने कपड़ों पर टपका लें, ये इस पर दाग बना देगी। परंतु हमने एक चीज का निर्माण किया है जो कि ब्लीच कहलाता है, आप स्त्रियां ये ब्लीच प्रयोग करती हैं। भाई, मैं एक बूंद स्याही को लेकर इसे ब्लीच के टब में डाल देता हूँ, अब स्याही का क्या हुआ, समझे, क्यों? ब्लीच बनाया गया है, खोजा और रसायनों से मिलाकर बनाया है, ये रंग को इतनी बुरी तरह से तोड़ देता है यहाँ तक कि आप इसे ढूंढ नहीं सकते। अब जल ब्लीच का एक भाग है, पानी H2O है जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों खतरनाक विस्फोटक हैं, और फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वास्तव में राख हैं, यही जो ये है, ये ठीक बात है, रासायनिक राख, बस रासायनिक राखें। अब इन्हें एक साथ रख दें और आपको पानी मिलेगा, परंतु इसे तोड़ें, आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा, और फिर वापस चलते जाएं। अब इसमें होते हुए हम लें, और मैं नहीं सकता, अब हो सकता है कि कोई रसायन वाला यानी केमिस्ट यहाँ बैठा हो, और अब मैं ये कहना चाहता हूँ, चूंकि यहाँ कोई केमिस्ट सुन रहा होगा, मैं फार्मूला नहीं जानता, परंतु मैं इसकी व्याख्या अपने नम्र विधि में करना चाहता हूँ, ये विश्वास करते हुए कि परमेश्वर इसमें स्वयं को ही प्रकट करेगा। देखिए, मैं स्याही की एक बूंद इस ब्लीच में टपकाता हूँ, क्या होता है, तुरंत ही काला रंग समाप्त हो गया, आप इसे दोबारा नहीं ढूंढ सकते, यदि आपको ढूंढना पड़े ये गया, आप इसे फिर कभी नहीं देखेंगे, क्या हुआ, अब आप इसमें से कुछ भी निकलता हुआ नहीं देखते, आप नहीं, क्योंकि क्यों नहीं आ पाते, क्योंकि ये टूट गया, अब विज्ञान कहेगा ये वापस अपने मूल एसिडों में चला गया।
What did the acids come from? See? Well, you see, it come from...
ये तेजाब कैसे आया? समझे भाई, आप कहते हैं ये कुछ खास चीजों से आया, ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे कि ये वाष्प से बनता है, वाष्प कहाँ से आती है? ठीक है, आप कहेंगे वाष्प अणुओं से बनती है। ये अणु कहाँ से आते हैं? ये परमाणुओं से। ये परमाणु कहाँ से आते हैं? इलेक्ट्रॉन से। वे कहाँ से आते हैं? कॉस्मिक प्रकाश से। इसलिए आप देखिए, आप रसायन के पीछे ढूंढते हैं। यदि ये तत्व है और ये एक सृष्टि है, तो इसे सृष्टिकर्ता से आना चाहिए। इसलिए आप यहाँ संयोग से नहीं बैठे हैं। मैं आपको संयोग से 12:30 या 1 बजे तक नहीं रोक रहा हूँ। धर्मी के कदम प्रभु की ओर से तय होते हैं, समझे? इसका कोई कारण है, कोई कारण है कि आप विश्वास करते हैं, कोई कारण है कि आप विश्वास नहीं करते, जैसा कि उस स्याही के साथ हुआ। अब आइए इसका विश्लेषण करें। अब पहली चीज जो कहती है, इसके बाद जब हम वापस जाते हैं वहाँ जहाँ अणु है, अब हम अणु को लेते हैं। मैं कहूँगा 1 × 9 × अणु, 12 × अणु। अब यदि ये 11 था तो ये बाहर लाल आएगा, परंतु इसे काला होने के लिए 12 होना था। फिर हम इसे परमाणु तक ले जाएंगे, ये परमाणु था, और 9 × 6 × 4 = 4 = 3, ये 16 × 11 परमाणु के बराबर है। यदि ये 16 × 12 था तो ये बैंगनी हो सकता था, समझे? तब आप इसे और आगे तोड़ते जाते हैं। ये दर्शाता है कि वहाँ पीछे कुछ आरंभ से ही था। ये केवल सामान्य ज्ञान है, ये एक सृष्टि है, तो इसका सृष्टिकर्ता होना था, और ये सृष्टिकर्ता से आया, और तब ये तय करना था और इन्हें इन विभिन्नताओं में रखना था। अब विज्ञान परमाणु बी 16 को 12 × 14 × नहीं ले सकता, जो भी है वहाँ इस प्रकार से इसे बनाने को परमेश्वर को ये करना ही है, और फिर इसे नीचे की ओर लाया जाता है, यहाँ तक कि ये परमाणु पर आ जाए, तब विज्ञान इस पर आरंभ होता है, फिर ये अणु पर आता है, तब वे थोड़ी अच्छी तरह से देखने लगते हैं, तब ये उससे नीचे आकर किसी और चीज में बदल जाता है, और पहली बात ये रसायनों में आता है, और फिर से ये आपस में मिलते हैं। अब जब मनुष्य इसके पहले कि उसने पाप किया, मैं बंद कर रहा हूँ, परंतु आप चूके नहीं, जब मनुष्य ने पाप किया तो उसने अपने आप को परमेश्वर से अलग कर लिया और बड़ी खाई को पार कर लिया, इस ओर अपने आप को मृत्यु में डाल दिया। उसने छोड़ा, वापस जाने का कोई मार्ग नहीं, बिल्कुल ठीक, कोई विधि नहीं कि वो वापस जा सके। परंतु तब जब उसने किया, परमेश्वर ने उसके बदले में स्वीकार किया, जो कि एक मेमना था या एक बकरी या एक भेड़ या लहू के लिए कुछ, और जो कि आदम ने कहा या हबील ने कहा, खाई के उस पार। उस पार वो परमेश्वर का पुत्र था, वो परमेश्वर की संतान, वो पृथ्वी का वारिस है, वो प्रकृति पर नियंत्रण रखता है, वो बोलकर प्रकट कर सकता है। क्यों? वो एक सृष्टिकर्ता है स्वयं में, वो परमेश्वर की संतान है। जब उसने पार किया तो अपने पुत्रत्व को अलग कर लिया। वो स्वभाव से पापी है, वो शैतान के शासन के अधीन है, और परमेश्वर ने बलिदान लिया एक रसायन लहू का, परंतु बैलों और बकरियों के लहू ने पाप को अलग नहीं किया, ये केवल पाप को ढांपता था। यदि मेरे हाथ पर कोई लाल निशान है और सफेद से ढांक दूं, तो लाल निशान अब भी वही है, देखिए ये अब भी वही है। परंतु परमेश्वर ने पाप के लिए स्वर्ग से एक ब्लीच भेजा, ये उसके अपने ही पुत्र का था, जबकि हमारे मान लिए जाने वाले पाप परमेश्वर के ब्लीच में डाल दिए जाते हैं। इसे फिर ढूंढने का यत्न करें। पाप का रंग बिछवाई करने वाले के द्वारा वापस चला जाता है, और समय के चलते जब तक ये दोष लगाने वाले शैतान पर प्रहार नहीं करता और न्याय के दिन तक उस पर डाल देता है। पुत्र का क्या हुआ? वो फिर से पिता की सिद्ध संगति में आ जाता है, खाई के दूसरी ओर खड़ा है, उसके विरोध में कोई पाप याद नहीं किया जाता, और नहीं ब्लीच का कोई भी निशान कहीं नहीं दिखाई पड़ता, वो स्वतंत्र है। हालेलुया। जैसे कि वो ब्लीच यानी स्याही अब और स्याही बनी नहीं रह सकती क्योंकि इसे तोड़कर फिर वापस कर दिया गया। और जब स्वीकार किए गए पाप इसमें डुबाए जाते हैं, एक पुरुष या एक स्त्री यीशु मसीह के लहू में डुबा दिया गया, तो ये सारे लक्षणों को मार डालता है और पाप का हर अणु शैतान के पास वापस चला जाता है और न्याय के दिन तक उसके ऊपर रहता है, जहां उसका अनंत गंतव्य आग की झील में फेंक दिया जाना होगा। और खाई जुड़ गई और इसे अब और कभी नहीं स्मरण किया जाता है और मनुष्य परमेश्वर के पुत्र के समान न्यायोचित खड़ा होता है। साधारणता मूसा बैलों और बकरों के लहू के नीचे परमेश्वर के वचन में उसके पाप स्वीकार के साथ, और परमेश्वर उस साधारण से मनुष्य को ले सका और अपने वचन उसके मुंह में डाले और उसने ये प्रमाणित कर दिया कि वो यहोवा का दास है, क्योंकि वो वहाँ जा सकता था और यहोवा उससे दर्शनों के द्वारा बोला। वो चला गया, अपना हाथ पूर्व की ओर उठाया। और अब याद रखें, परमेश्वर उससे बोला, ये परमेश्वर का विचार है, परमेश्वर मनुष्य का प्रयोग करता है। परमेश्वर उससे बोला, ये ठीक बात है। उसने कहा, जा, जो छड़ी तेरे हाथ में है उसे पूर्व की ओर उठा और कहे मक्खियाँ। मूसा बकरी भेड़ के लहू के नीचे वहाँ गया, छड़ी ली, पूर्व की ओर गया। यहोवा यूं कहता है कि मक्खियां हो जाएं, कभी भी एक मक्खी नहीं सुनी, वापस चला गया। ये पहले ही बोल दिया गया, ये एक विचार है, अब ये बोल दिया गया, ये प्रकट कर दिया गया। तो फिर ये परमेश्वर का वचन है, ये मनुष्य के होठों पर आया, एक साधारण सा मनुष्य, बैल, बैल या बकरी के लहू के नीचे। पहली बात आप जानते हैं कि एक हरी मक्खी आसपास में उड़ने लगी। अगली बात आप जानते हैं, वे 5 पाउंड प्रति गज थी। ये क्या था? परमेश्वर का वचन था जो मूसा के द्वारा बोला गया, रचियता, क्योंकि लहू के नीचे वो परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा था और उसके अपने वचन उसके नहीं थे। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरे वचन तुम में बने रहें, तो चाहो जो मांगोगे वो तुम्हें दे दिया जाएगा। कलीसिया कहाँ खड़ी है? मेंढक हो जाए, और एक घंटा पहले सारे देश में कहीं भी मेंढक नहीं थे, उन स्थानों में 10 फुट गहरे मेंढक हो गए। ये क्या था? ये परमेश्वर था, रचियता, स्वयं को साधारण से मनुष्य में छिपा रहा है। अब मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, यदि बैलों या बकरों का लहू ब्लीच के लिए प्रयोग किया गया, जो कि केवल ढांक सकता है और मनुष्य को ऐसी स्थिति में रख सकता है कि परमेश्वर का सृष्टि करने वाला वचन बोले और मक्खियों को अस्तित्व में ले आए, तो क्यों आप यीशु मसीह के लहू के ब्लीच से ठोकर खाएंगे, जो कि गिलहरी के लिए बोल सकता है या किसी चीज को अस्तित्व में ले आए? आप ये ना करें, सादगी पर ठोकर ना खाएं, ये विश्वास करें, वो अब भी परमेश्वर है। ओ प्रभु, पापों की क्षमा, ओ मेरी कितनी इच्छा है कि मैं सकूं। तब मरकुस 11:22 में, यदि तुम इस पहाड़ से कहो हट जा और अपने हृदय में संदेह ना करो, परंतु विश्वास करो कि जो तुमने कहा है पूरा हो जाएगा, ओ जो आपने कहा वही पा सकते हैं। ओ मेरे पास 3 या 4 पन्ने हैं, अब हमें छोड़कर निकलना है। धन्यवाद। परमेश्वर अपने आप को साधारणता में छिपा रहा है, क्या आप नहीं देखते? कहीं कुछ गड़बड़ है, कहीं कुछ गड़बड़ है। जब परमेश्वर एक वक्तव्य देता है तो वो झूठ नहीं हो सकता, उसने प्रतिज्ञा दी है, समझे? वो सादगी में छिपता है, ये बहुत ही साधारण है। पढ़े लिखे और ज्ञानवान कहते हैं, ओ ये है, ओ ये दूर संवेदन है, टेलीपैथी या कुछ, आप जानते हैं। ये परमेश्वर अपने आप को समय की धारा में पीछे की ओर ले जा सकता है और आपको बताता है कि सही सही क्या हुआ था और आप आज क्या हैं। वो आपको ठीक ठीक बताता है और आगे आप क्या होंगे। ये अब भी यीशु मसीह के ब्लीच के द्वारा है। कौन है जो पापी को लेकर और उसे ब्लीच कर दे और वो परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा है? और यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में, तो तुम चाहे जो मांग सकते हो और ये हो जाएगा। वो जो मुझ पर विश्वास करता है, जो काम मैं करता हूँ वो भी करेगा। तुम मुझ पर कैसे दोष लगाते हो? क्या तुम्हारी अपनी व्यवस्था ने नहीं कहा कि वे जिनके पास परमेश्वर का वचन आया, भविष्यवक्ताओं के, क्या तुमने उन्हें ईश्वर नहीं कहा? और फिर तुम मुझ पर कैसे दोष लगा सकते हो जब मैं कहता हूँ कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ? वे ये देखने में असफल रहे, वे इसे देखने में असफल रहे। अब कलीसिया इन आने वाले संदेशों में आज रात्रि के बाद से इसे देखने में असफल ना होना, समझे। देखिए जिन दिनों में हम रह रहे हैं, स्मरण रखें कि यीशु मसीह का लहू आपसे पापों को बहुत दूर ले गया, जबकि वे यहाँ तक कि परमेश्वर को स्मरण नहीं, ये सारे दागों को ले लेता है। पाप ने गहरे लाल दाग छोड़ दिए, उसने धोकर हिम के समान कर दिए, तब सिंहासन के सामने मैं उसमें पूर्ण खड़ा हूँ। ओ प्रभु, मैं कैसे पूर्ण हो सकता हूँ, मैं कैसे पूर्ण हो सकता हूँ, क्योंकि लहू है, ना कि मैं। मेरे और परमेश्वर के बीच लहू खड़ा है, मैं इसे स्वीकार करता हूँ और वो ये डालता है। मैं पापी हूँ, परंतु वो परमेश्वर है, परंतु वो रसायन मेरे बीच में खड़ा है, पाप का मारने वाला। इसलिए परमेश्वर मुझे वैसे ही सफेद देखता है जो पानी अंदर है, जो ब्लीच में है। मेरा पाप चला गया यहाँ तक कि उसके पास नहीं पहुँच सकता, क्योंकि वहाँ पर बलिदान रखा है। हमारा विश्वास कहाँ है कि परमेश्वर के सादे वचन का विश्वास करें? बस जो परमेश्वर ने कहा उसे उसके वचन के आधार पर लें। अब परमेश्वर अपने आप को साधारणता में छिपाता है, एक छोटे नम्र झुंड में, परंतु इन्हीं किन्हीं दिनों में वह स्वयं को प्रकट करेगा, जैसे सदा उसने बीते दिनों में किया। क्या आप उससे प्रेम करते हैं? मैं उससे प्रेम करता हूँ। क्योंकि पहले उसने मुझसे प्रेम किया। और मेरे उद्धार को खरीदा उस कलवरी के वृक्ष पर। क्या आप उससे प्रेम करते हैं? ओ, वो कितना अद्भुत है। और मैं आशा और मैं विश्वास करता हूँ कि संदेश वही उत्पन्न करेगा जो उसकी नियत करने की थी, कि वो आपको उस स्थान पर ले आएगा कि आप आरामदायक चीजों को नहीं ढूंढेंगे, या किसी, जब आप परमेश्वर को महानता में देखते हैं तो देखो वो कितना नम्र है, और तब आप परमेश्वर को देखेंगे, उसको ना ढूंढें। जब इलीशा वहाँ गुफा में था तो धुआं चला, लहू, गर्जन, बिजली, देखिए सब प्रकार की संवेदनाएं हमारे पास थीं, चेहरे पर लहू और हाथों पर और संवेदनाएं और सारी चीजें। इन चीजों ने नबी को कभी भी परेशान नहीं किया। वो वहाँ तब तक लेटा रहा जब तक उसने वो धीमी आवाज ना सुनी। ये क्या था? वचन। तब उसने अपना मुंह ढांपा और बाहर आया। देखिए यही था वो। स्मरण रखिए मित्रों, बड़ी महान चीजों को ना ढूंढें। आप कहते हैं परमेश्वर वो बड़ी चीजों के लिए बोलता है। एक ऐसा समय आएगा कि वहाँ ये वो या दूसरा बड़ी महान चीजें होंगी। मैं आशा करता हूँ कि मैं किस विषय में बात कर रहा हूँ आप समझ रहे हैं, समझे। महान बड़ी चीजें देखिए, और ओ, जब ये घटित होता है तो ये इस प्रकार का महान होगा, और ये इतना नम्र होगा कि आप सारे मामले को चूक जाएंगे, बस आगे को बढ़ते रहें, समझे। और आप पलट कर देखेंगे और कहते हैं, अच्छा ये तो कभी नहीं हुआ। देखिए आपके सिर पर से निकल गया, और यहाँ तक कि तुमने कभी नहीं देखा, पास से निकल गया। देखिए ये इतना साधारण है, समझे। परमेश्वर सादगी में रहता है कि अपने आप को महानता में प्रकट करे। उसे क्या महान बनाता है? क्योंकि वो स्वयं को साधारण बनाता है। एक बड़ा महान व्यक्ति अपने आप को साधारण नहीं बना सकता, उसे तो प्रतिष्ठा चाहिए, समझे। परंतु अभी वो पर्याप्त बड़ा नहीं है। जब वो बहुत बड़ा हो जाएगा तो वो इस प्रकार झुक जाता है। अब देखिए स्वयं को नम्र कर सकता है, जैसा कि उस बूढ़े संत ने शिकागो में कहा। वो व्यक्ति सारी शिक्षा आदि के साथ गया, कहा पिटा हुआ सा सर नीचे लटकाए हुए आया, हारा हुआ निकल गया। उसने कहा यदि जिस प्रकार वो ऊपर आया उसे उसी प्रकार नीचे आना चाहिए था जैसे वो ऊपर गया। ये ठीक बात है, समझे। अपने आप को नम्र करें, नम्र हो जाएं, अलग बनने की कोशिश ना करें, बस यीशु से प्रेम करें, समझे। कहें प्रभु यदि मेरे हृदय में कहीं कड़वाहट है, पिता यदि कुछ गलत है तो मैं वैसा नहीं होना चाहता, आप इसे निकाल दें, मैं वैसा नहीं होना चाहता। और प्रभु के दिन में मैं उनमें गिना जाना चाहता हूँ, और मैं देखता हूँ कि दिन आ रहा है। आप देखिए ये मोहरे आरंभ होती हैं। यदि परमेश्वर इन्हें हमारे लिए खोलेगा, याद रखें केवल वही ये कर सकता है, हम उसी पर निर्भर कर रहे हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। और मैं समझता हूँ कि हमारे पास्टर के पास आपके लिए शब्द होंगे कहने को, या उसके लिए, बल्कि आपके लिए, इसके पहले कि हम दोपहर बाद फिर मिलें। और मैं सोचता हूँ कि सभा होगी, गाने की सभा 6:30 बजे पास्टर, और ये 6:30 और ये दरवाजे 6 बजे खुलते हैं। गाने की सभा 6:30 बजे होगी और प्रभु ने चाहा आज रात्रि मैं विषय पर बोलूंगा 7 मोहरों की पुस्तक पर। और फिर सोमवार की रात्रि सफेद घोड़े का सवार, मंगलवार रात्रि काले घोड़े का सवार, बुधवार रात्रि सलेटी घोड़ा, पीला घोड़ा और लाल घोड़ा सवार, और तब छठे में जाते हैं, चौथा, पांचवा और छठा, और फिर रविवार रात्रि अगले रविवार प्रातः चंगाई की सभा हो सकती है, मैं नहीं जानता। अब याद रखें, हम प्रभु के लिए समर्पित हैं, हम खुद और कलीसिया परमेश्वर की सेवा के लिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं 1 घंटा देरी से हूँ, क्या आप मुझे क्षमा करेंगे? मैं नहीं देखता, मेरा करने का ये अर्थ नहीं है, परंतु देखिए, मैं इस सप्ताह आप लोगों के साथ हूँ, फिर मैं आपको फिर से छोड़ूंगा, और मैं नहीं जानता मैं कहाँ जाऊँगा, बस वहाँ जहाँ मेरी अगुवाई करेगा, और मैं हर मिनट उसके लिए लगाना चाहता हूँ सकूँ तो, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ अनंतता बिताना चाहता हूँ। परमेश्वर आपको आशीष दे। अब भाई नेविल।